हम एक क्षण के लिए खड़े रहें जबकि हम अपने सिरों को प्रार्थना के लिए झुकाए हुए हैं। हमारे अनुग्रहकारी प्रभु, हम वास्तव में आज इस विशेषाधिकार के लिए आभारी हैं कि प्रभु के आगमन से पहले हम इस पृथ्वी पर स्वयं को एकत्र कर रहे हैं। होने दे कि हम आपके वचन के द्वारा अपने हृदयों को परख सकें और देखें कि हम विश्वास में हैं, ताकि हम तैयार हो सकें ये घड़ी जो उसके प्रकट होने की है, ताकि जैसे पवित्र वचन कहता है हमें होना चाहिए, एक साथ उठा लिए जाएं उनके साथ जो सो रहे हैं और प्रभु से हवा में मिलें और सदा उसके साथ रहें। हम सच्ची मसीही आत्मा के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं जो अब भी इस जगत में लोगों के मध्य में है, कि वे अब भी तेरा विश्वास करते हैं और तेरे वचन का। इसलिए हम तेरी आशीष को आज अपने ऊपर मांगते हैं कि आप हम में से प्रत्येक पर जिसकी आवश्यकता में हम हैं, कि हम वचन के द्वारा सींचे जा सकें, ताकि हम उन यंत्रों के समान बढ़ सकें जो तेरे हाथों में उपयोग के लिए इस अंतिम दिन में हों। क्योंकि हम ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में, हमारा महान चरवाहा जिसके प्रकट होने की हम राह देख रहे हैं, मांगते हैं। आमीन। आप बैठ सकते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि मैं समझता हूं कि ये शानदार विशेषाधिकार इस प्रातः के लिए फिर यहां हूं, और खेद है कि हमारे पास बैठने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। और आज रात्रि हम यत्न करने जा रहे हैं कि अब हम बीमारों के लिए प्रार्थना करें। आज इस प्रातः ये थोड़ा सा कठिन होगा, और आज मैं इस संदेश को टेप करने जा रहा था। प्रभु इस संबंध में मुझसे व्यवहार करने जा रहा है, ऐसा प्रतीत हुआ एक या दो महीने पहले, और ये बहुत पहले। और सभाओं में मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि हम 30-40 मिनट की सभा की अनुमति देते हैं, और तब हम, क्योंकि लोगों को काम पर जाना होता है और आदि आदि। मैंने समझा अच्छा होगा यदि मैं अपना संदेश छोटा करूं, और उनके पास इसे रिकॉर्ड करने को समय नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि जब तक मैं आराधनालय ना पहुंचूं, मैं प्रतीक्षा करूंगा और इसे यहां टेप करूं। और ये थोड़ा लंबा है, और मैं जानता हूं कि आप खड़े हैं, और मैं जल्दी जल्दी करने जा रहा हूं, जितनी जल्दी मैं कर सकता हूं। और आप मुझे परेशान नहीं करेंगे यदि आप अपनी जगह बदलें या कुछ भी, ये मेरे साथ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये एक विशेष दिन है कि हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और इसलिए हमारे पास एक महान विवरण है कि बाहर प्रभु ने क्या किया। परंतु संभवतः आज रात्रि हम अधिक देंगे, जबकि हम इसके लिए अधिक समय दे सकते हैं, देने के लिए अधिक समय है। और अब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आप में से प्रत्येक को आशीष देगा। मैं जानता हूं कि आप लोगों के हृदय आनंद से भरे हुए हैं, प्रभु के आगमन की राह देख रहे हैं, और मेरा भी उछल रहा है इन बातों को देखने के लिए जिस प्रकार से ये घटित हो रही हैं। और राष्ट्र के झगड़े और कलीसिया इस स्थिति में हैं, और उसके आने के चिन्ह देखती हैं, भौतिक और आत्मिक दोनों। और ये जानते हुए कि ये समय उसके प्रकट होने का बहुत ही समीप है, ये जानकर हमारे हृदय आनंद से भर जाते हैं कि इन्हीं किसी दिनों में हम बदलने जा रहे हैं, हम इस सृष्टि से बदल कर जाएंगे जिसमें हम जी रहे हैं। अब मैं विश्वास करता हूँ, यदि मैं समझता हूँ कि उनके पास टेलीफोन संचार व्यवस्था कहीं पर है, कि ये संदेश फीनिक्स में जा रहा है और टेलीफोन द्वारा विभिन्न भागों में। और अब हम विश्वास करते हैं, यदि ऐसा है तो मैं नहीं जानता, अंदर आने से पहले थोड़ा बताया, और वहाँ बाहर सारे लोग अच्छे स्वस्थ का आनंद ले रहे हैं, प्रभु की महिमा उनके ऊपर है। और अब हम प्रभु का वचन खोलने जा रहे हैं, और हम जो यहाँ पर सारे हैं कि अपने में आनंद करें और ध्यान दें कि हम क्या हैं। हम यहाँ कभी नहीं आते, कोई नहीं जो यहाँ उपस्थित है और जानता है कि कोई व्यक्ति गर्मी में इस प्रकार से नहीं बैठेगा और केवल यहाँ आने का विचार हो। हम यहाँ पर एक उद्देश्य के लिए हैं, और वो ये है कि परमेश्वर की संगति में चलें। हम केवल यही कर सकते हैं कि विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, और हम यहाँ उसके साथ साथ चलने के लिए हैं। अब ये गर्मी मेरे लिए थोड़ी कठिन है, मैं इस सूखी गर्मी से यहाँ ट्यूसान में अभ्यस्त हो गया हूँ, जो कि यहाँ पर नमी है। अब वहाँ हमारी गर्मी इससे अधिक गर्म है, परंतु ये सूखी है। हमारी नमी कभी कभी 1% की 1/20 होती है, हो सकता है कुछ ऐसा ही, लगभग वैसे ही जैसे ऑक्सीजन के तंबू में जीवित रहना। परंतु यहाँ इसमें नमी है, और ये आपको एक सा ऐसा सा अनुभव देती है जैसे कि हम सब कहते हैं सब निचोड़ दिया, इसलिए ये आपके ऊपर भारी है। इसलिए मैं जानता हूँ कि आप माताएं छोटे बालकों के साथ और आप लोग जो खड़े हैं बूढ़े और युवा और एक साथ जमा हैं जैसे कि आप हैं, और अब जैसे कि हम आशा कर रहे हैं कि परमेश्वर आपको अधिकाई से आपके बलिदान के लिए पुरस्कृत करेगा। मैं समझता हूँ कि भाई रॉय बॉर्डर्स यहीं कहीं पर हैं। मैंने उन्हें घोषणा करते सुना परंतु मैं समझता हूँ कि वे अंदर नहीं आ सके। ठीक है, वे सभाओं के प्रबंधक हैं। इसलिए अब हम भी घोषणा करना चाहते हैं कि एक जो हमारे मध्य में हुआ करते थे प्रभु के पास चले गए हैं, एक व्यक्ति भाई जैक्सन स्टर्गिस मिशिगन से। कोई नहीं जानता कि वो कैसे चला गया या क्या हुआ। वो ठीक ठाक था और बस वो, मैं सोचता हूँ कि उन्होंने उसे मृत पाया या ऐसा ही कुछ। मेरे पास इसकी विस्तृत सूचना नहीं है और हम परमेश्वर के बहुत ही आभारी हैं कि भाई जैक्सन मसीही थे। मैंने उन्हें बहुत वर्षों से नहीं देखा परंतु वो हमारे मध्य में बैठे और हम में से एक थे। परमेश्वर उसके बहादुर प्राण को विश्राम दे। इस प्रकार से जाना हम विश्वास करते हैं संभवतः ये कुछ या उसके जाने का समय था। प्रभु ने हमें इसके लिए कभी नहीं चेताया या उसके विषय में, वो बस चला गया। ये इसी प्रकार से था और मैं उनकी पत्नी से जितनी जल्द हो सके बात करना चाहता था और अपने दुख के विषय में उन्हें बताता, और हम सब परमेश्वर को उसके बहादुर मसीह जीवन के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं और उसका पृथ्वी पर क्या अर्थ था और विशेषकर हमारी इस यहाँ की आम सभा के लिए। अब आज रात्रि मैं घोषणा कर चुका हूँ कि आज रात्रि बीमारों के लिए प्रार्थना होगी और आज रात्रि मैं अधिक बीमार के लिए बोलूंगा, परंतु इस समय के लिए अब हम सीधे वचन में चलें क्योंकि ये भरा हुआ है और गर्म है। हम सीधे सीधे वचन में चलेंगे। मैं पवित्र शास्त्र में से दो भागों को पढ़ना चाहता हूँ इस प्रातः लंबा, ताकि मुझे इससे थोड़ी भूमिका मिल सके जो मैं कहना चाहता हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि वे टेप को रोक लें भाई सोथमैन, और वे बेचने से पहले यदि संभव है मैं इसको सुनना चाहता हूँ इससे पहले कि ये लोगों में जाए। अब मैं फिलिपियों के दूसरे अध्याय 1-8 को पढ़ना चाहता हूँ और दूसरे कुरिन्थियों 3:6 से आरंभ करके और दूसरे कुरिन्थियों के चौथे में से पढ़ते हुए केवल भूमिका के लिए। अब फिलिपियों में से दूसरा अध्याय पहले मैं पढ़ूंगा। पढ़ने से पहले हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, तेरे वचन सत्य हैं और इस कठिन घड़ी में जिसमें हम जीवित हैं, राष्ट्र के राष्ट्र विरुद्ध है, मरियां भूचाल बहुत सी जगहों में मनुष्य के हृदय भय से घबरा रहे हैं। हम दीवार पर हस्तलेख को देखते हैं। अब ये प्राकृतिक क्षेत्र में है ताकि सारा संसार इसे देखे, परंतु एक आत्मिक क्षेत्र भी है और हम महान घटनाएं देख रहे हैं और आज हम उनके विषय में बोलेंगे। अपने वचन को हमारे हृदय में आशीषित करें। हम जानते हैं कि कोई ऐसा मनुष्य स्वर्ग या पृथ्वी पर नहीं है कि इस पुस्तक को लेने के योग्य हो कि मोहरों को खोल दे या इस पर दृष्टि भी करे, परंतु एक प्रकट हुआ था, एक बलि मेमना लहू से भरा, वो आया और पुस्तक को ले लिया और योग्य था और इसे खोलने के योग्य था। ओ परमेश्वर के मेमने, अपने वचन को आज हमारे हृदय में खोल शांति के लिए। हम तेरे दास हैं प्रभु, हमारे पापों को क्षमा कर और कोई भी चीज जो वचन को महान सामर्थ और प्रभाव के साथ आज हमारे जीवनों में आगे बढ़ने से रोके उसे अलग रखें। प्रभु, कोई रुकावट जो हमें आपकी प्रतिज्ञाबद्ध आशीषों पर पहुंचने से रोके जो कि तेरे वचन में से हो, हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। फिलिपियों 2, सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। अब यदि हम दूसरा कुरिन्थियों तीसरा अध्याय निकालें, हम छठवें पद से आरंभ करेंगे और इसे 18वें पद तक पढ़ेंगे और नीचे चौथे अध्याय के भाग तक, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। और यदि मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? और जो तेजोमय था वो भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय न ठहरा, क्योंकि जब वो जो घटता जाता था तेजोमय था तो वो जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा? सो ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं, और मूसा की नाई नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इजरायली उस घटने वाली वस्तु के अंत को ना देख सकें, परंतु वे मतिमंद हो गए क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वो मसीह में उठ जाता है। और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वो पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते हैं और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। अब आज प्रातः मेरा विषय, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर इसे प्रकट करेगा, और हर बार यदि आप जो टेपों को लेकर सुनते हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि ये भरोसा करता हूँ कि आपके पास आत्मिक समझ थी कि वो क्या है जो परमेश्वर करने का यत्न कर रहा है कि कलीसिया में समा जाए बिना इसे कहे, समझे? ये एक बात है, कभी कभी हमें बातें इस प्रकार कहनी पड़ती हैं कि वो हल्की पड़ जाएं। ये किसी को बाहर जाने को, किसी को छोड़ देने और किसी को विचार करने के लिए बाध्य करती है, परंतु ये उद्देश्य से किया गया है, इसे इसी प्रकार करना चाहिए। तब ये हो सकता है कोई कहेगा आपका अभिप्राय ये है कि परमेश्वर इसे जानबूझकर इस प्रकार करता है। उसने निश्चय ही ऐसा किया है, वो अब भी करता है। एक दिन उसने कहा जब हजारों उसके चारों ओर थे, उसने कहा जब तक तुम परमेश्वर के पुत्र का मांस ना खाओ या मनुष्य के पुत्र का और उसका लहू पियो तो तुम्हारे में जीवन नहीं है। किस प्रकार का कथन है? आप क्या सोचते हैं कि एक चिकित्सक डॉक्टर या नर्स या कोई भला बुद्धिजीवी व्यक्ति इस प्रकार के बयान के विषय में सोचेगा? उस व्यक्ति के लिए जैसी सेवकाई उसके पास थी, क्यों वो कहेगा मांस खाओ, ये तो मानव भक्षी है, मनुष्य का लहू पीना ये एक राक्षस है। दूसरे शब्दों में वो चाहता है कि हम मानव भक्षी या राक्षस हो जाएं। और सारी सभा उसके पास से चली गई और वहाँ उसके साथ सेवक गणों का संगठन था, 70 लोग जो चुने हुए थे, और वो उनकी ओर घूमा और उसने कहा तुम तब क्या सोचोगे जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊपर जाते देखोगे जहाँ से वो आया है। अब वो इसकी व्याख्या नहीं करता, उसने कभी भी नहीं खोल कर बताया कि कैसे। बाद में ये पौलुस ने किया, उसने ये बताया, समझे। और तब जब ये उसने कहा तो आप क्या कहेंगे इन सेवकों से जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊपर जाते देखोगे जहाँ से वो आया है। कोई संदेह नहीं, उन मनुष्य ने कहा अब जरा एक क्षण, ओ हमने उसके साथ खाना खाया, हमने उसके साथ मछली पकड़ी, हम उसके साथ सोए, हम जानते हैं कि वो कहाँ जन्मा, हमने वो झूला देखा जिसमें वो झुलाया गया। और ये मनुष्य कैसे, ये कठिन बात है। और बाइबल ने कहा कि वे फिर उसके साथ ना चले, वे इसे छोड़कर चले गए। तब उसके पास 12 बचे, उसने 12 चुने थे और उनमें से एक शैतान था, उसने कहा। इसलिए वो उनकी ओर घूमा और वहाँ कोई नहीं था कि इस बात की व्याख्या करे कि उसने अभी अभी क्या कहा है, वे कैसे उसका मांस खाने वाले हैं और उसका लहू पीने वाले हैं, और वो कैसे नीचे उतरा जब वो वहाँ ठीक पृथ्वी पर जन्मा था, समझे। वे इसे ना समझ सके। और तब वो चेलों की ओर घूमा और उसने कहा क्या तुम भी चले जाना चाहते हो। और ये जब प्रेरित पत्रस ने ये महान वक्तव्य दिया, प्रभु हम किसके पास जाएंगे, समझे, क्योंकि हम संतुष्ट हो चुके हैं, हम निश्चित रूप में जान चुके हैं कि निश्चय ही केवल तेरे पास ही इस घड़ी का जीवन का वचन है, समझे, और हम इससे संतुष्ट हैं। देखिए वे इसकी व्याख्या नहीं कर सके, वे आप विश्वास की व्याख्या नहीं कर सकते। ये कुछ ऐसा है कि आप विश्वास करते हैं और ये इतना ठोस है कि कोई और वस्तु इसका स्थान नहीं ले सकती। इसलिए वे जानते थे कि वचन जो उस युग के लिए लिखा है जिसमें वे रह रहे थे, मसीह वाला युग, कि वो ठीक उस स्थान में सही बैठता है। और वे उन ठंडे कहलाने वाली कलीसियाओं में से जिनमें से वो निकल कर आए थे कैसे वापस जा सकते थे। कहा हम कहाँ जाएंगे, समझे, हम पूरे तौर से सहमत हो गए हैं कि तेरे पास जीवन का वचन है, समझे। और वे इसकी व्याख्या नहीं कर सकते थे, परंतु उन्होंने इसका विश्वास किया। देखा, यीशु ने ये कहा ताकि उसकी भीड़ छट जाए, देखा, जब तक वो उस झुंड को इकट्ठा ना कर ले। और इन सब लोगों में से वे केवल वे 12 ही तब वास्तव में समझ सके कि वो कौन था। वे जान गए कि वो परमेश्वर था और केवल परमेश्वर। अब आज प्रातः मेरा विषय प्रकट करना है या उस परमेश्वर को अनावरत करना। परमेश्वर सदा से हर युग में पर्दे के पीछे छिपा, सारे युगों में, परंतु सारे समय वो परमेश्वर ही था, समझे, परंतु उसने स्वयं को संसार से छिपा कर ही रखा और स्वयं को अपने चुने हुओं पर ही प्रकट किया, जैसे कि उन दोनों के चेले। अब ये परमेश्वर था जो मसीह में बोल रहा था। अब मनुष्य सदा, ये मनुष्य का स्वभाव रहा है कि वो परमेश्वर को भौतिक रूप में देखना चाहता है, उसने सदा से उसे देखना चाहा। मनुष्य एक ऐसा प्राणी बना जो उसके समान दिखता है। वे सोचते हैं कि इंडियन लोगों ने सूर्य की उपासना की और हम अफ्रीका में विभिन्न प्रकार के जानवरों और आदि आदि को देखते हैं और वहाँ अलास्का में ध्रुवीय गणराज्य में, और वे परमेश्वर को और भिन्न भिन्न रूप में सोचते हैं, जैसे कि उस समय पौलुस ने एथेंस में मार्स के पहाड़ पर उन्हें बताया कि जो इस अनजान परमेश्वर के अंधविश्वास के विषय में जो कि वे जानते हैं वो वहाँ था, परंतु फिर भी वे उसे नहीं जानते थे। और इस प्रकार से हम पहले भी पाते हैं कि जहाँ तक जैसे अय्यूब जानता था कि कोई परमेश्वर है, वो ये जानता था, और वहाँ एक भी मनुष्य अपनी सही सोचने की अवस्था में नहीं था, परंतु कौन जानता था कि कहीं पर कुछ है। और अय्यूब अब उससे बातें करना चाहता था, और मैं आपका ध्यान यहाँ लाना चाहता हूँ वो रूप जिसे परमेश्वर ने अय्यूब से बात करने के लिए चुना। परमेश्वर जब अय्यूब से बातें की तो वो पर्दे में छुपा हुआ था, वो एक वायु चक्रवात में छिपा हुआ था, चक्रवात में नीचे उतरा। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अब भी चक्रवात में है? यहाँ बहुत सारे लोग गिनती में बैठे हुए हैं जो उस दिन हमारे साथ थे जब वो चक्रवात में आया। एक दिन पहले बताया भाई बैंकवुड, और वे जब उसने कहा इस पत्थर को लो और हवा में उछालो और कहो यहोवा यूं कहता है, आप इसे तब ही देखेंगे। और मैंने पत्थर उठाया पहाड़ की चोटी पर और उसे हवा में फेंका और अनुसार नीचे आया, इससे चक्रवात आरंभ हो गया। देखिए इसका खिंचाव। आपको कुछ करना है ताकि कुछ उसके पश्चात हो। यीशु ने रोटी का टुकड़ा लिया और उसे तोड़ा और तब रोटी के उस टुकड़े से ढेर सारा बढ़ा दिया। उसने पानी लिया और घड़े में डाला। एलिया ने नमक लिया और कटोरे में डाला, एक लकड़ी काटी और पानी पर फेंक दी। ये प्रतीक के लिए कुछ हो। और पत्थर को लेकर हवा में फेंक रहा था और नीचे आ रहा था, चक्रवात आरंभ हो गया। अगले दिन क्यों वहाँ एक सेवक शिकार यात्रा पर था, वो पास में खड़ा हुआ था और उसने मुझसे कहा, भाई ब्रैनम क्या प्रभु यहाँ बाहर भी दर्शनों को दिखाता है? मैंने कहा हाँ, परंतु मैं प्राय यहाँ विश्राम के लिए बाहर आता हूँ। और तभी दर्शन आया, और भाई बॉर्डर्स में सोचता हूँ अभी वे बाहर हैं, वो साथ थे भाई बैंक्सवुड मैं सोचता हूँ, और वो वहाँ बहुत से थे, 8 या 10, और बैंक्सवुड ये सब देख रहे थे ठीक पहाड़ पर वहाँ से होते हुए, वहाँ से सही लगभग 1.5 मील की दूरी पर जहाँ 7 स्वर्गदूत प्रकट हुए थे, वहाँ जाने के लिए मुझे यहाँ से छोड़ना था। वो वापस आया और बताया 7 मोहरों के विषय में, वहाँ से लगभग 0.5 मील। और तब अगले दिन जब ये चल रहा था, क्यों मैंने भाई से कहा, इस भाई से मैंने कहा, आपकी क्या परेशानी है, आपकी आंख में आपको एलर्जी है, डॉक्टर ने 1-2 वर्ष से इसे रोकने का यत्न किया और वे इसे नहीं कर सके, उन्होंने कहा कि तुम्हारी आंख को खा लेगा। और मैंने कहा परंतु चिंता मत करो, प्रभु यीशु ने तुम्हारे विश्वास को प्रतिष्ठा दी है। और उसने अपनी बंदूक नीचे गिरा दी। और मैंने कहा तुम्हारी माँ जैसे कि वो थी और उसके साथ क्या गड़बड़ी थी? और उसने कहा ये सत्य है, भाई रॉय रॉबर्टसन कलिसिया से यहाँ पर हैं, यहाँ खड़े हैं, मैं समझता हूँ कि आप सब इन्हें जानते हैं, जानते हुए कि ये एक अनुभवी थे और जानते हुए कि क्या घटित होने जा रहा है, मैंने अपना हाथ उनके कंधे पर रखा। मैंने कहा भाई रॉबर्टसन सचेत हो जाएं, ध्यान दें, कुछ घटित होने के लिए तय है। मैं वापस गया जहाँ मुझे खड़ा होना चाहिए था, और हवा में से चक्रवात नीचे आया, ऊपर से नीचे घाटी में से होता हुआ, वो इतना बड़ा था कि चट्टानों को तोड़ दिया, 8 या 10 इंच काटते हुए पहाड़ की चोटी पर और उन्हें 200 गज दूर फेंक दिया। और इस प्रकार 3 बार धमाका हुआ और उसमें से आवाज आई, समझे, और वे सारे वहाँ खड़े थे। भाई बैंक सभी यहाँ है, ऊपर आए और बोले यही है जो आपने मुझे बीते कल बताया था? मैंने कहा जी हाँ श्रीमान यही है वो। उसने कहा अब इसने क्या कहा? मैंने कहा अब ये केवल मेरे जानने के लिए है भाई बैंक, देखा क्योंकि ये था, ये लोगों को चेता देगा। परंतु ये आगे बढ़ गया, ये थोड़ा सा घटित हुआ उत्तर की ओर यात्रा करते हुए, और ये छोटा सा कुछ दिनों के पश्चात ये सागर पर पहुंचा, और आपने देखा फेयर बैंक के आसपास क्या घटित हुआ, ये न्याय का चिन्ह था। अब हम पाते हैं कि परमेश्वर अब भी आप देखते हैं कि ये लोगों को भययुक्त कर देगा, और इसलिए उनके पास इसे घटित होना ही था, समझे, इसे घटित होना ही था। वे बातें जिन्हें होना ही है जो भी है घटित हो गई हैं, समझे, जैसा भी हो ये घटित होने जा रहा है। एक बार मूसा ने परमेश्वर को देखने की इच्छा की और परमेश्वर ने उससे कहा कि चट्टान पर खड़ा हो जा, और चट्टान पर मूसा खड़ा हो गया और उसने परमेश्वर को पास से निकलते देखा और उसका पीछा मनुष्य की पीठ के समान दिखाई पड़ा। परमेश्वर चक्रवात में था और परमेश्वर, जबकि मूसा चट्टान पर खड़ा हुआ था। मैं समझता हूँ आप सबने उस दिन वो चित्र देखा, हम उसी चट्टान के पास खड़े हैं, और यहाँ वो ज्योति है, प्रभु का दूत ठीक वही जहाँ धमाका हुआ खड़ा हुआ था, ये अब ठीक फिर से सूचना पट पर है। ध्यान दें, पुराने नियम का यहोवा नए नियम का यीशु है, समझे, वो वही परमेश्वर है, केवल अपने रूप को बदल रहा है। अब किसी ने उस दिन कहा, एक बैप्टिस्ट सेवक ने वहाँ टूसान में, आप ये कैसे कह सकते हैं कि यीशु और परमेश्वर एक ही व्यक्ति होंगे? मैंने कहा ये बहुत ही सरल है। यदि आप अपने विचार को अलग कर दें और सोचें कि बाइबल ये कहती है, वे अपने में एक ही जीवन है, परमेश्वर एक आत्मा है, यीशु देह है जिसके पर्दे में वो था, समझे? मैंने कहा जैसे मेरे घर में अपनी पत्नी के लिए मैं उसका पति हूँ और मेरे पास युवा लड़की है रिबेका, मैं उसका पिता हूँ, और मेरे पास पोता है और उसका नाम पॉल है, मैं उसका दादा हूँ, मैं पति पिता और दादा हूँ, और मेरी पत्नी का मुझ पर पिता के समान कोई दावा नहीं है या दादा के समान, उसका दावा मुझ पर केवल पति के रूप में है, और मेरी पुत्री का दावा मुझ पर पति या दादा के समान नहीं है, वो मेरी बच्ची है, समझे? परंतु फिर भी ये तीनों व्यक्ति एक ही व्यक्ति हैं, समझे? ये परमेश्वर है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा केवल धार्मिक विधान के दावे हैं। परमेश्वर एक ही है, वही परमेश्वर। परमेश्वर ने स्वयं को बदला, अपना रूप बदला। यदि आप यहाँ फिलिपियों में ध्यान दें, उसने कहा ये सोचना नहीं कि लूटना, परंतु मनुष्य का रूप धारण किया। अब इसलिए इस रूप के लिए वहाँ यूनानी शब्द है। मैं इसे कल सारे दिन देखता रहा, सोचने का यत्न कर रहा था कि ये क्या था। मैंने पाया इस शब्द एनमॉर्फ के साथ आया। इसका अक्षर विन्यास ENMORPHE है। यूनानी में देख रहा था कि मालूम करूं एनमॉर्फिया क्या था। मैं इसका उच्चारण गलत कर सकता हूं, परंतु जिस कारण मैंने अक्षर विन्यास किया कि जब टेप बाहर दिया जाए तो लोग विद्वान ये जान जाएंगे कि इससे मेरा क्या अर्थ है। वो जब एनमॉर्फिया, जिसका अर्थ वो जिसने स्वयं को बदला, वो नीचे आया। अब यूनानी शब्द जिसका अर्थ कोई ऐसी चीज जो देखी ना जा सके, तब भी वो वहाँ है, और तब वो बदल गई और आँख इसे देख सकती है, समझे? जैसे इलीशा दोतान में था, सेवक उन सब स्वर्गदूतों को जो चारों ओर थे नहीं देख सका, और परमेश्वर ने जरा सा बदल दिया, न कि स्वर्गदूतों को नीचे लाया, परंतु सेवक की दृष्टि को बदल दिया, और सारे पर्वत वहाँ स्वर्गदूतों से घिरे हुए थे, और आग के घोड़े, आग के रथ उस भविष्यद्वक्ता के चारों ओर थे। देखिए, वे उसने दृष्टि को बदल दिया, चीजें पहले से ही वहाँ पर थीं। इसलिए यही जो मैं कहने का यत्न कर रहा हूँ कि परमेश्वर जो सदा से यहाँ है, केवल उसने ये किया जब वो मनुष्य बना, उसने अपना मुखौटा बदल दिया, समझे? वो ये एनमॉर्फिया, उसने स्वयं को बदल दिया, उससे जो वो था उसमें जो वो है, या उसका मुखौटा, दूसरा व्यवहार, जैसे कि बड़े नाटक में, जैसा कि मैं इस प्रातः बोल रहा था, एक प्रकार से इस शेक्सपियर को पकड़ना, ये बहुत लंबे समय से है, परंतु जब शेक्सपियर ने नाटक लिखा ब्रिटेन के राजा जेम्स के लिए, जब उसने मैकबेथ का चरित्र, देखिए शेक्सपियर जादू में विश्वास नहीं करता था, परंतु नाटक में, क्योंकि राजा जादूगरनियों में विश्वास किया करता था, इसलिए उसे जादूगरनियों को भी सम्मिलित करना पड़ा, समझे? और अब इसे करने के लिए वे पात्र को बदलते हैं। यहाँ कारमेन में बैंकी ने, उन्होंने इसे विद्यालय में अभिनय में किया जहाँ वो कुछ सप्ताह पहले स्नातक हुई थी। अब हो सकता है एक व्यक्ति तीन या चार भागों का अभिनय करे। इसे करने के लिए उसने अपना मुखौटा बदला। कभी कभी वो बाहर आता है, वो ये चरित्र है, और अगली बार जब वो आता है तो वो दूसरा चरित्र है, परंतु सारे समय वो एक ही व्यक्ति है, और ये परमेश्वर है। उसने स्वयं को आग के खंभे से एक मनुष्य बन गया, तब स्वयं को उससे वापस फिर से आत्मा में, ताकि वो मनुष्य में वास कर सके। परमेश्वर मनुष्य में व्यवहार कर रहा है जो वो वास्तव में था। यीशु मसीह परमेश्वर था, मनुष्य में अभिनय कर रहा था, एक मनुष्य में। एक मनुष्य में यही जो वो था, वो आके स्तंभ से बदलकर और तब उसमें आ गया, जो कि जंगल में एक पर्दा था जिसने परमेश्वर को इसराइल से छिपाया। मूसा ने उसकी देह का रूप देखा, परंतु वास्तव में वो सारे समय अग्नि स्तंभ के पीछे छिपा रहा, जो कि परमेश्वर से निकला हुआ परमेश्वरत्व का मानव चोला था। अब हम यहाँ पाते हैं, अब जब से पेंतिकोस्त हुआ, परमेश्वर मनुष्य में व्यवहार नहीं कर रहा है या कार्य, अब वो मनुष्य के द्वारा कार्य कर रहा है, समझे? जब वो मनुष्य में व्यवहार कर रहा था वो तब यीशु था, अब वो मनुष्य के द्वारा व्यवहार कर रहा है जो कि उसने इस उद्देश्य के लिए चुना है। परमेश्वर मनुष्य के स्वरूप में, उसने उस रूप से, परमेश्वर के रूप से मनुष्य के रूप में बदल दिया। वो तीन नामों में आया, तीन पुत्रों के नाम, वो पुत्र के, मनुष्य के पुत्र के नाम में, दाऊद का पुत्र और परमेश्वर का पुत्र, तीन पुत्रों के नामों में। अब वो पहले पुत्र के, मनुष्य के पुत्र, क्योंकि वो भविष्यद्वक्ता था। अब यहोवा ने स्वयं को हिस्केल कहलवाया और भविष्यद्वक्ताओं, मनुष्य की संतान तू क्या देखता है? यीशु ने कभी भी अपना उल्लेख परमेश्वर का पुत्र कहकर नहीं किया, उसने स्वयं को मनुष्य का पुत्र कहा, क्योंकि पवित्र वचन टूट नहीं सकते। पवित्र लेख में कोई बात टूट नहीं सकती, हर वचन को वैसा ही होना है। मैं इसका इसी प्रकार से विश्वास करता हूँ, इसे इसी प्रकार होना है, इसलिए नहीं कि मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। अब यदि आप आरंभ में ध्यान दें, एक वचन, बाइबल का पहला पृष्ठ, उत्पत्ति एक में हम पाते हैं कि समस्त, सारी बीमारियां, सारे दुख, सारे हृदय के रोग और हर एक चीज जो कभी मनुष्य जाति को हुई, इसलिए आई क्योंकि एक व्यक्ति ने एक वचन का अविश्वास किया, इस सब का कारण बना। ये बाइबल का पहला है। बाइबल के अंत में प्रकाशित वाक्य 22, उसी परमेश्वर ने कहा, कोई भी जो इसमें से एक भी वचन निकालेगा या एक वचन इसमें बढ़ाएगा। देखिए, ये वचन दर वचन ही होना चाहिए, ठीक जैसा ये है, इसलिए इस प्रकार। और केवल एक छोटी सी बात लें, जैसा मैं कर रहा हूँ, कोई मुझसे हमेशा करवाता रहता है महिलाओं के बाल काटने के विषय में। अब वो मेरे लिए, जब तक कि वो ये करती है, मैं चिंता नहीं करता कि वो कितनी भक्ति से करती है और वो कितना जानती है, वो फिर भी गलत है। वो छोटे कपड़े और इस प्रकार के वस्त्र पहनती है, मैं चिंता नहीं करता कि वो क्या करती है और वो कितना गा सकती है, कितना अच्छा वो प्रचार कर सकती है, वो जो कुछ भी कर सकती है, किस प्रकार का जीवन वो जीती है, ये अब भी वो एक वचन टूटा हुआ है, समझे? देखिए, उसे प्रत्येक वचन को लेना है, वाक्य को नहीं, वचन, एक वचन। इसलिए बाइबल कोई व्यक्तिगत अनुवाद नहीं है, ये वचन प्रति वचन होना चाहिए, जिस प्रकार की ये लिखी गई है। हमें ये विश्वास करना चाहिए, और केवल विश्वास ही नहीं परंतु इसे जीना भी है। यदि हम इसे जीते नहीं है तो हम विश्वास नहीं करते, हम केवल कहते हैं कि हम करते हैं। जैसे मैं जो मैं कहता हूँ उस पर निर्भर करता हूँ। वे चेले इसकी व्याख्या नहीं कर सके, परंतु उन्होंने इसका विश्वास किया, जो भी है उन्होंने इसे स्वीकार किया और इसके लिए जीवित रहे, जबकि वे बाकी सब इससे दूर चले गए, वे इसके साथ रुके, उन्होंने इसका विश्वास किया। हम भी इसी प्रकार करते हैं, इस प्रकार से आपको भी करना चाहिए। कोई मतलब नहीं कोई क्या करता है, हम इसका विश्वास करते हैं और उस पर कार्य करते हैं। यदि आप ये नहीं करते तो आप इसका विश्वास नहीं करते। अब ध्यान दें, अब जैसे कि वो आता है, उसे मनुष्य के पुत्र के समान आना था, क्योंकि पवित्र वचन ने कहा कि वो करेगा, परमेश्वर उनके लिए एक भविष्यद्वक्ता उठा खड़ा करेगा। इसलिए वो आकर स्वयं को परमेश्वर का पुत्र नहीं कहलवा सकता था, क्योंकि ये उस धर्म विधान का समय नहीं था। वो मनुष्य का पुत्र भविष्यवाणी कर रहा था कि पूरा करे और उन पर सारी बातें प्रकाशित करे जो कि किया जा चुका है, और प्रतिछाया में दर्शाया कि वो क्या था। तब वो पृथ्वी पर एक मनुष्य के पुत्र के समान था। सरूफिनी स्त्री को देखिए, जो उसके पास भाग कर आई और कहा, तू दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। उसने अपना सिर जरा सा भी नहीं उठाया। उसका उस पर दाऊद के पुत्र के समान कोई दावा नहीं था। वो अन्य जाति थी। मेरी पुत्री का मेरे ऊपर पति के रूप में कोई दावा नहीं है, या मेरी पत्नी का मेरी पुत्री के समान। तो भी वो मेरी पुत्री और मेरी पत्नी है। सुसमाचार में वो मेरी पुत्री है, परंतु संसारिक रूप में उसका कोई अधिकार नहीं कि मुझे पिता पुकारे। समझे? अब ध्यान दें, इस अन्य जाति महिला का कोई अधिकार नहीं कि जैसे वो दाऊद का पुत्र है, परंतु अंधे बर्तिमाई ने कहा, देखिए वो यहूदी था, अब वो एक मनुष्य के पुत्र के समान आया। आप लोगों को ये शब्द, ये बातें मालूम करनी है। उस समय हैटी राइट को देखिए, जब तीसरा खिंचाव, आपको ये याद है, सब बातों में से उस महिला ने ठीक बात कही। आपको कहना ही है वो सही वचन, परमेश्वर को सही बात। अब ध्यान दें, पहले वो भविष्यद्वक्ता के समान आया और उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, उसके अपनों ने उसे क्रूस पर चढ़ाया। वो मनुष्य के पुत्र के समान आया, तब पवित्र आत्मा के आने के पश्चात, तब वो परमेश्वर का पुत्र था। परमेश्वर आत्मा है, वो पवित्र आत्मा था, परमेश्वर का पुत्र, वो कलीसियाई कालों में से होता हुआ परमेश्वर के पुत्र के समान जीवित रहा। अब सहस्र शताब्दी में वो दाऊद का पुत्र होगा, अपने पिता दाऊद के सिंहासन पर बैठा है, वो दाऊद का पुत्र है। अब स्मरण रखें, मनुष्य के पुत्र और लुदिशियन कलीसिया के बीच उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया, और लूका में उसने कहा कि वो फिर से मनुष्य के पुत्र के रूप में फिर प्रकट होगा, भविष्यद्वक्ता बाकी बचे हुए को पूरा करेगा। समझे? पवित्र वचन आपस में सिद्धता से एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, दाऊद का पुत्र, ये क्या था? सारे समय ये वही परमेश्वर है, केवल अपना रूप बदल रहा है, एमोर्फिया, वो केवल इसे बदलता है। ये उसके लिए एक महान नाटक है, वो इस पर अभिनय कर रहा है। वो एक मनुष्य के पुत्र के समान आया, भविष्यद्वक्ता ठीक वही किया, यहाँ तक कि वो छोटी महिला अपने सारे पापों में वहाँ कुएं पर थी, उसने उसे पहचान लिया। उसने कहा, हम जानते हैं कि मसीहा आ रहा है जो कि अभिषेक कहलाता है, वो यही करेगा। देखिए, वो पहचानी गई क्योंकि वो पहले से ठहराया हुआ बीज थी, तब वो, जबकि बाकियों ने उसे नहीं पहचाना, उनके पास पहचानने के लिए कुछ नहीं था, वे आरंभ से ही पाप में थे। अपने व्यवहार के लिए वो अपना रूप बदलता है, तब वो मनुष्य के पुत्र के रूप में आया, सुधारकों के युग के लिए, वेस्ली लूथर और इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए। तब हम ये पाते हैं कि उन्होंने इसे इतना बांधा हुआ पाया जैसे कि इसराइलियों ने किया, जब तक वो अंतिम दिनों में पेंतिकोस्तल युग में पवित्र आत्मा के समान प्रकट नहीं हुआ, उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने वही किया जो इसराइल ने किया, और अब वो क्या करता है? मनुष्य के पुत्र के समान वापस आता है, और तब उस दाऊद के पुत्र से, देखिए हम कितने समीप हैं, मनुष्य का पुत्र, दाऊद का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र। मलाकी 4 के अनुसार वो अंत के दिनों में मनुष्य के पुत्र के समान प्रकट हुआ। सारी बाकी बची हुई भविष्यवाणियां जो इस घड़ी से संबंधित हैं, इसके पश्चात कलीसिया से कोई व्यवहार नहीं, उन्होंने इसे बाहर निकाल दिया, दरवाजे पर खटखटा रहा है, अंदर अभी भी कुछ पहले से ठहराए हुए बीज हैं, उसे उन्हें लेना है। और परमेश्वर ने मनुष्य में स्वयं को खाली कर दिया। योएल 2:28 में हम पाते हैं कि उसने कहा, अंतिम दिनों में मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। अब यदि आप वहाँ यूनानी शब्द पर ध्यान दें, मेरे पास संभवतः ये गलत हो, परंतु एक मैं ढूंढ सकता हूँ। आपको वचनों पर ध्यान देना चाहिए। अंग्रेजी में कभी कभी दोहरा अर्थ होता है, जैसे कि हम ईश्वर कहते हैं, उत्पत्ति 1 में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, परंतु अब बाइबल में ये कहा गया, आदि में एलोहिम। अब अंग्रेजी में एलोहिम ईश्वर को कहते हैं, परंतु वास्तव में ये एलोहिम नहीं था। कोई भी चीज ईश्वर हो सकती है। ईश्वर शब्द को आप किसी भी मूर्ति को ईश्वर बना सकते हैं, आप पियानो को ईश्वर बना सकते हैं, आप किसी भी चीज को ईश्वर बना सकते हैं, परंतु एलोहिम शब्द में ऐसा नहीं है। इसका अर्थ स्वयं से अस्तित्व में, समझे? पियानो स्वयं से अस्तित्व में नहीं आ सकता, कुछ भी स्वयं से अस्तित्व में नहीं आ सकता। इसलिए एलोहिम शब्द का अर्थ वो जो स्वयं से अस्तित्व में सदा से है। परमेश्वर का अर्थ कुछ भी हो सकता है। शब्द का अंतर देखिए। अब जब यहाँ पर ये कहा गया कि उसने स्वयं को खाली कर दिया या उंडेल दिया, अब हम इस प्रकार से सोचेंगे कि उसने उल्टी करी, अंग्रेजी शब्द खाली हो गया या उंडेल दिया अपने में से। देखिए, उसमें से कुछ निकल कर गया जो उससे भिन्न था। परंतु यूनानी में केनोस का अर्थ उल्टी करना नहीं है या कुछ उसका हाथ आगे बढ़ा या उसकी आंखें आगे बढ़ी दूसरा व्यक्ति। ये है, उसने स्वयं को बदल दिया, उसने स्वयं को उंडेल दिया, आमीन, दूसरे मुखौटे में, दूसरे रूप में, दूसरे व्यक्ति में नहीं जो उसमें से निकला, पवित्र आत्मा कहलवाया, परंतु ये वो स्वयं था। आप समझे, उसने स्वयं को लोगों में उंडेला, मसीह तुम में। कितना सुंदर, कितना अद्भुत, ये सोचकर परमेश्वर स्वयं को मानव में उंडेल रहा है, विश्वासी में उंडेल दिया। ये उसके नाटक का भाग था ऐसा करना। परमेश्वर सारी परिपूर्णता, परमेश्वरत्व की परिपूर्णता उस व्यक्ति यीशु मसीह में सदैव वास करती थी। वो केवल परमेश्वर और केवल परमेश्वर था, कोई तीसरा या दूसरा या पहला व्यक्ति नहीं, परंतु वो व्यक्ति परमेश्वर मनुष्य देह के पर्दे में था। पहला तिमोथियस 3:16, परमेश्वर की भक्ति का भेद गंभीर है, क्योंकि जी ओ डी एलोहिम, बड़ा अक्षर जी ओ डी बाइबल में फिर से पीछे से किसी का उल्लेख करता है, मूल में ये उल्लेख करता है, इसने एलोहिम कहा, आदि में एलोहिम, समझे, और एलोहिम, एलोहिम की भक्ति का भेद गंभीर है, क्योंकि एलोहिम देहधारी बना और हमने उसके साथ व्यवहार किया। एलोहिम मनुष्य की देह के पर्दे में गया, वो महान यहोवा जिसने सारा वातावरण, समय और हर जगह को ढांक रखा था, मनुष्य बन गया था। हमने एलोहिम को छुआ, आदि में एलोहिम, और एलोहिम देहधारी बना और हमारे मध्य में निवास किया। क्या ये उसका तरीका है, नाटक का भाग, यही विधि थी, उसे इस प्रकार ही कार्य करना था, उसका स्वयं को हम पर भिन्न व्यक्ति में प्रकट करने की विधि। हम मरणहार हैं और वो ये जानता है, और हम मरणहारों के समान समझते हैं, हम मरणहारों को जानते हैं, हम केवल वही जानते हैं जो हमारी इंद्रियां हमें जानकारी देती हैं, और बाकी सब हमें विश्वास के द्वारा विश्वास करना पड़ता है। हमें कहना पड़ता है कि परमेश्वर है, चाहे हम उसे देखें या न देखें, जो भी है हम इसका विश्वास करते हैं, समझे, चाहे है या नहीं हम फिर भी इसका विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है। जैसे अब्राहम उस पुत्र को नहीं देख सकता था, कोई चिन्ह नहीं, कोई गर्भ सारा को नहीं था, यहाँ तक कि मासिक धर्म भी नहीं, परंतु फिर भी परमेश्वर ने ऐसा कहा है, सारी आशाएं, यहाँ तक कि उसका गर्भाशय भी मृत था और उसका जीवन उसमें समाप्त हो गया था, और उसके जीवन का स्रोत भी सूख गया था, और सारा का जीवन भी उसमें सूख गया था, और तब भी वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर अविश्वास के द्वारा डगमगाया नहीं, परंतु मजबूत था, महिमा कर रहा था और जानता था कि परमेश्वर कुछ भी करने के योग्य है, उसने कहा कि वो करेगा। यही विधि है कि आज हमें उसके वचन पर का विश्वास करना चाहिए। ये कैसे होने जा रहा है, मैं नहीं जानता, परमेश्वर ने कहा है ये इस प्रकार होने जा रहा है, और इससे ये तय हो गया। ये ना दिखने वाला महान व्यक्ति कौन है, ये कौन है जिसे अब्राहम ने दर्शन में देखा, तब अंततः यद्यपि वो देह में प्रकट हुआ, इसके पहले कि पुत्र आता, परमेश्वर स्वयं अब्राहम के पास अंत समय में मनुष्य के रूप में आया, प्रकट हुआ। एक बार उसने उसे एक छोटी ज्योति में देखा, उसने उसे दर्शनों में देखा, उसने उसका शब्द सुना, बहुत सारे प्रकाशन, परंतु प्रतिज्ञा के पुत्र के आने से थोड़ा पहले उसने उसे मनुष्य के रूप में देखा और उससे बातें की और उसे खाना खिलाया और पिलाया, समझे, ध्यान दें, परमेश्वर स्वयं मानव देह के पर्दे में आ गया, ये उसकी विधि का भाग है। इसी प्रकार से वह स्वयं को हम पर प्रकट करता है, अनंत वचन को प्रकट करता है। परमेश्वर यहोवा देहधारी हुआ, जैसे संत यूहन्ना 1, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और आदि में एलोहिम था, और एलोहिम वचन बन गया, और एलोहिम वचन था, और वचन एलोहिम बन गया था। देखिए, ये वही चीज है, केवल खुल रही है। देखिए, जैसे कि गुण ये परमेश्वर में है, गुण आपके विचार हैं। परमेश्वर आदि में अनंत, यहाँ तक कि परमेश्वर भी न था, वो अनंत था। यहाँ तक कि वो परमेश्वर भी न था। परमेश्वर आराधना का उद्देश्य है या कुछ भी, समझे? इसलिए वो भी न था, वो एलोहिम था, अनंत। परंतु उसमें विचार थे, वो पदार्थ बनना चाहता था, और उसने क्या किया? तब उसने एक वचन बोला, और वचन पदार्थ में बदल गया। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक सारी एक ही बात, एक ही तस्वीर है, कुछ भी गलत नहीं। ये एलोहिम पदार्थ बन रहा है ताकि उसे छुआ और अनुभव किया जा सके, और सहस्र शताब्दी में वो एलोहिम सिंहासन पर बैठा है। देखा, ये ठीक बात है, अपने चारों ओर सारे लोगों के साथ, जिसे उसने पृथ्वी के रचने से पहले ठहरा लिया था। जैसे कि एक मनुष्य घंटी या घंटियां बनाता है, ढालने वाला, प्रत्येक घंटी की आवाज दूसरी घंटी से भिन्न होती है। वही पदार्थ, परंतु इतना लोहा, इतना स्टील, इतना पीतल इसे बनाने के लिए, जो टन की आवाज देता है। इसी प्रकार से परमेश्वर ने किया, उसने इसे उत्पन्न किया, उसको, इसको, उसको, इसको, उसको, जब तक उसे ठीक वो ना मिला जो वो चाहता था। इस प्रकार से वो नीचे आया, परमेश्वर ने स्वयं को अग्नि स्तंभ में छिपाया, भविष्यवक्ताओं के द्वारा नीचे आया, तब मनुष्य के पुत्र में आया, वो जो कि परमेश्वर था। देखिए, ये वही परमेश्वर बाहर आ रहा है, सिद्धता से सिद्धता में, महिमा से महिमा में। इसी प्रकार से कलीसिया जाती है। ध्यान दें, युगों से होते हुए उसी प्रकार से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा उसने स्वयं को प्रकट किया। वे सही में भविष्यवक्ता नहीं थे, वे ईश्वर थे। उसने ऐसा कहा क्योंकि वे जो बोले परमेश्वर का वचन था। वे देह थे जिनमें परमेश्वर छिपा था, वे ईश्वर थे। यीशु ने कहा, स्वयं कहा, तुम मुझे कैसे दोषी ठहरा सकते हो जब मैं कहता हूँ कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, और तुम्हारी व्यवस्था कहती है जिनके पास प्रभु का वचन पहुँचा ईश्वर थे। समझे? इसलिए ये परमेश्वर था, मनुष्य बना, भविष्यवक्ता कहलाया, समझे? और प्रभु का वचन इस मनुष्य के पास आया। इसलिए ये भविष्यवक्ता नहीं था, भविष्यवक्ता पर्दा था, परंतु वचन परमेश्वर था। मनुष्य का वचन इस प्रकार कार्य नहीं करेगा। देखा, मेरा क्या अर्थ है, ये उस प्रकार से कार्य नहीं कर सकता, परंतु वो संभावित परमेश्वर था। देखा, वो मनुष्य के रूप में परमेश्वर का वचन था, एक मनुष्य कहलाया। ध्यान दें, उसने कभी भी अपना स्वभाव नहीं बदला, केवल अपना रूप। इब्रानियों 13:8 में कहा, वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। इसलिए उसने अपना स्वभाव नहीं बदला। जब वो आया, वो सदा से वो भविष्यवक्ता था, सारे युगों में होता हुआ वही चीज, वचन, वो वचन, वो वचन, वो वचन, समझे? वो अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, परंतु उसने अपना रूप बदला। इब्रानियों 13:8 कहा कि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। उसने बस अपना मुखौटा बदला, जैसे कि मैं पति से बदला। जब मेरा बालक उत्पन्न हुआ तब मैं पिता हुआ, जब मेरा पोता उत्पन्न हुआ तो मैं दादा हूँ, समझे? परंतु मैं नहीं बदलता, जो कि मैं अब भी मैं वही हूँ, समझे? और ये परमेश्वर है, ये केवल मैं अपना बदला। देखिए, ये केवल आपका रूप बदलता है, समझे? ध्यान दें, और स्वभाव इसे बदलता है, युवा से अधेड़, फिर बूढ़ा मनुष्य, और आप हैं। आप देखिए, आप केवल अपना रूप बदलते हैं। आप एक जो छोटा लड़का यहाँ खड़ा है 16 वर्ष का, मान लीजिए वो दादा था, वो नहीं हो सकता, उसका रूप बदलना है। कुछ वर्ष उसे बदलते हैं तब वो दादा बनता है। देखा मेरा क्या अर्थ है? परंतु सारे समय वो एक ही व्यक्ति है, परमेश्वर सारे समय एक ही व्यक्ति है। इस प्रकार से वो स्वयं को अपने लोगों पर प्रकट करता है। ये करने में ध्यान दें, अग्नि स्तंभ के युग से होते हुए उसने स्वयं को अपने लोगों पर प्रकट किया। यीशु के युग में उसने स्वयं को अपने लोगों पर प्रकट किया। पवित्र आत्मा के युग में परमेश्वर के पुत्र की तरह, दाऊद का पुत्र, वो सदा स्वयं को उस रीति से अपने लोगों पर प्रकट करता है, लोगों को स्वयं को जानने देता है। वो किसी चीज के पीछे छिपा है। ध्यान दें, उसी प्रकार से या उसी स्वभाव में हर बार परमेश्वर यीशु में छिपा था कि क्रूस पर छुड़ाने का कार्य करे। परमेश्वर आत्मा के रूप में मर नहीं सकता, वो अनंत है, परंतु उसे एक मुखौटा पहनना था और मृत्यु के भाग को अभिनय में करना था। वो मरा, परंतु वो इसे परमेश्वर के रूप में नहीं कर सका। उसे ये पुत्र के रूप में करना था, मनुष्य के पुत्र के रूप में पृथ्वी पर, समझे? उसे पुत्र का रूप धारण करना था। तब जब वो पेंटिकॉस्ट पर वापस आया, वो फिर से परमेश्वर का पुत्र था। देखा मेरा क्या अर्थ है, विचार समझ में आया? उसे मानव देह में आना था कि कोई भी कोई यौन इच्छा नहीं, क्योंकि ये फिर से हमारी बात को सर्प वंश को सिद्ध करता है। देखिए, यौन संबंधी पूर्णतः कामुकता सेव नहीं, लैंगिकता, ये बात ठीक है, यही होना है। यहाँ ध्यान दें, देखिए किसी भी भले मनुष्य, उन भविष्यवक्ताओं को देखिए पीछे की ओर, परंतु उसे भविष्यवक्ता से बढ़कर होना था, समझे? ये करने के लिए उसे कुंवारी से जन्म लेना था, ये दर्शाते हुए कुंवारी से जन्म लेना सिद्ध हुआ, उसे कुंवारी से जन्म लेना था ताकि श्राप को अलग कर सके। विपरीत, देखिए मेरा क्या अर्थ है, इसलिए इसे लिंग संबंधी होना था, ये उसने अपने आगमन में सिद्ध किया। वो यौन इच्छा के द्वारा नहीं आया, परंतु कुंवारी से जन्म के द्वारा आया, और उसने अपना मुखौटा यहोवा से यीशु में बदल दिया ताकि नाटक में छुटकारे के कार्य को कर सके जो वो परमेश्वर में होकर क्रूस पर कर रहा था।
यूनानी उसे देखना चाहते थे। संत यूहन्ना 12:20, आप में से बहुत सोने इस बात पर प्रचार करते सुना होगा, श्रीमान हम यीशु से मिलना चाहते हैं, क्या आपने इस पर ध्यान दिया? अब यूनानी लोग विद्वान थे, वे महान पुरुष थे, और उनमें परमेश्वर के प्रति महान भावना थी, जैसा कि पौलुस ने उन्हें मार्क पहाड़ पर प्रचार किया, और वे थे, उन्होंने संसार की विज्ञान में अगुवाई की है और शिक्षा में वे महान लोग थे, परंतु वे आराधना करते और पौराणिक कथाओं पर विश्वास करते थे और इस प्रकार से साहित्य पुस्तकें और विचित्र कलाएं और आदि आदि, परंतु वे इस मनुष्य के विषय में बेचैन हो गए जो बीमारों को चंगा करता था और आने वाली बातों को पहले से ठीक ठीक बता सकता था, और वे बेचैन हो गए, इसलिए वे अब उसे देखने आए। अब ध्यान दें, इसमें चूके नहीं, समझे? और वे आए और फिलिप्पुस से बोले, जो कि बैतसैदा का था, श्रीमान हम यीशु से मिलना चाहते हैं। और फिलिप्पुस और दूसरे चेले उसे यीशु के पास लाए कि यीशु को देखे। अब ध्यान दें, हर वचन जो यीशु ने उन्हें फिर से बताए, क्योंकि वे देखने आए थे कि वो कौन था और वे उसे ना देख सके। उन्होंने उसका रूप देखा, परंतु वो अपने मंदिर में था, परमेश्वर अपने मंदिर में था, मानव देह में छिपा हुआ। उन वचनों पर ध्यान दें जो कि उसने कहे, जब तक गेहूं का दाना भूमि में नहीं गिर जाता, देखिए, और मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, समझे? वो घड़ी आ गई है, ये जल्द ही मनुष्य का पुत्र महिमा पाएगा और उसे इस पृथ्वी पर से जाना ही होगा, और जब तक वो घड़ी नहीं आती, आप इसे कभी नहीं देखने पाएंगे, समझे? यहाँ वे यीशु को क्यों न देख सके? वो मुखौटा लगाए हुए था, परमेश्वर मुखौटा लगाए हुए था। यूनानियों ने परमेश्वर को चाहा और वो यहाँ पर था, परंतु पर्दे के कारण वे उसे ना देख सके। और आज वही बात है, वे पर्दे के कारण उसे नहीं देख सकते, ये उनके मुख पर है। ये यूनानी मुखौटा पहने हुए थे, या यीशु इन यूनानियों के लिए मुखौटे में था? ध्यान दें, उसने उनसे कहा, जब तक ये गेहूं का दाना भूमि में नहीं गिर जाता, वो अकेला रहता है। वे नहीं समझ सके कि कैसे, वे क्यों नहीं उसे देख सके। वहाँ एक मनुष्य खड़ा था, वे परमेश्वर को देखने आए और उन्होंने मनुष्य को देखा, समझे? वे परमेश्वर को नहीं देख सके क्योंकि परमेश्वर उनके लिए छिपा हुआ था। अब इसे अपने मस्तिष्क में रखें, परमेश्वर मनुष्य में छिपा था। वे कह सकते थे, सिवाय परमेश्वर के कोई मनुष्य इन कामों को नहीं कर सकता, इसे कोई मनुष्य नहीं कर सकता। और कैसे यहाँ एक मनुष्य खड़ा था और तो भी परमेश्वर के कार्य उसके द्वारा प्रकट हुए। देखिए, वे ये नहीं समझ सके कि परमेश्वर पर्दे में छिपा हुआ है, वो मानव पर्दे में हो गया, जैसे कि वो सदा से पर्दे में था, परंतु वो उनके लिए छिपा हुआ था, वो मानव मंदिर में था, परमेश्वर मानव मंदिर में था। अब वास्तव में ध्यान रखें, अब वो कैसे कल आज और सर्वदा एक सा है। देखा, परमेश्वर पर्दे में स्वयं को संसार से छिपा रहा है, मानव जाति के पर्दे में है, समझे? यहाँ परमेश्वर था, वे यूनानी कह रहे थे, हम उसे देखना चाहते हैं, और यीशु ने कहा, गेहूं के दाने को गिरना और मरना है, आपको अपने सारे विचारों में मरना है, आपको अपने विचारों से बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे कि वे चेले थे, वे उसकी देह के खाने की व्याख्या नहीं कर सकते थे और उसके लहू को पीने की, परंतु देखिए, परंतु वे उन बातों के लिए मर चुके थे, वे सिद्धांतों के लिए मर गए थे, वे मसीह के लिए मर गए थे। कोई मतलब नहीं ये क्या है, या ये कितना हारा हुआ सा प्रतीत हो रहा है, उन्होंने जो भी है तब भी इसका विश्वास किया, समझे? वे इस मनुष्य में देख सकते थे, एक मनुष्य जो खाता पीता, मछली पकड़ता, सोता, हर बात इस पृथ्वी पर जन्मा और उनके साथ चला, उनके साथ बातचीत की, उन बाकी लोगों के समान कपड़े पहने, परंतु वो परमेश्वर था। इसलिए यूनानी उसे देख ना सके क्योंकि वो मानव जाति में उनसे छिपा हुआ था। ध्यान दे, उसके वचन उनको, जब तक गेहूं का दाना भूमि में नहीं गिर जाता, परमेश्वर मनुष्य के रूप में पर्दे में था, स्वयं को उनकी दृष्टि से छिपा लिया। वे केवल एक मनुष्य को देख सकते थे, परंतु उन पहले से ठहराए हुओं ने परमेश्वर को देखा। एक ने मनुष्य देखा, दूसरे वाले ने परमेश्वर देखा, समझे? और ये परमेश्वर मनुष्य के पर्दे में है और दोनों को ठीक बना रहा है, परंतु उसमें आपका विश्वास, जो आप नहीं देख सकते, आप विश्वास करते हैं जो भी है, परमेश्वर मनुष्य के पर्दे में है। वो उस देह में था और वो देह उसका पर्दा थी, पर्दा फट गया था, देखिए, ताकि परमेश्वर प्रकट हो सके। पुराने नियम के अंदर परमेश्वर जब अनुग्रह के सिंहासन पर था, तब वो पर्दे के द्वारा छिपा हुआ था। पुराने नियम के अंदर परमेश्वर अपने मंदिर में था, परंतु लोग अंदर आकर इस प्रकार आराधना करते थे, परंतु स्मरण है, वहाँ एक पर्दा था, आमीन, जिसने परमेश्वर को छिपा लिया था। वे जानते थे कि वहाँ परमेश्वर था, वे उसे नहीं देख सके। वो अग्नि स्तंभ वहाँ फिर कभी प्रकट नहीं हुआ। क्या आपने ध्यान दिया? पवित्र वचन में एक बार भी उस समय से जब अग्नि स्तंभ जब पर्दे के पीछे गया, वो फिर कभी नहीं दिखाई दिया, जब तक वो यीशु मसीह में से आया। परमेश्वर पर्दे में था। जब वो पृथ्वी पर खड़ा हुआ, उसने कहा, मैं परमेश्वर में से आया हूँ और परमेश्वर में जाता हूँ। तब पौलुस उसके मरने, गाड़े जाने और जी उठने के पश्चात उसकी दमिश्क की राह में, वहाँ वो अग्नि स्तंभ फिर से था। ये क्या था? पर्दे के पीछे से बाहर आ गया। परमेश्वर की महिमा हो, वो पर्दे के पीछे था। अब वो किसके पीछे था? खाल के पर्दे में। देखिए, सुइसों की खालें पर्दे के पीछे। और जब वो पर्दा क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले दिन में फट गया, वो पर्दा जिसमें वो लिपटा था, क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले दिन में फट गया था, तब वो समस्त अनुग्रह का सिंहासन दिखाई पड़ा। अब यहूदी ना समझ सके कि कैसे वो परमेश्वर पापी, दुष्ट, हम जैसे लोगों पर, जैसे हम हैं, दया कर सकता है, परंतु वे ये ना देख सके, वो जो अनुग्रह कर रहा था, क्योंकि वो छिपा हुआ था, वो अनुग्रह के सिंहासन के पीछे था, अंदर की ओर, सुइसों की खाल लटकी हुई उसे ढांक रही थी। इसके पहले कोई भी मनुष्य पर्दे के पीछे जाता तो वो तुरंत मर जाता। आमीन। ओ, हम एक मिनट में इससे एक पाठ लेने वाले हैं। देखिए, यदि आप ले सकते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। उन खालों के पीछे जाना, यहाँ तक कि एक बार एक याजक के पुत्र ने यत्न किया और मर गया। उस पर्दे के पीछे ना जाएं। वो मनुष्य जो पीछे गया, क्यों? अभी तक वहाँ अंदर कोई छुटकारा नहीं था। ये संभावित था, ये केवल संभावित था, और कोई भी संभावित बात अभी तक वास्तविक नहीं है। देखिए, केवल संभावित है। ये छुटकारा था, पाप ढका हुआ था, मिटा हुआ नहीं, क्षमा किया हुआ, बल्कि क्षमा न किया हुआ। रिमिटेड का अर्थ है तलाक, अलग किया हुआ। और इसलिए भेड़ और बकरियों का लहू ये नहीं कर सका। इसलिए यहोवा पर्दे के पीछे छिपा था। अब इस पर्दे के पीछे जहां वो छिपा था, उसमें प्रवेश करने के लिए एक मनुष्य मरा, उसमें प्रवेश करने के यत्न में। परंतु पेंतिकॉस्ट से, जब से क्रूस पर चढ़ाया गया, जब वो पर्दा ऊपर से नीचे को फट गया था, उस पीढ़ी के लिए यीशु वो परमेश्वर पर्दे में था। और जब वो कलवरी पे मरा, तो परमेश्वर ने अग्नि और बिजली भेजी और उस पर्दे को ऊपर से नीचे की ओर फाड़ दिया, जिससे समस्त अनुग्रह सिंहासन स्पष्ट दिखाई पड़ा। परंतु वे इसे देखने के लिए इतने अंधे थे, जैसे कि मूसा ने यहाँ कहा, यद्यपि, यानी पौलुस ने कहा, मूसा को पढ़ते हुए, जब मूसा के लेख पढ़े जाते हैं, तो अब भी वो पर्दा उनके हृदयों पर पड़ा रहता है। ओ भाई बहनों, यहूदियों ने यही किया जब वो पर्दा फाड़ा गया था और परमेश्वर को स्पष्ट दृष्टि में क्रूस पर लटकाए हुए लाया। वो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था, परंतु वे उसे ना देख सके। क्या ये संभव हो सकता है कि अन्य जातियों ने यही किया हो? ओ परमेश्वर, जब मनुष्य के पुत्र के कलीसियाई काल उनके पास थे, परंतु अब इन नामधारियों का पर्दा और बातें, रीति रिवाजों का पर्दा जो हमारे पास पेंतिकुस्त से है, जबकि कलीसियाई रीति रिवाजों का पर्दा फाड़ दिया गया है, वे बातें जो लोगों ने कही, आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए हैं और ये बातें, और परमेश्वर ने इसका पर्दा हटा दिया और स्पष्ट रूप से दृष्टि में ले आया और वे उसे फिर से क्रूस पर चढ़ाने के लिए तैयार हैं। ठीक वैसे ही अनावरत परमेश्वर स्पष्ट दृश्य में उन्हें उसे वहाँ खड़ा हुआ देखना चाहिए। तो भी वो बहुत सामान्य था, वो एक साधारण मनुष्य था, वे उसे नहीं देख सके। देखिए, वहाँ एक मनुष्य खड़ा है, भला उन्होंने कहा ये मनुष्य कौन से विद्यालय से आया है, परंतु स्मरण रखें, जब वो भाला उसके शरीर में भोंका गया, वो आत्मा उसे छोड़ गया, वो मंदिर बलिदान शिलाखंड पलटे गए और बिजलियां मंदिर में से होकर निकली और पर्दे को फाड़ दिया। ये क्या था? वहाँ उनका परमेश्वर क्रूस पर लटका हुआ था और वे इसे देखने के लिए बिल्कुल अंधे थे। उसे खुले दृश्य में ले आया और फिर भी वे नहीं देखते, वे अंधे हैं। परमेश्वर मानव में छिपा हुआ है, आप स्मरण रखें। इसके बाद वो पौलुस के पास वापस आया और कैद में पत्रस के पास अग्नि स्तंभ की तरह, इसे स्मरण रखें। परंतु अंत के दिनों में उसे फिर से वापस आना है, परंतु एक अग्नि के स्तंभ को फिर से मनुष्य के पुत्र को प्रकट करने के लिए आना है, ताकि वचन को दर्शाए ज्योति। रीति रिवाज मिटाए जा रहे हैं, मिटा दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं कि जो इसमें अड़चन उत्पन्न करे, जो भी है ये होने जा रहे हैं। परमेश्वर ने उन नामधारियों को तोड़ दिया है और रीति रिवाजों को गिरा दिया है। वो इसे किस प्रकार की आत्मा के साथ करेगा, जैसा कि उसने पहली बार किया? देखिए, उसने एलिया के दिनों में क्या किया, यहुन्ना के। तुम अपने अंदर ये विचार मत करो कि तुम्हारा पिता अब्राहम है, क्योंकि परमेश्वर योग्य है कि इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न करे। समझे? क्या आप नहीं सोचते कि मैं इससे संबंधित हूँ, उससे संबंधित हूँ? समझे? परमेश्वर पर्दे को फाड़ रहा है कि दर्शाए कि वो कौन है। देखा, पर्दे पर ध्यान दें। जब अब ये यहाँ फट गया है, अब हम पाते हैं, अब एक बार यदि मनुष्य उस पर्दे में चला जाए तो ये तुरंत मृत्यु थी, अब उसमें होकर ना निकलना मृत्यु है। आमीन। यदि आप उस रीति रिवाज के पर्दे को नहीं फाड़ सकते, नामधारी कलीसिया की दीवारों को नहीं तोड़ सकते कि परमेश्वर को उसकी सामर्थ में देखें, तो ये मृत्यु है। जहाँ पर भीतर जाना एक समय ये मृत्यु था, अब उसके बाहर रहना मृत्यु है। अनुग्रह का सिंहासन पूरी पूरी रीति से स्पष्ट दृश्य में है, कोई भी इसे देख सकता है, पर्दा फटा हुआ है। परमेश्वर की महिमा हो, सारा का सारा अनुग्रह का सिंहासन स्पष्ट दृश्य में आ गया है। परमेश्वर दुष्ट पापियों पर कैसे अनुग्रह कर सकता था जैसे हम, जब उसने स्वयं को छिपा लिया तो एक भेद था, और अब ये स्पष्ट दृश्य में है, अपने वचन के द्वारा प्रकट हो गया। ये सदा निरंतर वचन है, ये परमेश्वर है, ये वचन है जो इसे खोलता है। यदि वे लोग परमेश्वर के वचन को जानते उस दिन में जब यीशु मरा, तो वे अनुग्रह के सिंहासन को देख लेते, वे देख लेते कि वो कौन था। तो फिर वो कौन था? पर्दा क्यों फटा? स्मरण रखें, भीतर जाना ये मृत्यु था, उसे कोई नहीं देख सकता था। मूसा ने उसे एक रूप में देखा, ये चक्रवात था, ये मनुष्य की पीठ थी। ठीक है, यहाँ ये है, लहू बह रहा है, वही मनुष्य। ये क्या था? परमेश्वर उन्हें अनुग्रह का सिंहासन दिखाना चाहता था, परमेश्वर उन्हें दर्शाना चाहता था कि वो कौन था। इसलिए पर्दा मंदिर में परमेश्वर के हाथ के द्वारा ऊपर से फाड़ा गया, ऊपर से नीचे तक, और परमेश्वर को स्पष्ट दृश्य में दर्शाया। ये यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटका था, अनुग्रह का सिंहासन। और ये क्या था? लोग इसे देखने के लिए अंधे थे। अब ये फिर से दोहराया गया है, उनके रीति रिवाज कैसे। तब पेंतिकॉस्ट के दिन वचन आया और परमेश्वर के पुत्र के रूप में था, और उन्होंने इसे नीसियन रोम में गठित करना आरंभ कर दिया, और पहली बात वे मेथोडिस्ट बैप्टिस्ट प्रेस्बिटेरियन पेंतिकॉस्टल और आदि आदि में चले गए। किसने रीति रिवाजों को संगठित किया, जब तक कि मनुष्य नहीं जानता था कि वो कहाँ स्थिर है। परंतु परमेश्वर की महिमा हो, उसने अंत के दिनों में प्रतिज्ञा की है कि वो क्या करेगा, वो अपने वचन को स्पष्ट दृश्य में दिखाएगा, हमारे सामने फिर से खुलेगा। देखिए, ये खुलेगा। यदि वे केवल वचन जानते होते तो वे जान जाते कि यीशु कौन था। यदि मनुष्य केवल परमेश्वर का वचन जान जाए तो वो जान जाएगा कि वो किस घड़ी में रह रहा है और क्या हो रहा है। उन्होंने केवल उस वचन को सुनने से इनकार किया। उनके रीति रिवाज, क्या कारण हुआ कि उन यहूदियों ने उसे देखा? क्या ऐसा प्रतीत हुआ कि वे वास्तव में उसे देख सके? क्योंकि चीज फाड़कर खोल दी गई, ये फाड़कर किसी उद्देश्य से खोली गई है। अब ये बेदारी क्या चल रही है? ये कैसे फलवत हो सकी? ये कैसे आशीषित हो सकी? मैं चिंता नहीं करता कि इसकी कितने नकली हुई हैं या कुछ और, इससे कुछ नहीं। जब मूसा चला गया तो वहाँ मिली जुली भीड़ उसके साथ चली गई, परंतु ये क्या किया गया? ये यहोवा स्वयं परमेश्वर का पर्दा उतार रहा था कि गलत और सही में भिन्नता दर्शाए, जो कि मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन या कौन ठीक है। परमेश्वर का वचन ठीक है। हर मनुष्य का वचन झूठा ठहरे और मेरा सच्चा। परमेश्वर को अनुवाद की आवश्यकता नहीं, वो अपना अनुवाद स्वयं कर सकता है। वो इसे प्रकट करता है और ये अनुवाद देता है। परमेश्वर स्वयं को अनावृत कर रहा है, ओ प्रभु, ठीक हमारे मध्य में। हम उसके महान हाथ को ये बातें बताते हुए देखते हैं, इन चीजों को करते हुए। देखिए, आज रात्रि उस पर कुछ मिला है कि कैसे परमेश्वर के हाथ को देखें, ये क्या करता है, ये कैसे स्वयं को खोलता है, समझे? और लोग कहते हैं, ओ ये निरर्थक है, वहाँ ये पागलपन है, इसमें कुछ नहीं है, ये निरर्थक है, ये बालजबूब है, ये शैतान है, ये भविष्य बताना है, ये है। देखिए, यही बात उन्होंने उसके विषय में कही, ओ कलीसिया, और यदि ये टेप बाहर जाता है सुसमाचार के सेवकों, क्या आप इसे नहीं देख सकते? क्या आप कहाँ रह रहे हैं? क्या आप उस घड़ी को जिसमें आप रह रहे हैं नहीं देख सकते? एक तरफ होकर परमेश्वर स्वयं को दर्शा रहा है। देखिए, उसने वो मंदिर का पर्दा लिया और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया, और वे परमेश्वर को स्पष्ट दृश्य में देख सकते थे, और वे उसे देखने के लिए भी अंधे थे। और उसने वही चीज आज की है, अपने वचन को ठीक सामने रख रहा है। उसने क्या प्रतिज्ञा की वचन में? कि प्रत्येक प्रतिज्ञा हमारे समक्ष स्पष्ट दृश्य में रखी है। आप जानते हैं कि अन्य जाति की कलीसिया करती है वही चीजें जो यहूदी कलीसिया ने किया, इसे देखने के लिए भी अंधे थे। बस ये उनके हृदयों पर होगा जैसा कि ये उस दिन था। ध्यान दें, अब इससे दूर रहना मृत्यु है। आपको इस पर्दे में से होकर भीतर जाना चाहिए या आप नहीं होंगे। परमेश्वर कैसे उन पर दया कर सकता था? परंतु स्मरण रखें, ये क्या था? परमेश्वर उस पर्दे के पीछे था जो था, प्रकट कर रहा था। ध्यान दें, उस पर्दे के पीछे क्या था? वचन। इसने क्या पर्दे में किया? वचन। ये क्या था? ये वाचा के संदूक में था। ये वचन था जो उस पर्दे ने छिपा रखा था, समझे? और यीशु वो वचन था, और वो वही वचन है, और उसकी देह के पर्दे ने इसे छिपा दिया, और आज रीति रिवाजों के पर्दे ने वचन को फिर से छिपा दिया, कहते हुए कि ये ऐसा नहीं है, परंतु ये ऐसा है। परमेश्वर इसे सिद्ध कर रहा है, स्वयं को धमाके से सूर्य के समान सबके सामने चमका रहा है, और वे इसे देखने में असमर्थ रहे। परमेश्वर हम पर दयावान हो। प्रतीक में मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में से उस युग के लिए परमेश्वर के वचन के साथ आया। अब ध्यान दें, हम अब निर्गमन 19 में हैं। अब इसमें चूके ना, निर्गमन 19 मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में से आ रहा है, या 20 और 21 मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में से आ रहा है। वो वचन में था, वचन लिखा गया था, और वो परमेश्वर की उपस्थिति में वचन के साथ उसके पास उस युग के लिए वचन था। प्रत्येक युग के लिए वचन है, और मूसा आ रहा है, उसका मुख इतना चमका, समझे? वचन उसमें था, प्रकट होने के लिए तैयार था, लोगों को दिया गया। सच्चा वचन, परमेश्वर ने इसे लिखा, और ये मूसा के पास था। ध्यान दें, ये मूसा के साथ था और प्रकट होने के लिए तैयार था। वो उनके लिए वचन था, वो जीवित छिपा हुआ वचन था। स्वयं परमेश्वर को छिपा लिया। मूसा को अपने ही मुख पर पर्दा डालना था, क्यों? वो वचन था। आमीन। जब तक वो वचन नहीं जाना गया, मूसा को अपने मुख पर पर्दा डालना था। आमीन। क्या आप इसे देखते हैं? जहाँ कहीं भी वचन है, ये पर्दे में है। मूसा के पास वचन था। अब स्मरण रखें, वचन के प्रकट होने के पश्चात मूसा फिर से मूसा था, समझे? परंतु जबकि वो वचन उसमें था कि बाहर दिया जाए, वो परमेश्वर था। अरे वो मूसा नहीं था, जरा भी नहीं। उसके पास प्रभु का वचन उस युग के लिए था। जब तक वो पूरा ना हो जाता उसे कोई छू नहीं सकता था। उसके साथ वो वचन था, इसलिए जब वो आया लोगों ने अपने सिरों को घुमा लिया। वे समझ ना सके, वे बदल गए थे, वो भिन्न व्यक्ति था। वो उस वचन के साथ आया और उसने एक पर्दा डाला, बाइबल बताती है, अपने मुख पर, क्योंकि उसके पास वचन था और वो उनके लिए वचन था। अब देखिए, यदि मूसा, ओ भाई यहाँ एक अपमान होने जा रहा है, परंतु यदि मूसा, जैसे पौलुस ने कहा यहाँ दूसरा करिन्थियों तीसरा अध्याय, यदि मूसा को अपना मुख उस तेज प्रतीक से ढांपना पड़ा जो उस पर था, क्योंकि वो प्राकृतिक महिमा थी, वो स्वाभाविक व्यवस्था थी, और यदि मूसा ये जानता होता कि व्यवस्था को नष्ट होना था, परंतु तेज इतना महान था कि इससे लोग अंधे हो गए, इसलिए उन्हें उसके मुख पर पर्दा डालना पड़ा, ये और कितना अधिक होगा। आत्मिक अंधे लोग, ओ, उस तेज को कम होना था, परंतु ये तेज कम नहीं होगा, समझे। मूसा के पास शारीरिक व्यवस्था थी, दोषी ठहराने वाली, कोई अनुग्रह नहीं, कुछ नहीं, ये केवल आपको दोषी ठहराती है। परंतु ये जिसके विषय में हम बोल रहे हैं, इसमें कोई शमानत थी, इसने आपको केवल ये बताया कि आप कौन थे, ये आपको निकलने का मार्ग देती है। और जब वो वचन अनावृत हुआ, ओ प्रभु, तो वो चेहरा किस प्रकार का होगा? इसे तो पर्दे में होना ही होगा, इसे तो पर्दे में ही होना है। अब ध्यान दें, इस प्रकार से आत्मा मनुष्य मंदिर के पर्दे में था। देखा, वो स्वाभाविक वचन स्वाभाविक पर्दे के साथ बोलता है। अब पौलुस यहाँ बोल रहा है, और इसमें ये इंद्री आत्मिक वचन, हम अक्षर के सेवक नहीं व्यवस्था, परंतु आत्मा के योग्य सेवक, कि आत्मा अक्षर को लेता है और उसे प्रकट करता है। वो बस व्यवस्था थी, आपको जाकर इसे देखना था, बताया कि तू व्यभिचार न कर, तू चोरी नहीं करेगा, तू झूठ नहीं बोलेगा, तू ये वो कुछ भी नहीं करेगा, समझे, आपको उसे देखना ही था। परंतु ये आत्मा है जो प्रतिज्ञा किए वचन पर आता है इस युग के लिए, और निकाल कर लाता है और प्रकट करता है, पत्थरों की दो पट्टियां नहीं, परंतु जीवित परमेश्वर की उपस्थिति, किसी के बनाए हुए पौराणिक विचार नहीं, या कोई हुडनी, एक चलाकी, परंतु परमेश्वर की वही प्रतिज्ञा ठीक हमारे सामने प्रकाशित करता है और प्रकट करता है। पीछे ये किस प्रकार का पर्दा होगा, और उसे खोलकर देखिए, वो इतना महान था, यहाँ तक कि लोगों ने कहा, उन्होंने कहा, जब उन्होंने यहोवा को अग्नि स्तंभ में नीचे आते देखा और धरती हिलने लगी और जो चीजें उसने करी और पर्वत अग्निमय था, और यहाँ तक कि यदि किसी ने उस पहाड़ के समीप जाने का यत्न किया तो नष्ट हो गया। ये इतना महान था कि मूसा भी डर गया, भूंडोल। यदि तब उसने उस समय केवल पहाड़ को हिला दिया, वो आकाश को और पृथ्वी को भी हिला देगा। इस तेज के विषय में क्या है, यदि वो स्वाभाविक पर्दे से ढांका गया, ये बहुत ही आत्मिक पर्दे से ढांका गया है, इसलिए स्वाभाविक पर्दे की ओर देखने का यत्न ना करें, आत्मा में आ जाएं और देखें कि आप कहाँ हैं, देखिए आप कौन सी घड़ी में रह रहे हैं। क्या इसका आपके लिए कोई अर्थ बनता है? ये आत्मिक पर्दा है जो लोगों के ऊपर है, कहते हैं मैं मेथोडिस्ट हूँ, मैं भी औरों के समान अच्छा हूँ, मैं बैप्टिस्ट हूँ, मैं पेंटिकॉस्टल हूँ। क्या आप ये अनुभव नहीं करते कि रीति रिवाजों की पर्दे की बात है, ये आपसे परमेश्वर को छिपा रहा है। यही बात है कि ये आपको आनंद करने से अलग रखता है, और आप कहते हैं ओ मैं चिल्लाता ऊपर नीचे कूदता हूँ। उसने कहा प्रत्येक वचन, हवा ने एक को छोड़ सारे वचन का विश्वास किया, समझे, ये परमेश्वर का पूरा वचन है, इस घड़ी की प्रकट की हुई प्रतिज्ञा, समझे। अब ध्यान दें, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ बोलने के लिए बहुत है, परंतु मेरे पास लगभग 20 पृष्ठ और हैं, परंतु ये टिप्पणियाँ, परंतु मैं उन सब पर नहीं बोलूंगा, देखिए मैं जल्दी करूंगा। इससे पहले कि वो लोगों से बोल सके, उसने स्वाभाविक पर्दे से स्वयं को छिपा लिया, और परमेश्वर को स्वयं पर्दे में होना था, जैसे कि उसने मनुष्य देह में प्रतिज्ञा की थी। परमेश्वर, क्या आप इसे समझे, परमेश्वर स्वयं को मनुष्य देह के पर्दे में होना था और उनके ऊपर आत्मिक पर्दा डालना था। कहते हैं अरे मैं ये हूँ वो हूँ लोगों से बात करते हुए, जब वो पर्दा जो कि रीति रिवाजों का पर्दा है फाड़ कर अलग कर दिया गया, तब ये जो वो कहते हैं क्यों आश्चर्य कर्मों के दिन तो बीत गए। एक दिन एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, वहाँ एक छोटा बैप्टिस्ट प्रचारक मेरे पास आया भाई ग्रीन, और उसने कहा भाई ब्रनम आपके विरोध में मेरे पास एक चीज है। उसने कहा आप लोगों को बनाना चाह रहे हैं कि ये वहाँ रमादा सराय की बात है जब हमारी वहाँ पर सभा हुई थी, कहा आप लोगों से प्रेरितों के युग का विश्वास करवाना चाहते हैं कि आज ऐसे जिए जैसे कि वे चेले के युग में थे, कहा चेलों का युग चेलों के साथ समाप्त हो गया। मैंने कहा ये हो गया? जी हाँ। मैंने कहा प्रेरित युग का वक्ता कौन था? उसने कहा ऊपर की कोठरी में 12 चेले। मैंने कहा तब तो पौलुस बाहर था। मैंने कहा वक्ता पतरस था, और पतरस ने पेंतेकोस्त के दिन कहा जब उन्होंने ये सब होते हुए देखा और पवित्र आत्मा कार्य कर रहा था, उसने कहा ये प्रतिज्ञा तुम्हारे और तुम्हारी संतानों के लिए है और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए जिन्हें हमारा प्रभु परमेश्वर बुलाएगा। यदि वो अब भी बुला रहा है तो फिर वही चीज यहाँ है, तो फिर प्रेरिताई युग कब रुक गया? प्रेरिताई युग तब रुकता है जब परमेश्वर बुलाना बंद करता है। उसने कभी भी एक बात नहीं कही परंतु अपनी टोपी उठाकर चला गया। ये वचन को करने के लिए लेता है, ये वचन है। यीशु ने शैतान को बताया ये लिखा है, देखा यही है ये लिखा है। मैंने कहा पतरस ने कहा कि ये कभी समाप्त नहीं होगा, जितनों को प्रभु ने बुलाया ये आशीष उनके लिए है। अब आप कहते हैं वो रुक गया, कब? कोई हानि नहीं की? मैंने कहा नहीं श्रीमान जरा भी नहीं, आगे बढ़िए, ठीक है समझे। पतरस ने कहा ये प्रत्येक के लिए है जिसे परमेश्वर बुलाएगा वही चेलों की उसी आशीष को पाएगा। ये प्रभु का वचन है समझे। अब स्वाभाविक पर्दा परमेश्वर वचन मनुष्य की देह की आड़ में है, ये क्या था? परमेश्वर मूसा की आड़ में है, परमेश्वर मूसा में था छिपा हुआ, और परमेश्वर की उपस्थिति उसके अंदर थी, वचन उसके अंदर, वो जितना सिद्ध था जैसे कि यहाँ तक कि उसे अपने मुख पर पर्दा डालना पड़ा था, और ये प्रमाणित भविष्यद्वक्ता था जिसने वचन को खोला और उन्हें बताया कि तू ये नहीं करेगा, तू ये नहीं और ये नहीं करेगा, समझे। अपने वचन को उस पीढ़ी को दिया, उसने स्वयं को एक मानव पर्दे में छिपा लिया, यह वचन उन बुलाए हुओं को भी अंधा कर देता समझे, यहाँ तक कि वे लोग जो बाहर थे देखने के लिए खड़े ना रह सके। निर्गमन में हम पाते हैं कि उन्होंने कहा कि मूसा बोले परमेश्वर नहीं। देखिए क्यों अग्नि स्तंभ अधिक प्रकट नहीं होता समझे। परमेश्वर ने कहा मैं ये करूँगा, मैं उनके लिए एक भविष्यद्वक्ता उठा खड़ा करूँगा, आमीन, मैं उनके लिए एक को खड़ा करूँगा, और वो ठीक वैसे ही आया, मैं उठाऊंगा और उसे वचन होना होगा। उसने कहा यदि वे देखना चाहते हैं कि वचन क्या है, कहा अब मूसा मैं तुझ पर वहाँ झाड़ी में प्रकट हुआ, कहा मैं नीचे आने वाला हूँ और उस पहाड़ को अग्नि में कर दूंगा, कहा वे देखेंगे कि तूने उन्हें सत्य बताया है, मैं यहाँ उसी तरह जलते हुए प्रकट होऊंगा, मैं यहाँ प्रकट होऊंगा और लोगों को प्रमाणित करूंगा, मैं तेरी सेवकाई को प्रमाणित करूंगा। यहाँ उसने मूसा से यही कहा, बहुत सारे वचन, ध्यान दें, उसने कहा अब मैं तुझे लोगों के समक्ष महिमामय करने जा रहा हूँ, कहा अब तू इन्हें बता कि मैं तुझसे वहाँ जलती हुई झाड़ी में मिला था, अब मैं नीचे उतरने वाला हूँ वही आग, और मैं लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि तूने इस विषय में कभी झूठ नहीं बोला। आप इसे वैज्ञानिक रूप में प्रमाणित कर सकते हैं, यहाँ तक कि यदि आप चाहें तो समझे, मैं नीचे उतरने वाला हूँ और उन्हें समझा दूंगा। और जब वो गरजने लगा, जब यहोवा गरजने लगा तो लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, यहोवा ना बोले, हम मर जाएंगे। देखिए उसे पर्दा करना था, इसलिए परमेश्वर ने स्वयं को मूसा में छिपाया और मूसा को वचन दिए, और मूसा नीचे आकर और प्रभु के वचन बोला उस पर्दे में से जो उसके मुख पर था, ये ठीक है। यहोवा भविष्यद्वक्ता के रूप में छिप गया क्योंकि ये पूर्णतः, और परमेश्वर ने कहा वो उनसे इस प्रकार नहीं बोलेगा, वो उनसे केवल भविष्यद्वक्ता के द्वारा बोलेगा, उसके बाद से वो उनसे सदा केवल इसी प्रकार से बोला, केवल यही एक विधि है जैसे वो निरंतर बोला, ये ठीक बात है, कभी भी किसी और विधि से नहीं, वो झूठ नहीं बोलता। ध्यान दें केवल मूसा के पास वचन था, अब वहाँ झुंड नहीं उतर कर आया, वहाँ फरीसी नहीं थे या सदूकी या कोई निश्चित वर्ग या एक गोत्र, ये मूसा था। वो एक मनुष्य लेता है, वो दो तीन विभिन्न प्रकार के मस्तिष्क नहीं लेता, वो एक मनुष्य को लेता है। मूसा के पास वचन था और केवल मूसा के पास, यहाँ तक कि यहोशू के पास भी ये नहीं था, किसी के पास नहीं था, आमीन।
यहोशू एक महान सेनापति था। यहोशू सेना का सेनापति था। यहोशू विश्वासी मसीह था, परंतु मूसा भविष्यद्वक्ता था। वचन यहोशू के पास नहीं आ सकता था, इसे मूसा के पास ही आना था। वो उस समय का प्रधान भविष्यद्वक्ता था। ध्यान दें, वचन यहोशू के पास तब तक नहीं आया जब तक मूसा चला ना गया था। नहीं श्रीमान, परमेश्वर एक समय में एक से व्यवहार करता है। परमेश्वर एक है, समझे। अब केवल मूसा के पास वचन था, ना कि झुंड के पास। देखिए, परमेश्वर ने चेतावनी दी थी कि कोई भी व्यक्ति मूसा के पीछे पर्दे में ना जाए, नकल करने वाले, समझें। महिला, पुरुष, याजक, जो भी वो था, कितने भक्त, वो मनुष्य कितने सम्मान वाले, वे चाहे जो भी थे, उसने चेतावनी दी थी, केवल मूसा ही आए। और यदि कोई मनुष्य, यहाँ तक कि पशु, उसे छुए तो वो तुरंत वहीं मार डाला जाए। उस पर्दे को सामने से कभी ना खोलें। पर्दा एक ही व्यक्ति का है, वो संदेश एक है, समझे। मंदिर में एक व्यक्ति वर्ष में एक बार अंदर जाए, अभिषिक्त किया हुआ, और भीतर जाने के लिए निर्धारित हो, वचन को लाने के लिए नहीं, परंतु लहू चढ़ाने के लिए। यहाँ तक कि अंदर जाने के पहले केवल एक, कोई दूसरा मनुष्य मारा जाएगा, समझे। अब वे आत्मिक रीति से मरते हैं। ये एक आत्मिक पर्दा है, देखा, वो स्वाभाविक पर्दा था, ये आत्मिक पर्दा है, समझे। वे सीधे उसके पीछे चलते जाते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं, ओ मैं जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, परंतु मैं, देखिए, आगे बढ़ते हैं, ये ठीक बात है। ये केवल बोलता है, आपको स्मरण है कि मिस्र में अंतिम विपत्ति मृत्यु थी, निकलने से पहले। पृथ्वी पर अंतिम विपत्ति आत्मिक मृत्यु है, निकलने से पहले। तब वे सब जलाए जाएंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे, और धर्मी उनकी राख पर चलेंगे। परंतु अंतिम चीज आत्मिक मृत्यु है, वचन को अस्वीकार करना। अब ध्यान दें, परमेश्वर ने हर व्यक्ति को चेताया था कि मूसा के पीछे पीछे अग्नि के पर्दे के पार जाने का यत्न न करे। मूसा को पर्दे में होना था, उसे वहाँ से बाहर आना था। मूसा के समान भीतर गया, इस अग्नि स्तंभ में चला गया, और जब वो बाहर आया, वो पर्दे के पीछे था, क्योंकि वो अपने रीति रिवाजों, प्राचीनों की रीति रिवाजों से हटकर अंदर गया। उसने अग्नि स्तंभ देखा हुआ था, परंतु अब वो अग्नि स्तंभ के अंदर जाता है, समझे, आमीन। और वो पर्दा किए हुए बाहर निकल कर आता है। परमेश्वर का वचन एक मनुष्य के पर्दे में है, यहाँ वो बाहर आ रहा है। ओ प्रभु, मैं से देख सकता हूँ। कोई भी इसका यत्न ना करे, कोई इसकी नकल नहीं कर सकता। अच्छा हो कि आप भी ना करें, समझे। यहाँ तक कि याजक या एक पवित्र मनुष्य, वो जो भी है, कार्डिनल, बिशप, कोई भी उस पर्दे में जाने का यत्न कर रहा है, मृत हो गया। परमेश्वर ने उन्हें चेताया, हमारे पास कोई नकले नहीं होंगी। उसका वचन एक पर प्रकाशित हुआ, ये सदा से ही हुआ। एक भविष्यद्वक्ता हर युग में, हर बार, सारे पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के वचन के साथ आया, वचन एक के पास आया, हर युग में वही, यहाँ तक कि कलीसियाई युग में, सबसे पहले से लेकर अंत तक दूसरों के अपने स्थान थे। ये ठीक बात है, ध्यान दें, परंतु उस अग्नि स्तंभ से अलग रहें, समझे। हम यहाँ क्या ही पाठ सीखते हैं, देखिए, प्रत्येक मूसा होना चाहता था, और प्रत्येक, आपको याद है कि दातान, और उन्होंने वहाँ क्या कहा था, उन्होंने कहा, मूसा तुम यहाँ एक मिनट प्रतीक्षा करो, तुमने अपने ऊपर बहुत कुछ ले लिया है। देखिए, अब यहाँ एक और मनुष्य है जिसे परमेश्वर ने बुलाया है, ये सत्य है। वे प्रत्येक जब तक उसके साथ साथ चलते, बहुत अच्छी प्रकार से चलते, परंतु जब एक परमेश्वर का स्थान लेने का यत्न करता, जो उसने मूसा को दिया, जो कि पहले से ठहराया हुआ था और उस कार्य के लिए अभिषिक्त था, जब उसे लेने का यत्न करते, तो आग नीचे आती, पृथ्वी मुंह खोलकर उन्हें वहीं निगल जाती, समझे। देखा, सावधान रहें, भले बने रहें, परमेश्वर के भक्त मसीह वचन पर विश्वास करते हुए अग्नि स्तंभ से अलग रहें। क्या ही पाठ है। पहले परमेश्वर मूसा पर जलती झाड़ी में प्रकट हुआ, परमेश्वर अग्नि स्तंभ के पर्दे में था। अब जरा ध्यान पूर्वक सुने, एक मिनट के लिए। परमेश्वर पहले मूसा के पास आया, वो पर्दे में था, परमेश्वर अग्नि स्तंभ में था, झाड़ी में छिपा हुआ। देखिए, जैसे कि खाल के पीछे, देखिए, वेदी पर अनुग्रह के सिंहासन द्वारा समर्थित, वो पर्दे में था, वो सदा से पर्दे में है। और जब वो मूसा के पास आता है, वो अग्नि स्तंभ में था, अग्नि स्तंभ के पर्दे में।
परंतु यहाँ लोगों के सामने परमेश्वर ने उसे उसी अग्नि स्तंभ के द्वारा प्रमाणित किया। समझे, मूसा ने कहा, अब ध्यान दें, क्या पढ़ रहे हैं? क्या आप अपने मस्तिष्क को बाहर भटकने दे रहे हैं? क्या आप, वो जिनके पास कान हो वो सुन ले। समझे, जब परमेश्वर मूसा पर प्रकट हुआ तो वो अग्नि स्तंभ में था जब उसने उसे उसकी सेवकाई के लिए बुलाया, और मूसा ने आकर लोगों को इस विषय में बताया, वे इसका विश्वास नहीं कर सके। तब भी उसने आश्चर्यकर्म और चीजें की, परंतु इस समय उसने प्रत्यक्ष वैज्ञानिक आधार पर प्रकट किया और मूसा को प्रमाणित किया उसी सेवकाई के लिए जो परमेश्वर ने उससे कहा, क्योंकि वो अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ और पहाड़ को अग्निमय कर दिया, और ये मूसा के पास झाड़ी में आया, उससे बोला। ठीक है, परमेश्वर का मूसा पर पहली बार प्रकटीकरण जलती झाड़ी के पर्दे में था। लोगों के सामने परमेश्वर फिर पर्दे में हो गया और मूसा को पर्दे के द्वारा प्रमाणित किया, स्वयं को उसी आग के पर्दे में छिपाते हुए वही अग्नि स्तंभ नीचे उतर कर आया। वहाँ से तब उनसे, इसलिए वे केवल परमेश्वर का वचन सुन सके। आप समझे इसे, केवल वचन, उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी, क्योंकि मूसा उनके लिए जीवित वचन था। मूसा, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा वचन को इतना प्रमाणित किया। देखिए, मूसा ने कहा, परमेश्वर ने मूसा से कहा, वहाँ नीचे जा, मैं तेरे साथ होऊंगा, वो तेरे सामने कुछ भी नहीं टिक सकेगा, मैं वो हूँ जो हूँ। मूसा ने नीचे आकर कहा, हो सकता है आप इसका विश्वास ना करें, हो सकता है, परंतु अग्नि स्तंभ में परमेश्वर मुझ पर प्रकट हुआ है और मुझे ये बातें बताई। वो हमारे पास इस प्रकार की सब बातें चलती रहती हैं। फिर उन्होंने कहा, क्यों पास्टर? फिर उन्होंने कहा, अरे तुम्हारे पास घटिया हाथ की सफाई है, क्यों? यहाँ मेरे पास जादूगर हैं जो लकड़ी को सांप में बदल देते हैं। जादूगरों, यहाँ आओ। और वे वहाँ पहुँचे और उसी चीज को कर दिया। मूसा जान गया, उसे किसी बात ने परेशान नहीं किया। उनके पास जितने भी नकल मारने वाले हों, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मूसा केवल शांत खड़ा रहा। पहली बात आप जानते हैं, जब वे रेंग रहे थे और मूसा के सांप ने उन्हें सीधा सीधा बाकी सबको खा लिया, समझे? क्यों? उन चेलों के समान, वे इसे समझा ना सके। मूसा नहीं जानता था कि परमेश्वर इसे कैसे करने जा रहा है, परंतु वो इसे करने जा रहा था। स्मरण रखें, उसने कहा, यन्नेस और यम्ब्रेस अंतिम दिनों में वापस आएंगे, नकल करने वालों को देखिए, और यदि हो सके तो चुनौतियों को भी धोखा दे दें, मत्ती 24:24, समझे? ठीक वैसी ही चीजें उसी प्रकार के आश्चर्यकर्म करते हैं, और हर चीज उस वचन पर ध्यान दें, उस वचन पर ध्यान दें। एक मनुष्य कहता है कि आश्चर्यकर्म करता है और फिर भी तीन परमेश्वरों पर विश्वास करना चाहता है, और वहाँ सब प्रकार के हैं। आप इस प्रकार के लोगों से अलग रहें। हम जानते हैं कि वे गलत हैं। देखिए, ऐसी कोई चीज नहीं है, समझे? वचन, प्रत्येक वचन, हर वचन जो परमेश्वर के मुख से बाहर निकलता है। उत्पत्ति 1 वचन, यहाँ पर कहा, एक भी वचन न घटाओ या मिलाओ। देखिए, इसे वही वचन होना है, समझे? ध्यान दें, लोगों ने कुछ देखा जो घटित हुआ था। मूसा पर्दे में था, जैसे एक वो भविष्यद्वक्ता था, और अब परमेश्वर ने अपने वचन को प्रमाणित किया। वहाँ नीचे आ गया और उसने चिन्ह और आश्चर्यकर्म देखे, और तब ये ठीक है, लोगों ने स्वयं को अलग कर लिया, एक कलीसिया। देखिए, कलीसिया का अर्थ है बाहर बुलाए हुए, समझे? जब वे संसार में से बाहर बुला लिए गए और लोग बन गए, तब परमेश्वर ने स्वयं को प्रकट होने दिया कि वो वही अग्निमय स्तंभ था। उसने मूसा के संदेश को प्रमाणित किया। देखा, वो अग्नि स्तंभ था। उन्होंने इसका चित्र उतारा होता होगा, मैं समझता हूँ, यदि उनके पास कैमरे होते, क्योंकि ये सब आग में था। परंतु उन्होंने ये सिद्ध कर दिया, परमेश्वर सिद्ध कर रहा था कि ये संदेश ठीक था, संदेश बिल्कुल समीप था। हर चीज, वे हर चीज को लेकर निकलने पर थे। अपने भविष्यद्वक्ता को इन निकलने वाले लोगों से पर्दे में छिपा लिया। लोगों ने सोचा, देखा कि उसे कुछ हो गया था। वो अब बाकी सब इसराइलियों से भिन्न था। वो भिन्न था, उसका संदेश भिन्न था, वो याजकों से भिन्न था। किसी भी बात में देखिए, वो भिन्न व्यक्ति था। लोगों ने देखा कि कुछ घटित हुआ है। परमेश्वर ने उनसे अपने वचनों को बोलने के लिए स्वयं को अपने भविष्यद्वक्ता के पर्दे में छिपा लिया। उसने यही किया। मूसा लोगों के लिए वो जीवित वचन था, अग्नि स्तंभ के पर्दे में छिपा, बता रहा था कि सुइसों की खाल के पीछे क्या पर्दे में होने जा रहा है, समझे? वचन को मूसा के द्वारा आना था, समझे? मूसा के पास वचन था, वे परमेश्वर के द्वारा लिखे गए थे, उनका कोई और अनुवाद नहीं कर सका। पहले मूसा को उन्हें अनुवाद करना था। यही कारण था कि उसके मुख पर पर्दा डाला गया, क्योंकि वो, क्या आप इसे देख सकते हैं? समझे, ये यहाँ पर है, हम इसे उठा सकते हैं, बंद कर सकते हैं, सब कुछ वहाँ है, परंतु इसे प्रकट होना है। इसे प्रकट करने के लिए मूसा को लोगों के लिए परमेश्वर होना था। आप कहते हैं ये निरर्थक बात है, क्यों उसने बताया? मूसा को भी स्वयं बताया, तू परमेश्वर होगा और हारून तेरा भविष्यद्वक्ता होगा, समझे? इसलिए वो वहाँ पर आता है, तो स्वयं को पर्दे में रखना था, क्योंकि परमेश्वर सदा पर्दे के पीछे है। ओ, क्या आप इसे देखते हैं? ईश्वर लोगों से छिप गया। कहा, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने बुद्धिमानों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है उन्हें जो सीखना चाहते थे, समझे? परमेश्वर पर्दे के पीछे छिप गया। मूसा ने अपने मुख पर पर्दा डाला, तब मूसा जीवित वचन पर्दे में था। लोगों ने अग्नि स्तंभ को देखा, कहा अब हम संतुष्ट हैं, समझे? मूसा बात करे, समझे? परमेश्वर ना बोले कि कहीं हम मर जाएं। मूसा उस अग्नि स्तंभ के भीतर चला गया, समझे? और कहा, अब उसने कहा, अब मैं उनसे और इस प्रकार से ना बोलूंगा, मैं उन्हें भविष्यद्वक्ता दूंगा। देखा, और इसी प्रकार से उसने हमेशा किया। कहा अब उन्हें जाने दो, परंतु इस भविष्यद्वक्ता को ये वचन लेना होगा। यदि वो रीति रिवाजों के पर्दे में होता तो परमेश्वर उसे कभी न भेजता। यदि वो वचन से ढका है तो परमेश्वर इसे प्रमाणित करेगा। परमेश्वर स्वयं अपने वचन को अनुवाद करता है। मूसा उनसे बोला, परमेश्वर ने उसका अनुवाद किया। आमीन। मूसा ने कहा, प्रभु ने ऐसा कहा है, और प्रभु ने वैसे ही किया जो बोला, ये उसे ठीक बनाता है। अब उसने कहा, और मूसा तुम समझते हो, लोग अब समझते हैं। देखिए, मैंने आपको दर्शा दिया, मैंने आपको प्रमाणित कर दिखाया। परमेश्वर ने स्वयं को इस भविष्यद्वक्ता में छिपा लिया कि अपने वचन लोगों से बोले। मूसा उनके लिए जीवित परमेश्वर था, परमेश्वर का जीवित वचन प्रकट हुआ। यही कारण है कि उसका मुख ढपा था, समझे? और क्या आप जानते हैं कि यही बात एक वास्तविक मसीह आज पर्दे में है एक अविश्वासी के लिए। वे उन महिलाओं को लंबे लंबे बालों और चीजों के साथ देखते हैं, कहते हैं पुराने रिवाज वालों को देखो, स्त्रियां पीठ पर अपने बालों को अमेटती हैं, पंचर किया हुआ टायर, अतिरिक्त टायर वहाँ है, देखिए ये सब ढका हुआ है, वे अंधे हैं। और वे कहते हैं मेरे पास PhD L है, मैं चिंता नहीं करता आपके पास क्या है, आप अब भी वचन के प्रति अनभिज्ञ हैं। ये ठीक बात है। ओ, ये तो छोटी मामूली सी बात है, मैं पहले छोटे पाठ ले लो। उन लोगों के विषय में क्या है जो कहते हैं कि वे परमेश्वर की उपस्थिति से ढके हैं और कलीसिया के रीति रिवाज प्रचार करते हैं? ओ दया हो, दयालुता, जो इसमें मिलाते और निकालते और सब कुछ अपने विषयों को घुसाने के द्वारा और उनके अपने विचार और ना कि परमेश्वर का वचन। देखा किस प्रकार का पर्दा उनके पास, कलीसिया से संबंधित पर्दा है। परमेश्वर ने कहा वहाँ पर्दा फाड़ कर खोल दिया है। उन्होंने कहा भविष्यद्वक्ता जैसी कोई चीज नहीं है, इन अंत के दिनों में ऐसी कोई चीज नहीं है जैसे कि चेले और भविष्यद्वक्ता, दिव्य चंगाई जैसी कोई चीज नहीं है, कोई इस प्रकार की चीज नहीं है जैसे कि भविष्य बताने वाले, कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मरकुस 16 पूरा हो रहा है, प्रेरिता युग चला गया, उन्होंने इसे लोगों से छिपा रखा है, परंतु परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की आग के साथ बाहर आया है और उस बात को ऊपर से नीचे तक परमेश्वर ने पर्दा फाड़ दिया है। मूसा पर्दा था, परमेश्वर का जीवित वचन मनुष्य की देह के पीछे छिपा था। सही में अग्नि स्तंभ मूसा में था, जो बता रहा था कि बाद में क्या क्या खाल के पीछे छिपाया जाना था। आप देखते हैं, अब वो वचन सामने लाया गया था और तब लिखा गया था और तब ये पीछे रखा गया था और अब भी छिपा है, क्योंकि परमेश्वर सदा उस वचन में था। आमीन। वो सदा से वचन है, वो उस वचन में था। यही कारण था कि वो वचन पर्दे में छिपाया जाना था। ओ भाई बहनों, क्या आप इसे समझ रहे हैं? देखिए, आप नहीं देखते, ये इन युगों में पर्दे में रहा, उसके अनुसार जो परमेश्वर ने कहा, और ये अंत के दिनों में खोला जाएगा, वे सातों मोहरें तोड़ी जाएंगी और लोगों के लिए पूरी बात स्पष्ट दृश्य में आएगी। अब तक क्या घटित हुआ? सातवें दूत के संदेश की घड़ी, उस एलिया के द्वारा परमेश्वर के सारे भेद खोल दिए जाएंगे। ये अंत की घड़ी, मसीह को कैसे कलीसिया से बाहर कर दिया, परमेश्वर का पुत्र, वो कैसे मनुष्य के पुत्र के समान फिर से प्रकट हुआ, कैसे इस कलीसिया को सही व्यवस्था में लाना है और अंत के दिनों के लिए सारी बातें। कोई धर्म मत नहीं, कोई नामधारी कलीसिया नहीं, केवल वचन पूर्णतः व्यक्ति में रह रहा है। मैं एक लूंगा और एक को छोड़ दूंगा, मैं इसे लूंगा और उसे छोड़ दूंगा। देखा, वहाँ केवल कोई शर्त नहीं, नामधारी कलीसिया नहीं, कोई बंधन नहीं या कुछ नहीं। ये हृदय परमेश्वर के साथ है और केवल वही, समझे। ध्यान दें, मनुष्य की देह में छिप गया। मूसा उस वचन के साथ बोल रहा है, बाद में सुइस की खाल के पीछे होने जा रहा था। इसी प्रकार मसीह हमारा मूसा है। वो परमेश्वर था, मानव देह के पर्दे में छिपा हुआ, मानवता में, देह में छिपा हुआ। ये ठीक बात है। वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। वो सुइसों की खाल के पर्दे में था, वो छिपा हुआ था, और इस समय वो एक मनुष्य में छिपा हुआ है। अब ध्यान दें, कल, आज और सर्वदा एक सा इस युग के लिए अपने वचन की प्रतिज्ञा की है। वो अब भी मसीह है। इस युग का प्रतिज्ञा किया हुआ वचन मानव देह के पर्दे में छिप गया। वचन परमेश्वर है, एक व्यक्ति को अभिषिक्त कर रहा है। मसीह शब्द का अर्थ एक अभिषिक्त किया हुआ, देखिए, वो अभिषिक्त किया हुआ है। तब मूसा अपने दिनों में मसीह था, वो अभिषिक्त था। यर्मिया अपने दिनों में मसीह था, उस दिन के लिए वचन का भाग। परंतु जब यीशु आया, वो छुड़ाने वाले अभिषिक्त के समान आया, और वो मूसा और जो मूसा में था, दोनों था, और सारा वचन और सारा परमेश्वरत्व उसमें था। यही कारण था कि मंदिर का पूरा फट गया और अनुग्रह का सिंहासन स्पष्ट दृश्य में था। वो अभिषिक्त किया हुआ था। अब ध्यान दें, मानव देह के पर्दे में इस युग के प्रतिज्ञा किए हुए वचन को भी पर्दे में होना चाहिए। ध्यान दें, पाप प्रेमी कलीसिया सदस्य और पापी इसे नहीं देख सकते, मानव पर्दे के कारण। ये कारण है कि वे उसे नहीं देख सके। क्यों? वो एक मनुष्य है। वो कहाँ से आया है? उसके पास संगति का कौन सा पत्र है? वो कौन सी कलीसिया से संबंधित है? समझे, मैं आज रात्रि इस पर बोलना चाहता हूँ कि वो कौन सी कलीसिया से संबंधित है। देखा, और इसलिए अब देखिए, वो कौन सी कलीसिया से संबंधित है, कौन से झुंड से, वो कौन से विद्यालय में गया, उसने अपनी शिक्षा कहाँ से पाई है। अच्छा, ये मनुष्य तो रीति रिवाजों के अनुसार जन्मा है, या यहाँ आसपास जो कि उसकी कहानियाँ हैं, ये मनुष्य विवाह बंधन के बाहर जन्मा है। क्यों? वो निश्चय ही वो शैतान का है। देखिए, वो शैतान का है। वो विवाह बंधन के बाहर जन्मा है, और यूसुफ ने केवल उससे विवाह किया ताकि उसे पथरवाह होने से बचाए रखे, क्योंकि वो एक व्यभिचारिणी थी। और वो मनुष्य आसपास आया और हम याजकों को बताता है कि क्या करें, और वहाँ परमेश्वर खड़ा हुआ उस वचन को प्रकट कर रहा था, चिल्ला रहा था, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वही गीत जो मंदिर में गा रहे थे, जो दाऊद ने उनके लिए बनाए थे वर्षों पहले, मसीह से संबंधित। मेरी सारी हड्डियाँ वे मुझे घूरते हैं, उन्होंने मेरे हाथ और मेरे पैर छेद दिए। और वहाँ वे खड़े हैं, उसे गा रहे हैं, और वही मनुष्य क्रूस पर मर रहा है। और जब उसे कर चुके, और जब वो मर गया, तब स्वर्ग का परमेश्वर नीचे आया, जैसे उसने सीने पर्वत पर किया, उस पवित्र अग्नि के साथ, और मंदिर के पर्दे को ऊपर से नीचे तक जला और फाड़ कर अलग कर दिया। और वे क्या कर सकते थे? मंदिर की खिड़की में से कैलवरी को देखते हैं, और वहाँ परमेश्वर स्पष्ट दृश्य में है, बलिदान। परंतु वे अभी तक उसे नहीं देखते। आज भी परमेश्वर ने इस अंत के दिन में उन रीति रिवाजों को तोड़ दिया और वचन को इस युग के लिए स्पष्ट दृश्य में ले आया, और वे अभी तक ये नहीं जानते। वे बस इसे नहीं जानते। ये बहुत ही साधारण है। देखिए, ये बहुत ही साधारण है। ये संसार की चीजों से बहुत ही दूर है। मैंने उस दिन ये किसी विशेष झुंड में प्रचार किया, ढिबरी होना। उन दिनों में मैं इस पर बोलना चाहता हूँ, ढिबरी होना। हम सब किसी के लिए ढिबरी हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि मसीह के लिए हो जाऊँ। और उसने कहा वो मूर्ख गिना गया था। निश्चय ही आपको होना है। देखिए, ये ढिबरी को लेते हैं और चीजों को साथ साथ बांध रहे हैं, समझे। ये ठीक बात है। इसलिए पर्दे पर ध्यान दें, मानव देह नहीं। अब पाप प्रेमी लोग इसे नहीं देख सकते। वे रीति रिवाजों वाले धार्मिक लोग, वे उसे नहीं देख सके, क्योंकि वो एक मनुष्य था। क्यों? उस मानव देह ने परमेश्वर को छिपा दिया। अब यदि वो महान अग्नि स्तंभ था जो नीचे उतर कर आया, देखिए, एक महान अग्नि स्तंभ जो नीचे उतरा था, और उन्हें दर्शाया कि वो क्या था, कि वो यही अग्नि स्तंभ था, ताकि वे उसका विश्वास कर लें, यदि यहोवा आसपास घूमता। परंतु आप देखिए कि उसने क्या किया, ताकि वो उन सब तेज बुद्धिमान लोगों को छोड़ सके। उसने स्वयं को वैसे ही प्रकट किया जैसे उसने मूसा से प्रतिज्ञा की, मैं उन लोगों से भविष्यद्वक्ता के द्वारा बात करूंगा। और वो मनुष्य का पुत्र था, एक भविष्यद्वक्ता। और उनमें से कुछ ने इसे पहचाना, संसार में से लगभग 100 में से 100 प्रतिशत ने, उन्होंने इसका विश्वास किया, बाकियों ने नहीं किया, परंतु वो वैसा ही था। परंतु वहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पूरे स्पष्ट दृश्य में खड़ा है, वो अनुग्रह सिंहासन। जब उसके अपने बालक कह रहे थे वो मरा, वहाँ उसके अपने बालक कह रहे थे हम उसे नहीं चाहते, उसे हटाओ, उस पर थूका। एक प्रतीक पिछले समय में जब दाऊद मंदिर छोड़ रहा था, अस्वीकार किया हुआ राजा उस सड़क पर से निकला और एक छोटा बूढ़ा अपाहिज व्यक्ति साथ घसीट रहा था, उसके समान कभी नहीं किया। उसने उसे पुराना ढोंगी कहकर पुकारा या ऐसा ही कुछ, और उसके मुंह पर थूका, और अंगरक्षक तलवार खींचकर बोला मेरे राजा पर थूका, मैं उस कुत्ते का सर उस पर नहीं रहने दूंगा। दाऊद ने कहा उसे जाने दो, परमेश्वर ने ही यही उसे बताया। और संभवतः दाऊद नहीं जानता था कि उसने क्या कहा है। पहाड़ पर चला गया, पीछे देखकर रो रहा है। वहाँ से 800 वर्ष बाद दाऊद का पुत्र उसी पर्वत पर चढ़ रहा था, यरूशलेम को देख रहा था, उस पर रो रहा था, एक अस्वीकार किया हुआ राजा, और उन्होंने उसके मुंह पर थूका। क्या आप नहीं देखते, ये ठीक वही बात है। देखिए वो वचन नीचे आ रहा है और आज अनुकरण कर रहा है। सदा बहुसंख्यकों के द्वारा अस्वीकार किया गया, देखिए, और अल्पसंख्यकों के द्वारा विश्वास किया गया। अब देखिए वे इसका विश्वास नहीं कर सके, वे यूनानी उसे नहीं देख सके, वो अपने मानव मंदिर में था। क्यों उन्होंने कहा इस मनुष्य का नाम यीशु है, वो नासरत से आता है। अब उन दिनों में उनके पास केवल एक ही नाम था, जैसे कि जॉन जिम, वे कहते हैं यहुन्ना जेफरसनविले से, जिम न्यू एल्बनी से, या ऐसे ही कुछ। आप देखते हैं उसने कहा ये यीशु नासरत से है। साधारणतः ये विश्वास किया गया कि उसकी माँ सिपाही द्वारा गर्भवती हुई, समझे, और तब बिल्कुल यही जो उन्होंने विश्वास किया निश्चय ही, और उन्होंने कहा अब और ये यीशु नासरी है। आप समझे वो कौन है। देखिए वे ये समझ नहीं सके, परंतु क्यों ये वचन उस दिन के लिए जब वो प्रचार कर रहा था, कहा पवित्र वचनों में ढूंढते हो, उसमें तुम सोचते हो कि तुम्हें अनंत जीवन मिलता है, और वे मेरी गवाही देते हैं कि मैं कौन हूँ। यदि तुम मेरा विश्वास नहीं कर सकते तो मुझे भूल जाओ कि मैं एक पर्दे के समान हूँ, जो वचन आ रहा है उसका विश्वास करो। उसने कहा दो गवाह हैं, मैं बोलता हूँ और पिता मेरे विषय में बोलता है, आमीन। ये ठीक बात है, मैं आज के दिन के वचन को बोलता हूँ और पिता इसकी पुष्टि करता है। अब क्या ये तुम्हारे लिए गवाह है, ये है, देखा ऐसे ही इसको पूरा होना है। अब दूसरे कुरिन्थियों में ध्यान दें, दूसरा कुरिन्थियों 3:6 पुराने मंदिर में परमेश्वर ने पुरानी खालों के पीछे निवास किया यहूदियों से अलग। जब पुराना पर्दा फटा था तब भी यहूदी अंधे किए गए थे कि वो कौन था और वो अब भी कौन है, और तब पेंटिकोस्ट ने प्रकट किया कि सच्चा जीवता परमेश्वर कौन था, जब वो पर्दा दो भागों में परमेश्वर के द्वारा काटा गया ऊपर से। उस पर्दे ने ये क्यों किया, इसने ये क्यों किया, आज इस प्रकार का संदेश क्यों आया कि वो करे जो हो चुका है, ये क्यों आया, क्यों? अधिक समय नहीं हुआ कोई मुझसे कलीसिया काल पर विवाद करना चाहता था कि परमेश्वर अपनी पवित्र कलीसिया में था और इस प्रकार की बातें, और मुझे मालूम पड़ा कि ये कोई महिला प्रचारक है और मैं बस इसके विषय में भूल गया। देखिए यदि ये कोई पुरुष होता जो ठीक होने वाला होता तो ये भिन्न बात होती, परंतु इस प्रकार से, परंतु दूसरे देश में जाने का क्या लाभ था, जबकि ये करने के लिए यहाँ मुझे एक सभा छोड़नी पड़ रही थी, आप समझे, इसलिए मैंने बस उन्हें छोड़ दिया। अंधा अंधे को मार्गदर्शन करता है, वे सारे के सारे गड्ढे में गिरते हैं। इसलिए अब इस युग में जबकि पुराने नामधारी और रीति रिवाजों का पर्दा परमेश्वर के वचन के द्वारा फट चुका है, इसलिए ये प्रकट हो सकता है। आप समझे मेरा क्या अर्थ है, परंपरा कहती है वे सारी बातें बीत गईं। इसे थोड़ा सा अंदर बैठने दें, वे बातें बीत गए, परंतु इस अंत के दिनों में वो रीति रिवाजों का पर्दा फाड़ कर अलग कर दिया गया है और यहाँ अग्नि स्तंभ खड़ा है, समझे, वो यहाँ है, आज के दिन के लिए वचन को प्रकट कर रहा है, पर्दा फट गया है। अब संसार वे अभी इसका विश्वास नहीं करते, इससे कोई मतलब नहीं कि वे क्या नहीं देखते, वे इसे नहीं देखते, ये उनके पास नहीं भेजा गया था। स्मरण रखें, मनुष्य का पुत्र सादोम पर प्रकट नहीं हुआ था, दो संदेशवाहक थे, ये ठीक बात है, परंतु ये परमेश्वर स्वयं मानव देह में अब्राहम पर प्रकट हुआ था, चुना हुआ है, और ध्यान दें उसने स्वयं को प्रकट करने के लिए क्या किया था। और अब अब्राहम जान गया, जब वो जान गया कि उसके पीछे की ओर सारा के विचार में क्या था, उसने कहा उसे एलोहिम पुकारा, तेरा दास। अब ध्यान दें, इसलिए ये प्रकट नहीं हो सकता, वचन के अपने ऊपर पर्दा था लोगों के लिए, इन सब वर्षों में ये नहीं किया जा सकता। आपको वो संदेश स्मरण है जो मैंने यहाँ से पहली बार छोड़ते हुए उस प्रातः प्रचार किया था, गोलियत और दाऊद के विषय में। मैंने कहा वहाँ चुनौती देने वाले की ओर देखें, ये कहते हुए कि आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए। उन टेपों पर ध्यान दें जैसे कि वे आते हैं, उनमें से प्रत्येक पर ध्यान दें, कैसे ये और स्पष्ट होते जा रहे हैं। यदि आपके पास सुनने के कान हैं और देखने के लिए आँखें, क्या मैंने कहा वहाँ एक महान पुरोहित या कलीसिया संबंधी संसार खड़ा है। ये इस वैज्ञानिक युग में है कि ये नहीं किया जा सकता, परंतु मैंने कहा परमेश्वर उस उजियाले में इसके पहले कि ये कभी लिया गया केवल एक बार, तब फिर कभी नहीं लिया गया। ये वहाँ नदी पर था, उन्होंने इसका चित्र कभी नहीं उतारा, समझे। मैंने कहा उसने मुझे बताया है कि ये कर दिया जाएगा, वो एक आवाज लाएगा और ये राष्ट्रों में छा जाएगा। और यहाँ तक कि डॉक्टर डेविस ने कहा तुमने विद्यालय से व्याकरण से सातवीं कक्षा पास की है, राजाओं और अधिपतियों के लिए प्रार्थना करोगे और एक बेदारी आरंभ करोगे कि राष्ट्रों पर छा जाएगी। मैंने कहा यही है जो उसने कहा और ये हो गया, समझे। देखिए ये हो गया, इसकी यही बात है, उसे किसी अनुवाद की आवश्यकता नहीं है, उसने ये कर दिया। देखिए उसने ये पहले ही कर दिया, ये स्वयं का ही अनुवाद करता है। देखिए अपने चुनावों को बुला रहा है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से, अब ये प्रकट हो गया। मैंने कहा दाऊद वहाँ खड़ा था, एक छोटा सा दुबला पतला लड़का झुकी हुई कमर के साथ, गोफन उसके हाथ में थी। क्यों? शाऊल ने उसकी ओर देखा, सेवकों की संख्या का प्रधान कहा, क्यों तू तो प्रशिक्षण प्राप्त तक नहीं है। उसने कहा मैं जरा देखता हूँ, यदि मैं तुझे पीएचडी या कुछ दे सकूँ, उसके ऊपर ये हथियार टांग दो। उसने पाया कि ये परमेश्वर के जन पर ठीक नहीं बैठते। कहा मेरे ऊपर से ये सब उतार दो। कहा मुझे इस सब के विषय में कुछ नहीं मालूम। कहा मुझे वैसे ही जाने दो जो मैं जानता हूँ, जिससे मैं सिंह के साथ लड़ा था, जिसके साथ मैं भालू से लड़ा था, वो एक प्रकार से जंगल में रहने वाला था। उसने कहा मुझे ऐसे ही जाने दो। और इस पुराने गोलियथ ने कहा क्या तुमने मुझसे लड़ने के लिए कुत्ते को भेजा है। कहा मैं तुझे अपने भाले की नोक से उठाकर और तेरी लोथ को ऊपर लटका दूंगा और चिड़ियों को खिला दूंगा। दाऊद ने कहा तू मुझसे एक फिलिस्तीनी के समान मिल रहा है और हथियार और भाला, और मैं तुझसे इसराइल के परमेश्वर के नाम से मिलूंगा। ध्यान दे, भविष्यद्वक्ता दाऊद ने कहा आज मैं तेरा सिर तेरे कंधे पर से काट दूंगा। आमीन। ओ प्रभु, वो जानता था कि उसके पास क्या था जिस पर उसने विश्वास किया और पूर्ण रूप से प्रेरित था, जो उसने उससे प्रतिज्ञा की उसे पूरा करने में सक्षम है, समझे। इसलिए जो भी है ये घटित हुआ। पुरानी कहावत आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए, वे दीवारें गिरा दी गई हैं। यहोवा अब भी स्पष्ट दृश्य में खड़ा है, अपने वचन को प्रकट कर रहा है अनावरत वाले को। ये ठीक बात है। ध्यान दें, अन्य जाति की कलीसिया भी पर्दे से अंधी हो गई, जब से ये फाड़ा गया है और परमेश्वर को दर्शाया है, वो चर्च संबंधी पर्दा। मनुष्य के भीतर फिर से वचन को पर्दे में रखकर, ठीक यही इजरायली देखने में असमर्थ रहा। यदि ये कोई स्वर्गदूत या कुछ और होता तो इजरायल इसका विश्वास कर लेता, परंतु ये स्वर्गदूत नहीं हो सकता था, इसे तो एक मनुष्य ही होना था। आमीन। परमेश्वर अपने वचन को नहीं तोड़ सकता। अंतिम दिनों में इसे फिर से वैसा ही होना है, समझे। इसराइल को किसने अंधा किया? उस मनुष्य ने। तू मनुष्य होकर स्वयं को परमेश्वर बनाता है, इसी बात के लिए उन्होंने उसे मार डाला। और आज क्योंकि संदेश मनुष्य के द्वारा आया न कि स्वर्गदूतों के द्वारा, समझे। परमेश्वर अपने मार्ग को बदल नहीं सकता, अपने वचन को बदलता नहीं। उसने कहा वो नहीं बदलता, समझे। प्रतिज्ञा पर ध्यान दें। और आज अन्य जाति ऐसे ही अंधे हैं जैसे इसराइल हुआ था, क्योंकि क्या पर्दा, परमेश्वर मानवता के पर्दे में था, इसराइल को अंधा कर दिया। सदा एक को अंधा किया, एक अंधा होगा, दूसरे पर ये सत्य को प्रकट करेगा। ये कुछ की आंखें बंद करेगा और दूसरे की आंखें खोलेगा। देखिए यीशु खड़ा हुआ है और बोला ठीक है, तेरा नाम शमौन है और तेरे पिता का नाम योना था। उसने कहा प्रभु परमेश्वर। फिलिपोस, उसने कहा तू मुझे कब से जानता है? उसने कहा देखो एक इजरायली जिसमें कोई दोष नहीं है। और उसने कहा रब्बी तूने मुझे कब से जान लिया? उसने कहा इसके पहले कि फिलिपोस ने तुझे बुलाया, जब तू पेड़ के नीचे था मैंने तुझे देखा। उसने कहा रब्बी तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इसराइल का महाराजा है। अरे वहाँ वो भी खड़े थे, बोले ये बालजबूब है, समझे। इसने क्या किया? एक की आंखें खोली, दूसरे को अंधा कर दिया। याजकों ने क्या कहा? क्यों ये व्यक्ति बालजबूब है? उस साधारण स्त्री ने कहा मैं जानती हूँ कि मसीह आने वाला है जो कि अभिषिक्त कहलाया। देखिए अभिषिक्त किया हुआ आएगा। हमारे पास भविष्यद्वक्ता नहीं थे, तुझे भविष्यद्वक्ता होना चाहिए। परंतु वो अभिषेक किया हुआ आएगा। हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अन्य जातियों के लिए यह अंतिम दिन है, यानी यहूदियों के लिए कहा यह अंतिम दिन है। देखिए, सामरी और यहूदी दोनों मसीह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, समझे? कहा यह समय उसके प्रकट होने का है। हम जानते हैं जब वो आता है वो ऐसी चीजें करेगा, वो हमें ये बातें बताएगा। उसने कहा मैं वही हूँ। उसकी आंखें खुल गईं, सिपाही याजक लोग अंधे हो गए थे। सुसमाचार सदा यही करता है, ये कुछ की आंख खुलता है और कुछ पर सत्य को प्रकट करता है, जबकि औरों को अंधा कर देता है। इसके दोहरे अर्थ होते हैं। कुछ उस पुत्र को लेकर और सीधा सीधा उसके अंदर देखते हैं और अंधे होकर चले जाते हैं, दूसरे इसे ले सकते हैं और इसके साथ चले जाते हैं। ये अंतर है, जैसे कि प्रत्येक युग में ये किया गया। परमेश्वर तो मानव देह के पर्दे में रहा, ध्यान दें, उसने किया। भविष्यद्वक्ता लोग, परमेश्वरत्व पर्दे में था, वे परमेश्वर का वचन थे। क्या ये ठीक बात है? मानव देह के पर्दे में, इसलिए उन्होंने न हमारे मूसा पर न ही यीशु पर ध्यान दिया। ध्यान दें, पुराने मंदिर में पुरानी सुइसों के खाल के पर्दे के पीछे वचन था, प्रकट किया गया वचन पत्थर की पट्टियों पर था। अब मैं लगभग 20 मिनट में छोड़ने जा रहा हूँ, यदि मैं छोड़ सका 11:30 बज जाएंगे। ध्यान दें, यदि आपने दिया हो तो मैंने यहाँ कुछ पन्ने पलट दिए हैं, आप समझते हैं, ताकि इसलिए मैं काट कर छोटा करूंगा। ये बहुत ही लंबा हो रहा है, मैं जानता हूँ कि आप गर्मी में हैं, थके गए हैं। पीछे पुराने मंदिर में पर्दे में वहाँ पीछे क्या था? यहोवा क्या था? वहाँ पीछे क्या छिपा हुआ था? पर्दे ने क्या छिपा रखा था? हालेलुया। पर्दे ने क्या छिपा रखा था? इसने वचन को छिपा रखा था। पर्दा पुरानी सुइसों की खालों का, उसने उनकी आंखों से वचन को छिपा रखा था, स्वाभाविक आंखों से। वहाँ पीछे भेंट की रोटियां भी थी, वहाँ पीछे महिमा की ज्योति भी थी, परंतु ये सब उनसे छिपा था, ये सारा का सारा छिपा हुआ था। परमेश्वर की सारी महिमा उस पुरानी सुइसों की खाल के पीछे थी, ये ठीक बात है। सब कुछ स्वाभाविक आंखों से छिपा हुआ था, ये आज भी है। ये पवित्र शोर मचाने वालों पागलों का झुंड कहलाया, परंतु वे नहीं जानते कि वहाँ पीछे क्या छिपा हुआ है। यही है जो वे नहीं जानते, समझे? तब जब परमेश्वर ने अनुग्रह में होकर उनके लिए पर्दा फाड़ दिया कि देखें कि वे अपनी परंपराओं में इतने लिपटे हुए थे, ये अब भी उनसे छिपा हुआ था, यहाँ तक कि आज के दिन तक। ठीक वैसे ही अब महिमा, पवित्र आत्मा की सामर्थ, महिमा वाली ज्योति जो कि विश्वासी के ऊपर आती है, मेरा अर्थ वास्तविक विश्वासी से है, जो कि परमेश्वर के कार्यों का कारण होता है, और विश्वास का उसमें आना कि परमेश्वर के वचन का विश्वास करे, जो उन सब की आंखों से छिप जाता है। वे कहते हैं वे बातें बीत गईं। आप देखिए, वे अब भी पर्दे के पीछे रह रहे हैं। आप पर्दे के पीछे नहीं रहे छोटे लोगों, परमेश्वर आपके पूरे स्पष्ट दृश्य में है। उस दिन भाई फ्रेड सॉथमैन, भाई टॉम सैमसन, मैंने जानता कि वो कभी यहाँ पहुँच पाया या नहीं। हम में से बहुत से बैप्टिस्ट कलीसिया में थे और सेवक ने कुछ कहा जो सुनने में बहुत अच्छा था। हम सब ने आमीन कहा। कलीसिया में प्रत्येक ने अपनी गर्दन घुमाकर और पीछे की ओर देखा, समझे? देखा, हमने एक छोटा सूखा रोटी का टुकड़ा पाया जो पीछे महिमा की ज्योति में से आया था, आप जानते हैं, और इसे पाकर हम एक प्रकार से प्रसन्न थे। दूसरे शब्दों में हमने कहा आपको धन्यवाद प्रभु, समझे? और जब उन्होंने ये किया तो ये लोग पर्दे से इतने ढके थे कि वे इस पर हंस पड़े। वे नहीं जान पाए कि ये सब किस विषय में था, समझे? वे अब भी पर्दे के पीछे हैं, इसलिए कुछ अंदर की ओर, कुछ बाहर की ओर, और इस प्रकार। परंतु परमेश्वर हमारे लिए स्पष्ट दृश्य में था, छिपा हुआ, वैसे ही अब। तब जब परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में पर्दा फाड़ दिया, वो स्पष्ट दृश्य में आ गया, परंतु वे अपनी परंपराओं में इतने बंधे हुए थे कि वो अब भी उनसे छिपा हुआ था, वैसे ही अब। सारी महिमा छिपी हुई है हमारे लिए, मसीह में छिपी हुई है, वचन जो कि हमारा मंदिर है। ओह, अब मुझे इसमें थोड़ा सा और गहराई में जाने दें। इस प्रातः मेरी भावनाओं के लिए क्षमा करें, परंतु ओ, मैंने आपको ये बहुत लंबा कर दिया, ये मुझ में बंधा हुआ है, समझे? ध्यान दें, वो सारी महिमा जो परमेश्वर में थी वचन में है, सारी आशीषें जो परमेश्वर में हैं वचन में हैं। ये अविश्वासियों के लिए परंपरा के द्वारा छिपा हुआ है, देखिए मेरा क्या अर्थ है, परंतु ये सब मसीह में है। वो जो परमेश्वर था उसने स्वयं को खाली कर दिया, केनोस, और मसीह में आ गया, और हम मसीह में पर्दे के पीछे हैं।
ठीक है, आप कहते हैं मैं मसीह में हूँ और फिर भी ये विश्वास करते हैं कि तीन परमेश्वर हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हैं, सारी रीति रिवाजों में विश्वास करते हैं और बातों में कि आप प्राचीनों में विश्वास करते हैं। नहीं, आप अब भी पर्दे के पीछे हैं, समझे? पर्दे में आ जाएं, वो मसीह वचन है। कैसे? मैं दिव्य चंगाई में विश्वास नहीं करता, मैं इस प्रकार के आश्चर्य कर्मों की और बातों में विश्वास नहीं करता। अच्छा, आप देखिए, आप अंदर नहीं हैं, पर्दे के भीतर नहीं हैं, आप इस विषय में कुछ नहीं जानते, समझे? मसीह वचन है और जब हम वचन में होते हैं हम मसीह में होते हैं। और मैं कैसे मसीह में हो सकता हूँ मसीह का इनकार करते हुए? वो था जिसने कहा एक भी शब्द ना ही जोड़ा जाएगा या निकाला जाएगा। आप कैसे इसमें से निकाल सकते हैं या इसमें फिर जोड़ सकते हैं? देखिए, ये आपको दर्शाता है कि किस पर्दे ने आपको पर्दा डालकर अलग कर रखा है, समझे? हम उसमें, तब हम उसमें होने के नाते हम अब भी उन धार्मिकों और प्रोफेसरों जो इस संसार के हैं उनके लिए पर्दे में हैं। देखिए, हमारी महिमा जो हमारे पास है और उसमें आनंद कर रहे हैं, हम अब भी उन बाहर वालों से पर्दे में हैं। वे फिर सोचते हैं कि हम पागल हैं और एक ढिबरी हैं, समझे? ये ठीक बात है। परंतु हम जो यहाँ मसीह में हैं, उसमें बपतिस्मा लिया है, पहला कुरिन्थियों 12, उसमें हम उस महिमा के भागी हैं, समझे? परंतु बाहर की ओर नहीं, आप अब भी भीतर देख रहे हैं, इसका इनकार कर रहे हैं, समझे? इसलिए अब हम उसके पास बुलाए गए हैं ताकि जो वो है उसके भागी हो जाएं। हम उसके पास बुलाए गए हैं जो कि अविश्वासियों से छिपा हुआ है, मानव देह के पर्दे के द्वारा, समझे? वे उस महिमा को जानते हैं और उन्होंने इसके विषय में पढ़ा है, ये यहाँ वचन में है, परमेश्वर की महिमा और इस प्रकार की बातें। उनके लिए ये केवल वचन है, हमारे लिए ये प्रकटीकरण है, समझे? ये वचन नहीं रहा, ये वास्तविकता है। आमीन। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा, वो वचन था, परंतु अब वहाँ उजियाला था। ये वचन नहीं है, ये उजियाला है। देखा मेरा क्या अर्थ है? अब ये हमारे लिए केवल लिखित वचन नहीं है, ये एक वास्तविकता है। हम उसमें हैं, अब हम आनंद कर रहे हैं, अब हम उसे ताक रहे हैं, अब हम उसे देखते हैं। वचन सत्य को प्रकट कर रहा है, वो वहाँ छिप गया, क्यों? ये मानव देह के पर्दे में छिपा है, समझे? तो वे कहते हैं ये लोगों का झुंड है। वे कहाँ के विद्यालय में गए हैं? उनके पास कौन सी शिक्षा है? वे कहाँ से आए हैं? वे कौन से झुंड से संबंधित हैं? देखा, ओह, देखिए, वे इसे नहीं समझते। एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य से कहा, उस दिन कहा, आपको मसीही होने के लिए किसी नामधारी कलीसिया से संबंधित होना चाहिए। उसने कहा, मैं मसीही हूँ, मैं इनमें से किसी से भी संबंधित नहीं हूँ। कहा, परमेश्वर ने ये कैंसर मुझ में से निकाल दिया है। कहा, अब आप इसके विषय में क्या सोचते हैं? वो एक डॉक्टर था। उसने कहा, मुझे दिखाइए कि नामधारी कलीसियाएं ये कर रही हैं, समझे? ठीक है, समझे? ये अब भी पर्दे में है, हम मसीह के अंदर हैं। अब जैसे कि तब सारे सच्चे विश्वासी उसे देखते हैं, आज के दिन की वचन की प्रतिज्ञा ने खुले में प्रकट किया है। ये एक बड़ा वचन है यदि आप इसे समझ सकें, समझे? सारे सच्चे विश्वासी जो वचन में हैं, परमेश्वर को साफ साफ देखते हैं। पर्दा फट गया है और परमेश्वर आपके सामने खुले रूप में खड़ा हुआ प्रकट हुआ है, समझे? परमेश्वर प्रकट रूप में प्रकट हुआ। ये करने के लिए हमारे पुराने नामधारियों की परंपराओं का पर्दा फिर से फाड़ा जाना चाहिए। वास्तव में इसे देखने के लिए कि ये क्या है, आपको उन चीजों के मध्य में से निकलकर बाहर आना होगा। आप ये कभी नहीं करेंगे, वे आपके सामने हर बार पर्दे को खींचते रहेंगे, ओ इसमें कुछ नहीं है, परंतु यहाँ पर ये लिखा है और यहाँ पर ये प्रकट हुआ है, आपने देखा? अब क्या हो यदि कोई सूर्य को देखने से मना करे और कहे, ओ वहाँ मैं जानता हूँ कि परमेश्वर ने कहा कि उजाला हो जाए, परंतु ऐसी कोई चीज नहीं है, मैं नीचे तहखाने में जा रहा हूँ, मैंने बस इसे देखने के लिए मना कर दिया है। वो व्यक्ति पागल है, उसके साथ कुछ गड़बड़ी है, उस पुरुष या महिला के साथ कुछ गड़बड़ है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा को देख सकते हैं और इसे प्रकट होते हुए देखा है और फिर भी विश्वास करने से इनकार करते हैं क्योंकि नामधारी कलीसिया ने पर्दा खींच दिया है। देखा, छिप गया। ये करने के लिए हमारे नामधारी कलीसियाओं के परंपरा वाले पर्दे तोड़ने हैं परमेश्वर के आत्मा और तलवार के द्वारा, जो कि उसका वचन है। उसका वचन सदा उसकी तलवार है, समझे? और उस दिन उसने अपनी अग्नि में तलवार ली और उस पर्दे को ऊपर से नीचे तक चीर दिया। वो उसी तलवार से आज वही चीज कर रहा है। मेरा धर्मसार नहीं, मेरे मतों की पुस्तक नहीं, मेरा धर्म मत, परंतु प्रभु की तलवार। देखिए,
पर्दे को नीचे तक चीर देती है और आप परमेश्वर को स्पष्ट खड़े हुए देखते हैं अपने वचन में प्रकट होते हुए। देखने में क्या ही महिमामय दृश्य है। देखा, ठीक है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा और अग्नि, उसकी तलवार इसे चीरती है। वचन नामधारी कलीसिया के पर्दे को फाड़ देता है। अच्छा, यदि आप जरा ये कहें वचन और वचन कार्य नहीं करता, तो यहाँ उस तलवार का क्या लाभ होगा, और कहें ये चीर नहीं सकती, कहें ओ और ये चीरेगी नहीं। परंतु जब आप परमेश्वर की तलवार को वहाँ लगा देते हैं और उसे फाड़ते हुए देखते हैं, वो अभिषेक हाथों के द्वारा ऐसा करने के लिए पकड़ी गई है। देखिए, फाड़ कर खोल देती है और वहाँ पर वो है। ये वहाँ परमेश्वर को स्पष्ट दृश्य में दर्शाती है, वो महान यहोवा। ये उसका प्रकट किया हुआ वचन है, वो भाग जो उस दिन के लिए प्रतिज्ञा किया हुआ है। क्या आप समझे इसे? समझे, जब तलवार आज के दिन की प्रतिज्ञा है, आज के दिन में जो कि होनी ही थी, और परमेश्वर अपनी तलवार लेता है और नामधारी कलीसिया के पर्दे को चीर देता है और पीछे खींच देता है और स्वयं को प्रकट करता है और दर्शाता है कि वो वहाँ है, वो अब भी वही अग्नि स्तंभ है। ध्यान दें, ये आज की प्रतिज्ञाओं का प्रकट किया गया वचन है। हम इसे देखते हैं जैसे कि पत्रस ने किया, जब उसने कहा प्रभु हम किसके पास जाएं, इसको देखने के पश्चात हम कहाँ जाएंगे, हम कौन सी कलीसिया में सम्मिलित हो सकते हैं जब हमने इस एक में जन्म लिया है। समझे, क्या आप कर सकते थे? आप इन सत्य बातों के जानने के बाद कौन सी नामधारी कलीसिया में सम्मिलित हो सकते थे? देखिए, जब वे हर कोई इसका इनकार करता है, उनमें से प्रत्येक, मेरे पास एक भी नहीं जो ये कहेगा या इसके लिए कुछ करेगा, ठीक है, ये ठीक बात है। मैंने वहाँ इन यात्राओं को आरंभ किया जहाँ 42 कलीसियाओं ने एक स्थान पर खर्चा उठाया था। जब मैं वहाँ पहुँचा, मेरे पास एक भी नहीं था। उनमें से प्रत्येक ने कहा वो अनंत सुरक्षा में विश्वास करता है, इससे विधिवादी निकल गए। एक ने कहा ये यीशु के नाम में बपतिस्मा देता है, इससे बाकी सब छोड़कर निकल गए। देखा, उनमें से एक ने कहा वो सर्प वंश में विश्वास करता है, सर्प का कोई वंश नहीं है, इससे वे, बाइबल ने कहा मैं स्त्री के वंश और सर्प के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। इसे देखिए, ये पर्दा है जो वचन पर से उठाया गया है। समझे, ये ठीक बात है, ये बालकों पर प्रकट किया गया है, ये उठा दिया गया, वे इसे देखते हैं और देखेंगे। जैसे कि एक बार कहा गया, ये ठीक बात है, तब ये होगा जैसे कि एक बार कहा गया, जब आप इसे देखते हैं, जब ये पर्दा वचन पर से उठाया गया तो वचन पर से परंपराएं उठा ली गई। जैसा कि यीशु ने एक बार कहा, जब तुम मुझे देखते हो तो पिता को देखते हो। समझे, परमेश्वर और उसका वचन एक है। अब आप समझे, जब वचन प्रकट हुआ ये क्या था? समझे, यीशु ने कहा पवित्र वचनों में ढूंढो, तुम सोचते हो कि तुमने परमेश्वर पर विश्वास किया, मुझ पर भी विश्वास करो। यदि मैं अपने पिता के कार्य ना करूं तो फिर मेरा विश्वास ना करो। यदि मैं उन कामों को करता हूं, मैं और पिता एक हैं। जब तुम मुझे देखते हो तो तुमने मेरे पिता को देख लिया, और जब तुम वचन को प्रकट होते देखो तुम पिता परमेश्वर को देखते हो, क्योंकि वचन पिता है, वचन परमेश्वर है, और वचन देहधारी हुआ। परमेश्वर स्वयं ही अपने ही वचन को ले रहा है और इसे विश्वासियों के मध्य में प्रकट कर रहा है। इसे और कुछ जीवित नहीं रख सकता, केवल विश्वासी लोग। ये नहीं है, ये नहीं होगा, आप गेहूं को लेकर भिन्न मिट्टी में बो दें, ये कभी नहीं उगेगा। परंतु क्या है, इसे एक विशिष्ट खाद भूमि में गेहूं उगाने के लिए चाहिए, और यदि वो नहीं है, यदि खाद भूमि में नहीं है, तो उस खाद में गेहूं अंकुरित नहीं होगा, ये कभी नहीं उगेगा। इसलिए कोई मतलब नहीं कि वचन कहां पर गिरता है, यदि ये सही प्रकार के हृदय में नहीं पड़ता। यीशु ने ऐसा ही कहा है, कुछ मार्ग के किनारे पथरीली भूमि में गिरा और चिड़ियों ने आकर उसे खा लिया, और तब उसने कहा कुछ कांटों और झाड़ियों में गिरा जो कि उगा और वहीं दबा दिया गया। रीति रिवाज, नामधारी संसार की चिंताओं ने इसे दबा दिया, परंतु कहा कुछ अच्छी भूमि में गया, 100 गुना फल लाया, कहा यही परमेश्वर का राज्य है। ये ठीक वही बात है, देखा कि कुछ बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे, कुछ थोड़े समय के लिए विश्वास करेंगे, चेलों के समान वे उसके पीछे पीछे चले। उनमें से बहुत से 70 वर्षों से उसके पीछे पीछे चलते रहे कि पाएं लगभग एक और आधे या दो वर्षों तक, केवल ये जानने के लिए जब तक वे उसमें कुछ ढूंढ सकें, कुछ जैसे कि किस प्रकार से उसके पास इन चीजों के करने के लिए सामर्थ्य थी, या खरगोश के पैर के समान एक प्रकार का जादूगर, वो इन चीजों को उत्पन्न करने के लिए क्या कर सकता था, वो कैसे जान सकता था कि लोगों के हृदय में क्या है, वे क्या सोच रहे थे। और अंततः उन्होंने ढूंढ लिया कि उसने कहा कि वह स्वर्ग से उतरा है, वह स्वयं में वचन था। और जब उन्होंने ये किया, ये उनके लिए बहुत ही अति थी, उन्होंने कहा इसे कोई मनुष्य नहीं समझ सकता, और वे उसके पास से चले गए। ये वे हैं जो कटीली झाड़ियों में गिरे। हर कलीसिया सभा में ये ठीक वही चीज वापस लाता है। आपके पास बनावटी विश्वासी लोग, अविश्वासी और विश्वासी लोग हैं। ये हर श्रोता सभा में रहे हैं। आप इन्हें हर समय पाएंगे। इनमें से कुछ ऐसे बनेंगे जैसे वे विश्वासी हैं। ये सबसे बुरा प्रकार है। और तब वे हैं जो वास्तविक रूप से अविश्वासी हैं। वो आपको परेशान नहीं करता, वो केवल सर हिलाता हुआ चला जाएगा। परंतु वे जो बनावटी विश्वासी हैं, कहते हैं कि वे विश्वासी हैं। ये वो प्रकार है जिसे आपको ध्यान में रखना है कि वे बनावटी विश्वासी हैं। और तब कुछ वास्तविक विश्वासी हैं। इन्हें देखिए, वे तीनों वही हैं। वहाँ अविश्वासी थे, जैसे उसने कहा मनुष्य के पुत्र का मांस खाओ, ओ मनुष्य, यही वो था। बाकी बनावटी विश्वासी थे, वे तब तक रुके रहे जैसे कि यहूदा ने किया, ठीक अंत तक। परंतु तब वास्तविक विश्वासी इसकी व्याख्या नहीं कर सके, परंतु उन्होंने इसका विश्वास किया। जो भी हो, वे साथ बने रहे। पर्दा, अविश्वासियों की परंपरा हटा दी गई। आप परमेश्वर को देखते हैं। जब रीति रिवाजों का पर्दा हटा दिया गया, तब आप देख सकते हैं कि परमेश्वर अब भी अपने वचन में परमेश्वर है। वो अब भी अपने वचन को बनाए रखता है। वो है, वो परमेश्वर है, अपने वचन का लिखने वाला। ये दूसरों के लिए खाल के पर्दे के पीछे छिपा है। जी हाँ, ये ठीक बात है। उनके लिए जो पर्दे के पीछे नहीं जा सकते, वो अब भी खाल के पर्दे के पीछे है। ध्यान दें, तब हम उसका भाग हो जाते हैं, जैसे कि आप वो पर्दा है जो उसे छिपा देते हैं। जब तक आप मसीह में हैं, आप उसका भाग हैं, जैसे कि मसीह परमेश्वर था, क्योंकि परमेश्वर उसमें था, उसे परमेश्वर बना दिया। और जैसे कि मसीह आप में है, महिमा की आशा, आप मसीह के भाग हो जाते हैं। वो जो मुझ पे विश्वास करता है, जो कार्य मैं करता हूँ, वो भी करेगा। समझे? जब तक मसीह आप में छिपा हुआ है, आप मसीह के भाग बन जाते हैं। तब ये अविश्वासी के लिए पर्दा है, परंतु आप जानते हैं कि वो आप में है। आप मसीह का निवास बन रहे हैं। ये पर्दे के पीछे है, खाल के। तब हम पीछे इस पर्दे के कारण, पर्दा फिर से मानव देह का है, परमेश्वर को छिपाता है वचन को अविश्वासी से। जैसा कि ये लिखा है, देखिए लिखा है, तुम लिखित पत्रियां हो, बाइबल ने कहा है। अब पत्रियां क्या हैं? लिखित वचन, और आप लिखे हुए हैं। दूसरे शब्दों में आप इस प्रकार से पढ़े जाएंगे, आप ये कहा, आप लिखित पत्रियां हैं, या आप वचन हैं जो कि लिखा गया है, प्रकट किया गया। इसमें कुछ भी नहीं मिलाया जा सकता। आप नहीं कह सकते कि मैं एक लिखित पत्री हूं और किसी और प्रकार का जीवन बिता रहे हूं, परंतु जो पहले से लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ भी मिलाया या निकाला नहीं जा सकता। जैसे कि डॉक्टर ली वाइल इस प्रसिद्ध पुस्तक को लिख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप कुछ समय पश्चात इसे देखें। भाई वाइल यहां हैं, यहीं कहीं नीचे हैं। मैंने उन्हें बाहर देखा था, मैं नहीं सोचता कि वो भीतर आ सकते हैं, परंतु वे एक पुस्तक लिख रहे हैं, और लुदेकिया युग की बहुत ही विस्मित कर देने वाली। और मैं चाहता हूं कि आप ये छापे खाने से जल्द ही बाहर आ जाएगी, इसलिए अब हम उसको अंतिम बार पढ़ रहे हैं। और लिख रहे थे, हम इस पर विचार विमर्श कर रहे थे इसके विषय में। हर कोई मेरे पास आया और बोला, भाई ब्रणम, वे सात गर्जने जो आवाज गर्जी, और उसने कहा इसे मत लिख, समझे, परंतु इसे बंद कर दे। कहा ये वे सात गर्जनाएं होंगी जो कि अंतिम दिनों में प्रकट होंगी। देखिए, सात गर्जनाएं जो हमें बताएंगी। अब क्या ये अच्छा प्रतीत नहीं होता, समझे? परंतु अब ध्यान दें कि आप किस विषय में बातें कर रहे हैं जब आप ये कहते हैं। उसने कहा, देख तू इसे ना लिख, समझे? इन सात गर्जनों ने अपने शब्द निकाले, देखा, और उसने कहा इसे ना लिख, देखा, परंतु इसे पुस्तक में अंतिम दिनों के लिए मोहर बंद करना है। अब किसी ने बहुत से मुझसे कह रहे थे, और धर्मशास्त्रियों ने कहा, भाई ब्रणम, यदि प्रभु परमेश्वर कहा, यदि आपके अनुभव जो प्रभु ने आपको उसके अपने लोगों के लिए दिए हैं, नम्रता पूर्वक ये कह रहा हूँ, कहा आपको लिखने योग्य होना चाहिए था कि आप स्वयं एक बाइबल लिखें, आपके वचन यदि परमेश्वर ने प्रकट कर दिए हैं। मैंने कहा ये सत्य हो सकता है। देखिए, वो मुझे पकड़ना चाह रहा था, और मैंने कहा, परंतु आप देखिए, मैं ये नहीं कर सकता। उसने कहा, आप क्यों नहीं कर सकते, आपके पास सारी योग्यताएं हैं। मैंने कहा, परंतु आप देखिए, एक भी वचन ना तो मिलाया या निकाला जा सकता है, समझे? और उसने कहा, अच्छा तो फिर वे सात गर्जने, आप देखिए, कहा क्या वे सात गर्जने धमाका नहीं करेंगी, क्या उसका प्रकाशन नहीं होगा कि किसी मनुष्य को दिया जाए? मैंने कहा, नहीं श्रीमान, ये तो उसमें कुछ मिलाना होगा या उसमें से कुछ निकालना, ये सब उसी में प्रकाशित हो गया, और सात मोहरों ने जिसका प्रकाशन खोला वो ये था। देखिए, ये अब भी वचन में है। आप देखिए, आप वचन से बाहर नहीं जा सकते, ये वचन को नहीं छोड़ेगा, और परमेश्वर का आत्मा उस वचन को कभी नहीं छोड़ेगा। ये ठीक वचन के साथ बना रहेगा, किसी को अंधा करते हुए और दूसरों की आंखों को खोलेगा, ये हमेशा यही करेगा। तुम लिखी हुई पत्री हो, सब मनुष्य द्वारा पढ़े जाते हो, या आप, मैं इसका अनुवाद करता हूँ, इधर की ओर घूमिए, देखिए, इसे थोड़ा सा घुमाएं, आप वो पत्रियां हैं जो लिखी गई हैं। क्योंकि आप इसमें कुछ नहीं मिला सकते। ये सब मनुष्य द्वारा पढ़ी जाती हैं, परमेश्वर का प्रकट किया गया वचन, दूसरे शब्दों में। और पत्रस और यूहन्ना को इसे दिखाना है। जब वे वहाँ पर गए, उन्हें अनभिज्ञ समझा गया और अनपढ़, उनके पास कोई शिक्षा न थी, परंतु उन्होंने ध्यान दिया कि वे यीशु के साथ रहे हैं। समझे, वे अनभिज्ञ और अनपढ़ थे, परंतु वे लिखित पत्रियां थे। देखिए, ये पढ़ा कि वे यीशु के साथ थे, क्योंकि यीशु स्वयं को उनके द्वारा प्रकट कर रहा था। मसीह जो उनकी देह के पर्दे में था, प्रकट हुआ, जीवित हुआ, जैसे कि वो मूसा में था। जब वचन मूसा में था तो वो देह में परमेश्वर था, जब ये यीशु में था तो ये देह में परमेश्वर था। समझे, उसने जो किया केवल अपना मुखौटा बदला, न कि अपना वचन, न अपना स्वभाव। वो आज कल और सर्वदा एक सा है। वो केवल अपना रूप बदलता है। वो नू से मूसा में बदल गया, वो मूसा से दाऊद में बदल गया, दाऊद से यूसुफ, और आगे बढ़ते हुए जब तक वो देह में परमेश्वर की परिपूर्णता में नहीं आ गया। समझे, ये अब भी वही परमेश्वर है। आमीन आमीन। मैं आशा करता हूँ वो आगे बढ़ेगा। समझे, ये वही परमेश्वर है, परंतु वो केवल दूसरा पर्दा लेता है। देखिए, वो दूसरे पर्दे को ओढ़ लेता है। उसने ये सुधारकों में किया, पर्दे को ओढ़ लिया, जब तक अंततः वह लूथर के युग में से होते हुए और दूसरे युगों में से होते हुए फिर अंत में ये अपनी परिपूर्णता तक नहीं आ गया। इसके आने के थोड़ा सा पहले एक भविष्यद्वक्ता फिर उठ खड़ा होता है। वो क्या करता है? ये वचन की आगे वाली छाया जो यहाँ दर्शा रहा है, प्रकट कर रहा है कि क्या किया जा चुका है और क्या छोड़ा गया था, कि कलीसिया बिना समझ के नहीं होगी। और जब ये ओझल होता है, तब जैसे यूहन्ना ने कहा, मैं घटूं वो बढ़े, तब सब कुछ मिलाकर उसमें आते हैं। वो पूर्णतः प्रकट हो गया, लूथर वेस्ली पेंटिकॉस्टल युग से होते हुए और फिर आगे और आगे केवल प्रगटीकरण, परमेश्वर प्रकट हो रहा है। देखिए, वो अब ध्यान दें, अपनी प्रतिज्ञाओं में आज के दिन पूरा हो रहा है जैसे वे हुए थे। अब उस दिन मूसा वचन था, क्योंकि उस दिन के लिए वचन उसे दिया गया। मूसा, यूसुफ अपने दिनों में परमेश्वर का वचन था, ठीक मसीह का चित्र दर्शा रहा है। देखिए, उनमें से प्रत्येक वचन था, और जब यीशु आया वो अपनी परिपूर्णता में वचन था, क्योंकि छुटकारे की संपूर्ण योजना उसमें थी। छुटकारे की संपूर्ण योजना मूसा में नहीं थी, न ही यूसुफ में, न ही एलिया में। देखिए, वे केवल वचन का भाग थे, उसकी ओर संकेत कर रहे थे। समझे, अब ध्यान दें, अपने विचारों को रखे रहें। यहाँ ये आता है जैसे कि मैं कहता हूँ। देखिए, संपूर्ण योजना उनमें नहीं थी, वे इसकी ओर संकेत कर रहे थे, इसलिए उसके पश्चात परिपूर्णता। हम किसी और चीज की ओर संकेत नहीं कर सकते, ये पीछे उसकी ओर संकेत करता है। वचन ये पूर्ण प्रकाशन है, इसमें कुछ भी बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। यहाँ पूरा प्रकाशन है, वो सब उसकी एक छाया आनी है, परंतु जब वो आया है वो सिद्ध था। इब्रानियों 1, परमेश्वर ने समय समय पर पूर्वजों और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की। परमेश्वर पर्दों में से होकर बोला भविष्यद्वक्ताओं, परंतु इन अंतिम दिनों में अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। आप यहीं पर हैं, वहाँ कैलवरी पर अनावरत हो गया, परमेश्वर का पुत्र अनावरत हो गया। ध्यान दें, जीवित हुआ, और आज जब वचन मानव बर्तनों के पर्दों में से प्रकट हुआ है, ये पूर्णतः वो वचन उस दिन में पूरा हुआ जो परमेश्वर के पास वापस आता है। उसमें बपतिस्मा लेने के द्वारा, पहला कुरिन्थियों 12 के अनुसार, हम उसके साथ प्रमाणित हुए। आमीन। मैंने आधा घंटा कहा था, परंतु क्या मैं थोड़ा सा और लंबा कर सकता हूँ? समझे, देखिए, मैं इसे ठीक यहाँ पर नहीं छोड़ सकता। ध्यान दें, उसके साथ प्रमाणित हुए। अब ध्यान दें, यहाँ पर कितने अमेरिकन नागरिक हैं? अपने हाथों को उठाएं। ठीक है, आप अमेरिकन नागरिक हैं, तो आप इस राष्ट्र के साथ प्रमाणित हुए हैं। ये राष्ट्र जो भी है, आपको होना है। क्या ये ठीक बात है? आप सब इसकी महिमा हैं और आप सब इसकी लज्जा हैं। आप इसके साथ प्रमाणित हैं। आप एक अमेरिकन हैं, इसलिए आप अमेरिका पे गर्व करते हैं। हालेलुया। मैं जॉर्ज वॉशिंगटन के साथ था जब उसने डेलवेयर को पार किया। मैं उसके साथ प्रमाणित हूँ, ये ठीक बात है। गेट्सबर्ग के संबोधन में मैं अब्राहम लिंकन के साथ था, मैं वहाँ खड़ा था। मैं गुआम के सिपाहियों के साथ था। तुम लड़कों, जब तुमने वो झंडा फहराया, मैं वहाँ था। मैं अमेरिकन हूँ, मैं इसके साथ प्रमाणित हूँ। आमीन। अब अमेरिकन होने के नाते, उस आंदोलनता में जो भी उसकी लज्जा है, मैं उसे अपने पर लेता हूँ, क्योंकि मैं एक अमेरिकन हूँ, ये ठीक बात है। और एक मसीह होने के नाते मैं उसके साथ प्रमाणित हूँ। आमीन। मैं नूह के साथ था जब वो नाव में गया। मैं मूसा के साथ था जब वो मिस्र से बाहर निकला। आमीन।
मैं कार्मेल पर्वत पर एलिया था। जी हाँ, परमेश्वर की महिमा हो। जब उसने वो किया तो मैं उसके साथ था। मैं वास्तव में उसके साथ था। मैंने स्वयं को उसकी मृत्यु में वहाँ कैलवरी पर प्रमाणित किया। जब मैं संसार की चीजों के लिए मर गया, स्वयं के लिए और सारी परंपराओं के लिए, मैं उसके साथ प्रमाणित हुआ। मैं उसके साथ ईस्टर की प्रातः प्रमाणित हुआ जब वो मृतकों में से जी उठा। मैं पेंतेकोस्त के दिन उसके साथ प्रमाणित हुआ जब पवित्र आत्मा तेज आंधी के शब्द के साथ नीचे उतरा। मैं उसके साथ पहचाना गया था। वो सब जो वो था मैं हूँ, वो सब जो मैं वो था। आमीन। उसमें मर जाने के द्वारा हम उसके साथ पहचाने गए। जो वो है मैं हूँ। आमीन। ये राष्ट्र जो है मैं हूँ, मैं वो होने में गर्व करता हूँ। मैं उसकी लज्जा लेने के लिए तैयार हूँ। मैं अमेरिकन होने के नाते उसकी निंदा को सहन करने के लिए तैयार हूँ। ये ठीक बात है। परंतु मैं यीशु मसीह के लिए दुगना हूँ। वो सब जो वो कभी था मैं हूँ। मैं उसके साथ प्रमाणित होने को पसंद करता हूँ। वे चेले जब वे वापस आए, उन्होंने सोचा उनका उपहास उड़ाया गया था और सब कुछ कहा गया था। उन्होंने सोचा ये बड़े सम्मान की बात है कि हम उसके नाम की निंदा को अपने ऊपर लें। मैं आज प्रसन्न हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ, वचन के साथ प्रमाणित होते हुए, जो कि मसीह है, उसके साथ प्रमाणित हुआ। उसमें बपतिस्मा लेने से हम प्रमाणित हो गए, उसकी समानता में प्रमाणित हुए, उसके वचन के साथ प्रमाणित हुए, जो कि वो है। यदि मैं मसीह में हूँ, मैं उसका वचन हूँ, क्योंकि वो वचन है और जो वो है वो मैं हूँ। आमीन। क्या आप समझे? ठीक है। वचन प्रकट हुआ या प्रकाशित हुआ वहाँ उस प्रकाशन में, तो फिर वो मुझ में क्या रखता है? यदि वो बादल की ज्योति वाली महिमा है तो मैं उसका भाग हूँ। आमीन। ओ आमीन। ये ठीक बात है। वचन स्वयं प्रकट हो गया, स्वयं को प्रकट करता है। सोचिए, परमेश्वर का भेद हम पर आज के दिन प्रकट हुआ है, उसी स्वर्गीय दूत के द्वारा जो उन पर उनके दिनों में प्रकट हुआ। ध्यान दें, वही अग्नि स्तंभ जिसने मूसा को भेजा, वही अग्नि स्तंभ जो मूसा पर था जिसने बाइबल लिखी, वही अग्नि स्तंभ जिससे पौलुस दमिश्क की राह पर मिला था और पौलुस ने नया नियम लिखा। स्मरण रखें, मती, मरकुस, लूका और यहुन्ना, उन्होंने वो लिखा जो उन्होंने देखा, परंतु पौलुस के पास प्रकाशन था। उसने वो खींच लिया क्योंकि वो स्वयं अग्नि स्तंभ से मिला था और ठीक वही सोचा। उधर यूसुफ और उन सब ने वो लिखा जो हुआ, प्रत्येक ने उस दिन में लिखा, परंतु जब मूसा दृश्य में आया तो उसके पास प्रकाशन था। वो अग्नि स्तंभ से मिला, ये मूसा पर प्रकट हुआ कि उत्पत्ति कैसे हुई। उसने बाइबल की पहली चार पुस्तकें लिखी, मूसा ने। क्या ये ठीक बात है? क्योंकि वो परमेश्वर से अग्नि स्तंभ के रूप में मिला, अग्नि स्तंभ के पर्दे में था। जब पौलुस उससे मार्ग में मिला, चेलों ने केवल वो लिखा जो उन्होंने उसे करते हुए देखा, परंतु मूसा के पास प्रकाशन था। मिस्र में 3 वर्षों के लिए चला गया और अध्ययन किया और देखा कि पुराने नियम का परमेश्वर नए नियम का यीशु था। प्रकाशन। मैं स्वर्गीय दर्शन के प्रति अवज्ञाकारी ना था। ये ठीक बात है। ये ठीक है। और इस पर सोचें, वही अग्नि स्तंभ जो उन लोगों पर आया जिन्होंने बाइबल को लिखा, वही अग्नि स्तंभ आज बाइबल का अनुवाद कर रहा है। आमीन। हम उसका कैसे धन्यवाद करें इसके लिए? वही क्या ही शांति है, क्या ही प्रमाणिकता है। उसके साथ प्रमाणित होने में मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं नहीं जानता कि क्या करूँ। मैं उसके साथ हो गया हूँ, बजाय उन सब बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, लूथरन और बाकी उन सब के साथ, उस वचन के साथ प्रमाणित हो गया जहाँ वो दिव्य ज्योति बादल महिमा और प्रकाशन है। अग्नि स्तंभ हमारे मध्य में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो रहा है। ये प्रमाणित कर रहा है कि संदेश सही है, जैसा उसने सीने पर्वत पर किया। स्मरण रखें, इससे पहले मूसा सच्चा संदेश लाए, मूसा ने प्रचार करके और उसने उन्हें मिस्र से बाहर निकाला, परंतु वहाँ इसके पहले की वास्तविक आज्ञाएं रखी जाती, मोहरे भीतर लाई गईं। परमेश्वर लोगों के समक्ष आया और सिद्ध किया कि मूसा उसकी ओर से भेजा गया था। ये ठीक बात है। अग्नि स्तंभ में जो मूसा ने कहा कि उसने झाड़ी में देखा और उससे बातें की मूसा से,
वो इस अंतिम दिनों में उसी अग्नि स्तंभ को अपने मध्य में देखते हुए वही वचन बोल रहा है। केवल इतना ही नहीं, परंतु प्रगतिकरण के द्वारा इसका अनुवाद कर रहा है और इसे सिद्ध कर रहा है कि ये सत्य है। इसलिए लोगों को अविश्वास करने का कोई मार्ग नहीं है जब तक जानबूझकर ना छोड़ दें। और तब जो सत्य का ज्ञान पाने के बाद भी जानबूझकर पापों को करते हैं, तो फिर उनके पाप के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। ध्यान दें, वही अग्नि स्तंभ मूसा के पास भेजा गया और पौलुस के, जिसने बाइबल लिखी, अब इसे प्रकट करने के लिए भेजा गया। परमेश्वर का अनुग्रह, ना बदलने वाला परमेश्वर, मत्ती 28 की प्रतिज्ञा को पूरा कर रहा है, देखो मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। संत यूहन्ना 14:12 को पूरा कर रहा है, जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे। संत लूका 17:28-29 को पूरा कर रहा है, अंत के दिनों में मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा। देखा हालांकि 4, देखो मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजता हूँ, जो लोगों के विश्वास को वापस मूल वचन पर लाएगा। समझे कैसे ये? समझे प्रभु वो स्वयं को हम पर प्रकट करने हेतु मरा। अब हम स्वयं में मरे कि उसे दूसरों पर प्रकट करें। हम परंपराओं और चीजों के लिए मर जाएं कि उसे दूसरों पर प्रकट करें। नामधारियों के लिए मर जाओ कि उसे दूसरों पर प्रकट करें। ध्यान दे, पुराने मंदिर में दिव्य ज्योति बादल की महिमा थी और दिव्य ज्योतिमय बादल की ज्योति वचन के ऊपर थी। वचन बीज है, ये केवल विश्वासी के लिए भेंट की रोटी लाता है। उस वाचा पर लहू भी था और लहू पानी है, वो जल जिसमें जीवन के दाने हैं, गेहूं बीज जो कि वचन है। जैसा यीशु ने कहा, जैसे मूसा ने पीतल के सांप को उठाया और फिर उसने कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे नाश ना हो। मूसा ने जंगल में चट्टान को मारा ताकि मरते हुए लोगों को बचा ले या पानी लाया। परमेश्वर ने यीशु को मारा ताकि उसमें से आत्मा को बाहर निकाले उन मरते हुए लोगों के लिए। उसमें से लहू निकला जो कि वचन के द्वारा धोने का जल, वो जल जो बीज के लिए जीवन लाता है। और ये दिव्य ज्योति में बादल की महिमा को लाया जो वचन के ऊपर चमकी, जो कि भेंट की रोटी को लेकर आया। और ये भेंट की रोटी केवल चुने हुए लोगों के लिए है। ओ, ये ठीक बात है। अब पर्दे में से होते हुए पर्दे के भीतर उसकी उपस्थिति में, जहां वचन है, धर्मसार नहीं, वचन है, उसमें दिव्य ज्योतिमय बादल की महिमा, दिव्य ज्योतिमय बादल, सामर्थ, पवित्र आत्मा वचन पर चमक रहा है, प्रतिज्ञाओं को ला रहा है, आपको दिखा रहा है कि आप पर्दे के पीछे हैं। आमीन। मैं फटे हुए पर्दे को पार कर गया हूँ, जहाँ महिमा कभी असफल नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया, मैं राजा की उपस्थिति में जीवित हूँ। मैंने फटे हुए पर्दे को पार कर लिया है, जहाँ महिमा कभी असफल नहीं होती। मैं राजा की उपस्थिति में जीवित हूँ। पुराने सुइसों की खाल के नामधारी फाड़ दिए गए हैं, मैंने उसको तोड़ दिया है उस दिव्य ज्योति में बादल की महिमा में। और मैं वचन को देखता हूँ, मैं अग्नि स्तंभ को चलते हुए देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि वचन प्रकट हुआ, जो उसने कहा वो इन अंतिम दिनों में करेगा। मैं इसे बढ़ते हुए देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि बालक दिव्य ज्योति में बादल की रोटी खा रहे हैं, जो कि वचन के पकने से आती है, जो इसका विश्वास करता है। आमीन। हम कितने अद्भुत समय में जी रहे हैं। देखिए, वो दिव्य ज्योति बादल वचन पर था और उसके नीचे रोटी थी और वहाँ लहू था छिड़का हुआ, जो इसे पानी देता है। आत्मा वचन को जीवन देता है। और कितनों ने द ट्रायल के ऊपर का टेप पढ़ना या सुना है? मैं समझता हूँ आप में से बहुत सोने। आप देखिए, वहाँ ये लेता है, वो वचन बढ़ना चाहिए, बढ़ने में उसे सही प्रकार की भूमि चाहिए, समझे? और परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है और ये उस हृदय पर चोट मारता है। ये असफल नहीं हो सकता। नूह ने 120 वर्ष प्रतीक्षा की, अब्राहम ने 25 वर्ष बालक की प्रतीक्षा की, परमेश्वर ने ऐसा कहा और ये तय हो गया। समझे ये क्या है? वचन वहाँ विश्वास के द्वारा सींचा जा रहा था, विश्वास करने के द्वारा ये परिणामों को लेकर आया, ये पुत्र को लेकर आया, ये वर्षा को लेकर आया, ये बाढ़ को लेकर आया, ये उस कुंवारी को लेकर आया जो गर्भवती हुई। एक भविष्यवक्ता ने कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी, कोई संदेह नहीं, परंतु क्या हर नवयुवती ने जाकर अपने बालक के लिए वस्त्र तैयार किए?
देखिए ये यशाया भविष्यद्वक्ता प्रमाणित भविष्यद्वक्ता था, परमेश्वर द्वारा प्रमाणित, और प्रभु ने कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी, मैं उन्हें एक अलौकिक चिन्ह, एक महान चिन्ह दूंगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी। वे सब लोग विश्वासी लोग आपके समान, और उन्होंने भविष्यद्वक्ता को ये कहते सुना कि प्रत्येक छोटी लड़की, हर पुरुष ने कहा कि ये मेरी पुत्री होगी। जी हाँ, हर कोई गया और जाकर छोटे छोटे जूते खरीद कर ले आया और झुंझुना हर एक चीज तैयार कर ली, क्योंकि वे जानते थे कि ये प्राप्त करने वाली है। वो पीढ़ी बीत गई और उन्होंने सोचा वो पहचाना गया भविष्यद्वक्ता, परमेश्वर द्वारा प्रमाणित किया गया, वो कैसे कोई बात गलत बता सकता था, इसे ऐसा ही होना चाहिए। ये 800 वर्षों के पश्चात हुआ, परंतु उसने एक बालक को जन्म दिया। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन नहीं टलेगा, और यह अंतिम दिनों में घटित होगा, परमेश्वर ने ये कहा है। देखिए हम यहाँ पर हैं, उजियाला वचन के ऊपर है। जैसे सूर्य का उजियाला बीज को महिमा से महिमा में बदलता है, हम भी हो जाएंगे बहुत कुछ उसके समान, जैसे कि हम उसकी उपस्थिति में जीते हैं, उसके समान उसकी धन्य सूरत के सदृश होते जाएंगे, जैसे कि हम उसके साथ चलते हैं। ध्यान दें कि सूर्य क्या करता है, आप बीज बोते हैं, क्या होता है, वो बीज सड़ जाता है, उस बीज के भीतर जीवन है, जीवन आगे बढ़ता है और डंठल को उपजाता है। अब ये पहले के समान नहीं दिखता, यहाँ लूथर है, ये डंठल था, ठीक है, ये डंठल बढ़ता जाता है और पहली बात आप जानते हैं, और ये पुष्प बल्लड़ को लाता है। देखिए ये वेस्ली की बेदारी थी, दूसरों के समान नहीं थी। तब पेंटिकोस्टल की बेदारी आती है, देखिए पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को लाती है, ठीक है। क्या हुआ, हमारी बाल में फफूंदी लग गई, ये गलत दिखाई पड़ने लगा, ये बात वो बात, ये वचन के समान नहीं दिखा, ये बाकियों के समान नहीं दिख पड़ा, ये वास्तविक दाने के समान नहीं है जो बोया गया, परंतु परमेश्वर अब तक वही है कि उसको वैसा ही बनाए। ध्यान दें ये क्या करता है, ये फिर से मूल बीज की ओर वापस जाता है। जब वो मार्टिन लूथर के रूप में आया, जब वो जॉन वेस्ली के रूप में आया, जब वो पेंटिकॉस्टल के रूप में आया, उसे स्वयं को फिर से उसी बीज के समान प्रकट करना है जो बोया गया था, मनुष्य का पुत्र। उसने स्वयं को परमेश्वर के पुत्र के समान प्रकट किया उस डंठल युग में से होते हुए आदि आदि, परंतु इस अंत के युग में उसे स्वयं को फिर मनुष्य के पुत्र के समान प्रकट करना होगा, समझे, ठीक है। आरंभ के समान ढला हुआ, और वो डंठल क्या उपजाता है, वो हर समय बढ़ता रहता है, वो छोटा डंठल बढ़ता है, वो अब तक उस मूल दाने के समान नहीं है। ना ही लूथर का संदेश था, नहीं, उसके साथ साथ दूसरे संदेश आते हैं, फिनिश, सेंके, नॉक्स, कॉल्विन आदि आदि, उनमें से कोई भी नहीं, वे अब तक संदेश थे, परंतु ये क्या था, उन्हें इसका पूर्ण प्रकाशन नहीं मिला, क्योंकि ये वो समय नहीं था। आप समय से पहले बाल के अंदर दाना नहीं डाल सकते, इसके आने का समय है, समझे। और तब अंततः वहाँ वो मूल बीज फिर से वापस आता है जो भूमि में डाला गया था। देखिए परमेश्वर ठीक प्रकृति का अनुकरण करता है, देखिए वो मेमना होकर जन्मा, यही कारण है कि वो चरनी में जन्मा, मेमने चरपाइयों पर जन्म नहीं लेते। देखिए उसे कैलवरी तक ले जाया गया, भेड़ों को भी ले जाया जाता है, ये ठीक बात है, बकरियां उन्हें कटने तक ले जाती हैं, आप जानते हैं कसाई बाड़ा, एक बकरी उनकी अगुवाई करती है, परंतु उनका मार्गदर्शन किया जाना है, ओ ये ठीक बात है, इसलिए वो बलिदान होने तक अगुवाई करके ले जाया गया, देखिए, क्योंकि वो एक मेमना था, हर चीज ने उसे प्रकृति में प्रमाणित किया, यही कारण है कि उसका जन्म मार्च या अप्रैल में हुआ, दिसंबर में नहीं, वो नहीं हो सकता था, वहाँ वर्ष के उस समय में 20 फीट बर्फ होती है, नहीं सूर्य देवता नहीं, परंतु वो परमेश्वर का पुत्र था, समझे। रोमन सूर्य देवता दिसंबर के 25वें दिन, जब सूर्य वहाँ से अपने स्थान से निकलता है, और उनके रोमन सर्कस थे, और सूर्य देवता का जन्मदिन कहलाया, और उन्होंने इसे परमेश्वर के पुत्र का बना दिया, नहीं नहीं वो परमेश्वर का पुत्र था, उसका जन्म प्रकृति के साथ था, बिल्कुल ठीक। अब फिर से ध्यान दें, जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास थोड़ा सा ही समय बचा है। अब उस सिद्धता को डंठल के बन जाने के पश्चात, जब खुंदनी बन गई है, जब दाना अपनी गुल्ली में आ गया है, तब उसे सिद्धता तक आना है, उसी सामान्य बीज तक वापस आना है, और स्मरण रखें, बीज को अंकुरित होना ही चाहिए, समझे, यदि ये नहीं होता है तो ये नहीं जिएगा, समझे। कोई भी उन संदेशों के बाहर कभी भी जीवन नहीं आया, उसे अंकुरित होना ही है, परंतु स्मरण रखें, वही जीवन जो डंठल में था दाने में है, ये केवल फिर से परिपक्व हो रहा है। देखिए उसने स्वयं को प्रकट कर दिया, क्या, मनुष्य का पुत्र, वो दाना जो भूमि में डाला गया, संदेश मिला। यूनानियों ने उससे कहा हम यीशु से मिलना चाहते हैं, उसने कहा जब तक दाना भूमि में नहीं चला जाता, समझे, ठीक है,
अब उसने अगला स्वयं को क्या प्रकट किया, एक भिन्न रूप में, डंठल, फुंदनी और आदि और सारी पत्तियां और हर चीज। तब उसने स्वयं को प्रकट किया, क्या वही आत्मा परंतु भिन्न रूप में, समझे? परंतु उस दाने का अंतिम क्या था, ये फिर से मूल दाने पर वापस आता है, क्या ये ठीक बात है? उसकी सेवकाई सुधारों में से होकर वापस फिर से मूल वचन पर आ रही है। वचन एक भविष्यद्वक्ता के पास आता है और मलाकी 4 में उसने प्रतिज्ञा की है और लोगों के विश्वास को वापस मूल दाने पर लाना, जो भूमि में गया था, यहाँ पर वही है। दाना यहाँ से होता हुआ आया, ये परमेश्वर के पुत्र के समान आता है, अब ये स्वयं को यहाँ मनुष्य के पुत्र के समान प्रकट करता है और फिर ये स्वयं को सिंहासन पर दाऊद के पुत्र के समान प्रकट करता है। उन तीनों पुत्रों को देखिए, बिल्कुल ठीक वैसे ही, ओ प्रभु, फिर से मूल के समान। अब उसकी स्वयं की सिद्ध सेवकाई, कोई मनुष्य नहीं, कोई नामधारी कलीसिया नहीं, जैसे कि उन्होंने युगों में से होते हुए कार्य किए, देखिए, परंतु स्वयं को प्रकट किया, स्वयं को प्रतिज्ञा के लिए प्रकट किया। संत लूका 17:28 मलाकी 4 को कर रहा है और आदि आदि इब्रानियों 13:8, बिल्कुल ठीक सही। उस समय ये कौन सा समय होना चाहिए, जबकि अब्राहम का शाही वंश प्रतिज्ञा के पुत्र की प्रतीक्षा कर रहा है और सारी प्रतिछायाएं पूरी होनी चाहिए और परमेश्वर स्वयं मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ है विनाश से पहले अब्राहम के शारीरिक वंश पर। और यीशु ने कहा इस शाही वंश के साथ वही बात होगी इसके पहले कि प्रतिज्ञा किया हुआ पुत्र वापस लौटे। ध्यान दें, पुराने पर्दे ने जिसने महिमा को छिपाया, पुरानी सुइसों की खालें, उसमें कोई सुंदरता नहीं थी कि कोई उसको चाहता, न ही उसका शरीर। इसी कारण लोगों ने कहा एक छोटा बूढ़ा ढला हुआ व्यक्ति इस प्रकार का हो सकता है, 30 वर्ष आयु और सफेद और उसकी दाढ़ी सफेद, अधिक देखने योग्य नहीं। बाइबल ने कहा उसमें सुंदरता नहीं कि हम उसे चाहें, वो राजा के समान प्रतीत नहीं होता है, पुरानी सुइसों की खाल, परंतु ओ भीतर की ओर क्या था। और छोटा सा झुंड पवित्र शोर मचाने वालों का इस प्रकार के गर्म से भवन में बैठे हुए हैं, वे उनसे कहते हैं इतना सुंदर नहीं कि हम उसे चाहें, परंतु भीतर की ओर क्या है। मैं निश्चित हूँ ये बहुत सारे हृदयों में छिपा है। आपने देखा, ठीक है, बाहरी तौर पर ये कुछ नहीं था, परंतु सब भीतर की ओर था। एक बार भीतर जाएं, तब आप इसे देखते हैं। आप इसमें अंदर कैसे जाते हैं, हाथ मिलाने से सम्मिलित हो रहे हैं, नहीं, इसमें जन्म लें, मर रहे हैं, अपनी पुरानी सुई की खाल से अलग हो रहे हैं, अपने पुरानेपन को देखें कि नए वाले में भीतर जाएं, समझे, अपनी पुरानी सुई खाल को छोड़ दें। दिव्य ज्योति में बादल का उजियाला नहीं करता। सुनिए सेवको, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे सुने। जब एक बार भीतर, अब मैं इसे सरल करने जा रहा हूँ इसलिए कि निश्चय ही आप इसे समझ सकेंगे। एक बार पर्दे के भीतर उस दिव्य ज्योति में बादल की महिमा के नीचे, उस ज्योति के उजियाले में परमेश्वर के वचन को नहीं लेता और यीशु को भावी बताने वाला प्रकट नहीं करता, जैसे कि आज नामधारी करते हैं, वैसे नहीं। मस्तिष्क को पढ़ना, पवित्र शोर मचाने वाले बालजबूल, दिव्य ज्योति में बादल की महिमा उसे ऐसा प्रकट नहीं करती, परंतु दिव्य ज्योति में बादल की महिमा बीज को पकाती है, जो कि उस घड़ी के वचन के लिए प्रतिज्ञा किया हुआ है, उसे अब भी घाटे की कमुदनी दर्शा रहा है। ये उस वंश को लाता है, घाटी की कुमुदनी, जीवन की रोटी, अल्फा और ओमेगा, कल आज और सर्वदा एक सा है, वो विश्वासियों का भाग है। दिव्य ज्योति में बादल की महिमा विश्वासी को प्रकट करती है कि वो कल आज और सर्वदा एक सा है, नहीं वेदी नहीं कि वो चला गया, वो मर गया और ये सब कुछ पूरा हो गया। इसलिए मित्र, यदि तुम ये विश्वास करते हो, यदि आप ये विश्वास करते हैं, तो आप कभी भी उस दिव्य ज्योति में बादल की महिमा से प्रभावित नहीं हुए। कैसे वो दिव्य ज्योति में बादल की महिमा उसे 3 व्यक्तियों में दर्शा सकती है, समझे? कैसे वो दिव्य ज्योति की महिमा कभी उसको प्रकट करती है कि लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे, जबकि बाइबल में एक भी व्यक्ति ने इस प्रकार से बपतिस्मा नहीं लिया? कैसे वो दिव्य ज्योति में बादल की महिमा उसे एक शिष्य में सीमित रख सकती है, जबकि वो कल आज और सर्वदा एक सा है, समझे? दिव्य ज्योति में बादल उसे प्रकट करता है, यह आपके पास सीधे सीधे वचन की प्रतिज्ञा को लाता है। यही कारण था कि उसे मूसा के मुख पर पर्दा डालना पड़ा, उसमें वचन था। उसने यीशु को नम्र छोटे मनुष्य के पर्दे में कर दिया ताकि यहोवा को ना देख सके, और आज उसने स्वयं को इन मिट्टी के बर्तनों में दिव्य ज्योति के साथ पर्दे में कर लिया है। बाहर से पवित्र शोर करने वाले से दिखाई पड़ते हैं, पुरानी सुइसों की खालें, परंतु भीतर दिव्य ज्योति में बादल की महिमा छिपी है। ये भेंट की रोटी को पकाता है जिसे हम खाते हैं और सैकड़ों मील कार चलाते हुए देश के पार चले जाते हैं। ये विश्वासी का भोजन है, ये केवल विश्वासी के लिए है। स्मरण रखें, भेंट की रोटियां केवल विश्वासी केवल उसी के लिए है। देखिए भेंट की रोटी का वंश, ध्यान दें ये क्या करता है। उस दिव्य ज्योति में बादल की महिमा उस भेंट की रोटी पर रहती है और उसे खराब नहीं होने देती। स्मरण रखें, मन्ना जो स्वर्ग से आया ये दिव्य ज्योतिमय बादल की महिमा में रहा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। इसके बाहर एक ही रात में इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, ये दूषित हो गया। क्या ये ठीक है? दिव्य ज्योतिमय बादल की महिमा के बाहर आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए। देखिए ये सब पागलपन है, परंतु भीतर देखिए मिस्र में सूरजमुखी के फूल से उन्हें कुछ बीज खत्तियों से मिले जो यूसुफ के दिनों में बोए गए लगभग 4000 वर्षों पहले। यूसुफ ने उन्हें खत्तियों में रखा, उन्होंने उन्हें बोया, वे जीवित रहे। क्यों? उनके पास जीवन था। आज ये दिव्य ज्योतिमय बादल की महिमा क्या है? पर्दे के पार जाकर देखना है कौन परमेश्वर तुम्हारे सामने खड़ा है। देखिए कौन परमेश्वर यहाँ हमारे सामने खड़ा है, वो अग्नि स्तंभ, वो मनुष्य की देह के पर्दे में है। परंतु दिव्य ज्योति क्या करती है? इसने क्या किया है? भेंट की रोटी का बीज, वो वचन जिस पर कि हमें आज के इस दिन में रहना है, इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा दिव्य ज्योति की महिमा भेंट की रोटी को पकाती है, उसे घटित करती है। विश्वासी के लिए रोटी बनती है जो बाइबल के पृष्ठों में रखी है, हर वर्ष के पश्चात इस युग के लिए वचन। नामधारी कलीसियाओं के लिए ये ठोकर की चट्टान है, नामधारियों के लिए ये एक ठोकर है। इन वर्षों में से होते हुए लूथर वेस्ली, मार्टिन लूथर और वे सब शैंकी फिनी, जॉन स्मिथ नॉक्स सब ने इस पर ठोकर खाई। परंतु अंत के दिनों में क्या किया जाना है, क्या प्रकट होना है, सामने लाना है। मलाकी 4 को क्या करना है? लोगों को ठोकर के पत्थर से वापस फिरना, परंपराओं को तोड़ना और रोटी को दिव्य ज्योतिमय बादल के महिमा के साथ प्रकट करना। ध्यान दें, ये पकाती है जो कहा गया है, उसे उत्पन्न करती है जो कहा गया है, वो करेगा। ओ प्रभु, इस युग के लिए भेंट की रोटियां, नामधारियों के लिए ठोकर का पत्थर, पागलों का झुंड। परंतु हम जो विश्वास करते हैं, परंतु अब जैसे प्रकाशित वाक्य 10 ने प्रतिज्ञा की, वो सारे परमेश्वर के भेद जो कि पृष्ठों में इन वर्षों से छिपे हुए थे पूरे होंगे और 7वीं कलीसिया के दूत के संदेश में लाए गए। क्या ये ठीक है? उसने 1.5 वर्ष पहले क्या कहा? अब से लगभग 2 वर्षों पहले, वहाँ टूसान में जाओ, टूसान के उत्तर में एक महान धमाका, और क्या घटित होगा? मोहरें खोली जाएंगी, वो मोहरें जिसने ये बातें प्रकट की, जैसा कि उसने कहा वापस आओ। ये क्या है? ये दर्शाता है कि ये मनुष्य नहीं हो सकता। हर बार ये सीधा सीधा ठीक बैठा जितना हो सकता था। ये क्या है? ये परमेश्वर का हाथ है, देखिए हमारे सामने। और क्योंकि ये छोटे से झुंड में है, मानव देह के पर्दे में, ये बाहर के संसार के लिए पर्दे में हो गया, ये बाहरी दुनिया से छिपा हुआ है। वो स्वयं को बालकों पर प्रकट कर रहा है, ऐसे जो सीखेंगे, समझे? ये ठीक बात है। देखिए बाइबल का प्रत्येक दृष्टांत, बाइबल की प्रत्येक प्रतिछाया ठीक हमारे सम्मुख प्रकट हुई। वही परमेश्वर अग्नि स्तंभ में है जिसने बाइबल को लिखा, पुराने और नियम दोनों को ठीक यहाँ इसे प्रकट कर रहा है। ये बिल्कुल ठीक दर्शा रहा है कि ये क्या था, फिर से अनुवाद कर रहा है और इस बात को निश्चित कर रहा है कि यही अनुवाद है, हमारे पास अनुवाद है, तब हम इसे देखें कि ये घटित हुआ। देखिए यही है, हम इसे प्रकट होते हुए देखें। प्रकट, यीशु ने कहा, यदि मैं अपने पिता के कार्य ना करूं, तो मेरा विश्वास मत करो। देखिए इसे सिद्ध करना ही था, परंतु अब यीशु के समान सिद्ध नहीं। उन्होंने उसके सिर के चारों ओर कपड़ा बांधा और उसके सिर पर मारा, कहा यदि तू भविष्य रखता है तो हमें बता तुझे किसने मारा, और यदि तू परमेश्वर का पुत्र है इन्हें रोटियों में बदल दे। देखिए ये शैतान है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतरा। मेरा अर्थ वो प्रकाशन जो उसे करना चाहिए था, यही वो है। परंतु अब प्रकाशित वाक्य 10 ने प्रकट किया है, परमेश्वर के भेदों को प्रकट किया है, जैसे कि 7 मोहरों की पुस्तक की प्रतिज्ञा को जाना गया। अब आपका विश्वास उसमें हो जो कि वचन है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 10 में ये कहता है, बल्कि या प्रकाशित वाक्य 19, मैंने यहाँ प्रकाशित वाक्य 10 लिख रखा है इस पर आने के लिए, परंतु ये 10 नहीं 19 है। जब वो आता है वो बुलाने वाला है, परमेश्वर का वचन सफेद घोड़े पर सवार है और स्वर्ग के फूल उसके पीछे पीछे होंगे।
शिक्षा के नामधारी पर्दे को तोड़ दें, नामधारी की परंपरा के पर्दे को तोड़ दें, उन पर्दों को फाड़ दें जो उसे आपसे छिपाते हैं, उन घमंड के पर्दों को तोड़ दें। आप महिलाएं, आप राजा की पुत्रियां हैं, उसी के समान व्यवहार करें, वैसे ही रहें। को तोड़ दें, इससे कोई मतलब नहीं कि PhD और LLD क्या कहते हैं। यदि ये इस बाइबल से मेल नहीं खाते, उस पर्दे को आर पार तोड़ दें, क्योंकि हमने फटे हुए पर्दे को पार कर लिया है। अब हम दूसरी ओर हैं, दूसरी ओर हैं, और आप देखेंगे यदि आप केवल ये करें, उन पुरानी परंपराओं और चीजों को तोड़ दें और उसके पास आ जाएं, आप उसे खड़ा हुआ देखेंगे, वो सामर्थी विजय प्राप्त करने वाला, इस युग का प्रतिज्ञा किया हुआ वचन प्रकट हुआ। आप सामर्थी परमेश्वर को अनावरत देखेंगे, उसे ठीक यहाँ अपने मध्य में देखेंगे। सामर्थी परमेश्वर अनावरत हो गया, परंपराओं के द्वारा ना जीता गया। उन्होंने उसे वहाँ पीछे छिपाना चाहा, उन्होंने वर्षों तक यही किया, परंतु प्रतिज्ञा का समय निकट आया। एक बार परमेश्वर ने मूसा को उठाया और उसने बालकों को उन चीजों से स्वतंत्र कर दिया, और वो अब तक वो जीता ना जा सका। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरा वचन नहीं, वो कल आज और सर्वदा एक सा है। वे कहते हैं ये नहीं हो सकता, परंतु ये किया गया था। तब जब ये किया गया तो उन्होंने कहा ये शैतान से है, परंतु इससे परमेश्वर का वचन तनिक भी नहीं बदलता, वो फिर भी परमेश्वर बना रहता है, विश्वासी के लिए सामर्थी जीतने वाला, कल आज और सर्वदा एक सा है, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने वचन के द्वारा। इब्रानी 13:8। मैं ये कहते हुए बंद कर रहा हूँ, क्योंकि 12:05 हैं, बस ये कहते हुए मेरे पास लगभग 10-12 पृष्ठ और हैं, मैं इसे किसी और समय लूंगा, हो सकता है आज रात्रि। ध्यान दें, इस पर ध्यान दें। एक बार एक नीलामी थी और उनके पास एक पुराना बेकार, आपने ये बहुत बार सुना होगा, एक पुराना वायलन, और बोली बोलने वाले ने कहा मैं इसके लिए कितना लगाऊं। उस कविता के अनुसार हो सकता है मेरे पास वो उतना ठीक ना हो, ये बहुत वर्षों पहले, परंतु ये मेरे मस्तिष्क में आया। और तब उन्होंने उस बेकार को उठाया, ये इतना अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा था, हर चीज जर्जर दिखती थी, वो उस पर कोई बोली भी नहीं करवा पा रहा था। अंततः मैं सोचता हूँ उसे $1 की बोली वाला मिला था या कुछ इस प्रकार से, और वहाँ पर कोई एक खड़ा था, उसने नहीं सोचा था कि $1 में इसे बिकना चाहिए, इसलिए उसने जाकर उसे उठा लिया, उसने उसे अपने हाथों में उठा लिया और गज लेकर उस पर विरोधा रगड़ा और एक धुन बजाई। और जब उसने ये किया तो हर कोई रोने लगा, उन्होंने अपने सारे जीवन में ऐसा संगीत नहीं सुना था। तब बोली लगाने वाले ने कहा मैं इसका क्या दाम लगाऊं, 2,000, 5,000, 10,000, समझे ये क्या था। गुरु के हाथों ने प्रकट किया कि इस पुराने साज के पर्दे में क्या था, वैसे ही अब पुरानी पुस्तक ये चिथड़े हो गई, इस पर हंसा गया, जलाया, उपहास उड़ाया, परंतु एक समय आ गया कि उन्होंने इसकी नामधारी कलीसिया द्वारा नीलामी करवाई, विश्व गिरजों की सभा, वे इसे ऐसे बेच रहे हैं जैसे कि किसी के कार्य का नहीं। नामधारी कलीसिया की नीलामी आ रही है, परंतु स्मरण रखें कि उस पुरानी पुस्तक में जिसमें प्रतिज्ञा की है कि एक दिन पहले से ठहराया हुआ अभिषिक्त हाथ आता है जो इसको उठा लेगा और इस पुस्तक के वचन को उस पहले से ठहराए गए हृदय के द्वारा उस कार्य के लिए जिसके लिए ये बनाया गया, उन प्रतिज्ञाओं को जो इसमें हैं प्रकट करेगा। ये पुराने पवित्र शोर मचाने वालों के झुंड के समान दिखाई पड़ सकता है या कुछ और, परंतु केवल गुरु के हाथों को लें, उस पर वचन की उस वचन को प्रकट करें और पवित्र शोर मचाने वालों से अधिक हो जाए, ये हम सब के लिए हो जाए, है कि नहीं मित्रों। ये धर्मोनाद का झुंड नहीं है, ये निर्भर करता है कि किसके हाथ में गज है। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, आज विश्वास के द्वारा मैं पुरानी पुस्तक के गुरु को देखता हूँ कि उन्होंने उसे परंपराओं के लिए मार डाला, उन्होंने उसे नामधारी कलीसियाओं के लिए मार डाला, उन्होंने उसका व्यापार करने का यत्न किया, अब वे विश्व गिरजा संघ मनुष्यों का है उसके साथ इसका व्यापार कर रहे हैं, साम्यवादता, नास्तिकवाद, प्रभु नीलामी चल रही है। परमेश्वर आगे बढ़कर आए, निश्चय ही आप आएंगे। प्रभु हमारे पास उस भविष्यद्वक्ता को भेज जो उस बजाने वाले गज को उठाए, जो इस वचन को उठाए और सिद्ध करे कि यीशु मसीह कल आज और सर्वदा एक सा है। प्रभु बहुत से अपने जीवनों को बेच देंगे, वे पुरानी परंपराओं को फेंक देंगे, वे पर्दों को तोड़ देंगे, प्रभु वे चाहते हैं, वे कुछ भी,
कुछ भी दे देंगे, उन्हें केवल यीशु दें। प्रभु, मैं सोचता हूं कि आपने उन्हें ये सिद्ध कर दिया है। वे हर जगह से आए हैं, वे अपनी जीविकाएं खर्च कर रहे हैं, वे सब कुछ करते हैं कि इन सभाओं में आ सकें। जो वे कर सकते हैं करें, क्योंकि उन्होंने बहुमूल्य मोती ढूंढ लिया है। दूसरी चीजें बहुत छोटी हैं। पिता, इन्हें आशीषित करें। प्रभु, इस प्रातः इस प्रचार मंच पर रखे हुए ये रुमाल, हो सकता है कुछ लोगों को आज जाना हो, आज रात्रि की चंगाई सभा से पहले। ओ अनंत परमेश्वर, नीचे देखें। मैं जानता हूं कि आप यहां पर हैं, आप पर्दे में हैं, और मैं ये छोटे छोटे पर्दे भेज रहा हूं। प्रभु, ये जो रुमाल कहलाते हैं और छोटे कपड़े और छोटे जूते उन छोटे बालकों के लिए, मैं इन्हें एक छोटे पर्दे के चिन्ह के रूप में भेज रहा हूं कि आज प्रातः आपका वचन प्रचारा गया है। और एक विश्वासी के समान मैं अपने हाथों को इस पर रखता हूं। मेरा शरीर इसका सूचक है कि मैं इसका विश्वास करता हूं, और विश्वास के द्वारा प्रत्येक इस भवन में यही कर रहा है। प्रभु, होने दे कि बीमार चंगे हो जाएं। आप वचन की मार को यहीं से कर सकते हैं। प्रभु, जैसे कि पुराना वायलन बजाने वाले ने वायलन से किया, प्रभु ऐसा ही बना दें, सही धुन बजा दें। गज गुरु के हाथ में है, तब हम उसे पूरे स्पष्ट दृश्य में देखेंगे। उन लोगों ने उस दिन क्या सोचा होगा जब उन्होंने उस पुराने वायलन के लिए कुछ नहीं दिया होगा? उन्होंने इसे नहीं चाहा, वे इसे अपने घर में नहीं लेंगे। परंतु जब एक बार किसी गुरु के द्वारा उठाया जाएगा, तब वे सब कुछ बेच देंगे जो उनके पास होगा कि उसे प्राप्त कर लें। वे इस पर विवाद और झगड़े कर रहे थे, तब बहुत देर हो चुकी थी। ऐसा ही किसी समय होगा जब प्रभु की तुरही फूंकी जाएगी, और तब समय और बाकी ना होगा। वे जिन्होंने उसे देखा, उसका उपहास उड़ाया, वे उस खुले पर्दे के सामने खड़े हुए और परमेश्वर के वचन को प्रकट होते हुए देखा, दूसरे इसके लिए चिल्लाएंगे। परंतु जैसा आपने कहा, तब बहुत देर हो चुकी होगी। वे विवाह के भोज में चले गए, और वे वहाँ छूट गए जहाँ रोना विलाप करना और दांतों का पीसना है। इस प्रातः प्रत्येक व्यक्ति की इस पर विश्वास करने में सहायता करें। पिता, सयानेपन के प्रत्येक पर्दे को तोड़ दें, अविश्वास के हर पर्दे को, और विश्वासी के सन्मुख सामर्थी जयवंत को अनावरत होते हुए देखें। देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। अब थोड़ी देर बाद संसार मुझे ना देखेगा, तो भी तुम मुझे देखोगे। प्रभु स्वयं को हमारे मध्य में प्रकट करे, जैसे कि आप करते रहें, सदा वैसे ही रहें, जब तक हम आपके सामने प्रकट रूप से हैं। जब मुखौटा बदल दिया गया है और आप फिर से मनुष्य के पुत्र हो गए हैं और दाऊद का पुत्र, प्रभु इसे यीशु मसीह के नाम में प्रदान करें। जबकि हम सब अपने सिर प्रार्थना में झुकाए हुए हैं, आश्चर्य है कि आज कोई यहाँ है, भीतर या बाहर। यहाँ पर वेदी पर बुलाहट की कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि जगह नहीं है। परंतु मुझे आश्चर्य है, क्या आप सच्चाई से इसका सत्य होने में विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि जिस दिन में हम जी रहे हैं, और ये सारी गड़बड़ियाँ और नूह के दिनों के जैसा वैज्ञानिक युग, मूसा के दिनों में, मसीह के दिनों में, कि परमेश्वर हम सबका महान पिता जो उसमें जन्मा, आज हमारे मध्य में खड़ा है? ये दिखने वाला अग्नि स्तंभ जो कि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हुआ, बहुत वर्षों पहले एक छोटे लड़के के समान वहाँ मुझसे बोला और मुझे बताया कि मैं ठीक यहाँ रहूँगा, क्या घटित होगा, इसके विषय में आपको बता रहा हूँ। और तब से इसे एक दिन नदी पर सेवकाई के आरंभ होने से पहले पहली बार बेदारी, वो आकाश में प्रकट हुआ, स्वयं को प्रमाणित किया और प्राधिकार दिया। इन सारे वर्षों में मैंने इसे हृदय के भीतर छिपा रखा, मसीह को पर्दे में रखा। वही अग्नि स्तंभ वचन का अनुवाद कर रहा था, जैसे कि प्रतिज्ञा की थी। हम अंत के दिन में हैं, प्रभु के आगमन से थोड़ा सा पहले। और यदि आप स्वयं को पर्दे के बाहर पाते हैं, जो कि बाहर रहना मृत्यु है, क्या आप इस प्रातः विश्वास से कहेंगे, परमेश्वर की सहायता से और अपनी सहायता से, प्रभु मैं इस पर्दे को आर पार तोड़ देना चाहता हूँ, मैं वहीं अंदर जाना चाहता हूँ जहाँ आप हैं, कि परमेश्वर के पूरे वचन को देखूं। मूसा बनने का यत्न ना करें, हारून बनने का यत्न ना करें, ऐसा ना करें, वैसे ही रहें जो आप हैं, परंतु एक मसीही बने। क्या आप अपने झुके हुए सिरों के साथ अपने हाथों को उठाएंगे और कहें कि प्रभु परमेश्वर पर्दे के भीतर होने के लिए मेरी सहायता करें? परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको आशीष दे। यही है, हाथों की ओर देखें, बाहर की ओर स्मरण रखें। हो सकता है कि मैं आपका हाथ कभी ना देखूं। मेरे लिए देखना कोई लाभकारी नहीं, जो भी हो ये परमेश्वर है। मेरे लिए केवल मेरे देखने के लिए केवल इतना है कि कहीं पर बीज गिरा है, और परंतु परमेश्वर वास्तविक हृदय को देखता है। यदि कोई और भी है जिन्होंने अपने हाथ नहीं उठाए हैं और अब उठाना चाहते हैं, अपने हाथ उठाएं कि प्रार्थना में स्मरण किए जाएं, अपने हाथ उठा लें। परमेश्वर आपको आशीष दे, ये अच्छा है। परमेश्वर आशीष दे। पिता, आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये प्रभु जो अभी तक उस पर्दे के पार नहीं है, वे वहाँ बाहर इसराइलियों के समान खड़े हैं, वे देख रहे हैं, वे विश्वास करते हैं, परंतु उन्होंने इसे कभी नहीं तोड़ा कि अंदर प्रवेश करें, अभी भी कि उस दिव्य ज्योति में बादल की ज्योति को देखें, आत्मिक और शारीरिक दोनों, यहाँ तक कि यांत्रिकी कैमरे की आंख उसका चित्र उतार रही है, अभी 2 सप्ताह पहले फिर से उतारा। प्रभु, आप स्वयं को प्रकट कर रहे हैं। वो सामर्थ्य परमेश्वर विश्वासी के लिए अनावृत हो गया, अविश्वासी के लिए अब भी पर्दे में है, परंतु विश्वासी के लिए बेपर्दा। उन्हें देखिए, आज तोड़ दें प्रभु, उसके महान भव्यता और महिमा को देखें। उन्हें पाए कि उनके हृदय आज रात्रि इस आराधनालय के छोड़ने से पहले बदल जाएं। उन्हें देखिए, ये सब आपके आत्मा से आपकी उपस्थिति में भर जाएं। उन्हें पाए कि स्वामी उस विश्वास को उठा ले जो उनके पास है, उसकी गोंद वचन के आर पार हो, वो स्वर वापस आए जो आपने संसार के रचने से पहले अभिषिक्त किया है, कि इसका विश्वास करें। मेरे बालक, विश्वास करो और बच जाओ। पिता परमेश्वर, हम इन्हें आपके हाथों में देते हैं, ये अनुभव करते हुए कि इससे अधिक हम और कुछ नहीं कर सकते। पिता, अब ये सब आपके साथ हैं, मैं इन्हें आपको देता हूँ, यीशु मसीह तेरे पुत्र के नाम में, आमीन। क्या आप उससे प्रेम करते हैं?
Wonderful, wonderful Jesus is to me, the counselor, prince of peace, mighty God is he, saving me, the keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer prayed. I once was lost, now I'm found, free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Oh, wonderful, wonderful Jesus is to me, the counselor, the prince of peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name.
कितने उसे खड़े हुए देखते हैं, सामर्थ्य जीतने वाला वचन देहधारी हुआ, हमारे सामने अनावृत हुआ, अल्फा और ओमेगा, वो जो था, जो है और आएगा, दाऊद का मूल और वंश, मनुष्य का पुत्र था, परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र और दाऊद का पुत्र होगा। आप इसका विश्वास करते हैं अपने संपूर्ण हृदय से? स्वयं को प्रत्येक युग में अनावृत कर रहा है, विश्वासी के पास ला रहा है, अविश्वासी से स्वयं को मानव देह के पर्दे में छिपा रहा है, वो पर्दे के पीछे छिपा है। परमेश्वर सारे पर्दे तोड़ दे और हम उसे देखते हैं जैसा कि वो है।
Jesus breaks every fetter. Jesus breaks every fetter. Oh, Jesus breaks every fetter. When he said, you free all. sweet fields of Eden, where the tree of life is blooming, there is rest for me.
क्या अब आप जर्दन को पार नहीं करना चाहते? क्या जंगल में बहुत समय नहीं हो गया? आइए हम प्रतिज्ञाओं में चलें। आइए अब हम अपने हाथ को उठाएं। आमीन। क्या ये आपको अच्छा अनुभव नहीं कराता? ओ कितना आश्चर्यजनक, कितना आश्चर्यजनक वो है कि नहीं? तो फिर
Jesus, break every fetter. Oh, and he set you free. I will ever praise him, the mighty God. Same yesterday, today, and forever. Just change his form.
सारे धर्मसारों को मुझसे ले लिया कि उसके वचन का विश्वास करूं। ओ क्या आप गुरु के वायलिन को आर पार खींचते हुए नहीं सुन सकते? गद इस वचन के आर पार है, वो कल आज एक सा है।
What did he do? For he said,
उसने क्या किया है? क्योंकि उसने पर्दे के पीछे मुझे स्वतंत्र किया। परमेश्वर की स्तुति हो, मैं उससे प्रेम करता हूँ। क्या आप उससे प्रेम नहीं करते? क्या ये स्वर्गीय नहीं है? मैं वचन के इन फलों को पसंद करता हूँ। देखिए, बस पवित्र आत्मा उस मिठास नम्रता में है, मैं बस इसे पसंद करता हूँ।
side of Jordan. I'm nearing there now. In the sweet immortal of Eden. What will I find there? Where the tree of life, that was in the Garden of Eden, blooming. There is rest.
आप जाना चाहते हैं? वो हर बेड़ी को तोड़ता है।
Jesus break every tradition, every fetter. Jesus break every fetter. All denominations, all creeds.
परमेश्वर की महिमा हो, मैं उससे प्रेम करता हूँ। कोई आश्चर्य नहीं, यशायाह ने कहा वो सलाहकार, शांति का राजकुमार, सामर्थी परमेश्वर, अनंत पिता, अद्भुत। ओ प्रभु, ये मेरे हृदय को हिला देता है, वो कितना अद्भुत है। मैं आपको बताता हूँ कि इसका कोई अंत नहीं है। ये मैं इसमें 33 वर्षों पहले आया, इस प्रकार अनुभव कर रहा हूँ। और यदि वो देर करता है, एक दिन मैं अपनी आंखें बंद करने जा रहा हूँ, मैं उसी प्रकार से बाहर जा रहा हूँ। आमीन।
Mighty God is He. He's saving me. He's keeping me from sin and shame. Wonderful, my Redeemer, praise His name.
मैं इसमें पूरे दिन रुका रह सकता हूँ। पौलुस ने कहा, यदि मैं गाता हूँ मैं आत्मा में गाऊंगा, ओ यदि मैं प्रचार करता हूँ तो मैं आत्मा में प्रचार करूँगा, यदि मैं चलता हूँ तो मैं आत्मा में चलता हूँ, यदि मैं बात करता हूँ तो आत्मा में बातें करता हूँ। हर चीज को वचन और आत्मा के द्वारा होने दें। जी हाँ, आमीन। ये सब परमेश्वर का सत्य है। मैं सामर्थी परमेश्वर को अनावरत देखता हूँ। मैं उसे धर्मसार नामधारियों को अलग करते देखता हूँ। संदेह शिक्षण कार्यक्रम और हर चीज को अलग करता है, आगे बढ़ता है, वहाँ खड़ा होता है। आप सोचते हैं कि धर्मसार उसे जीत सकते हैं? आप सोचते हैं कि नामधारी उसे जीत सकते हैं? आप सोचते हैं कि विश्व परिषद उसे जीत सकती है? उसने हर चीज को जीत लिया है, हर बेड़ी को तोड़ दिया है, नरक को खोल दिया, मोहरें तोड़ दी और परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर गया, स्वयं को हम पर प्रकट कर दिया। वचन होने के नाते कल, आज और सर्वदा एक सा है। आमीन। मैं उसे प्रेम करता हूँ।
Now, until we meet this afternoon, we want to do one thing. That is, take the name of Jesus with you. A child of sorrow and of woe. It will joy and comfort give you. Oh, take it everywhere.
यदि शैतान आपको परीक्षा में डालने का यत्न करे कि आप सही चीज की ओर नहीं देख रहे हैं, तो उसे वचन की ओर संकेत करें, जैसा यीशु ने किया। समझे? समझे? आमीन।
At the name of Jesus bowing, falling prostrate at His feet, King of kings in heaven will crown Him when a journey.
लगभग 6 बजे बिली अंदर आएगा। वे जो प्रार्थना पंक्ति में आना चाहते हैं, उन्हें प्रार्थना पत्र देगा। मैं सोचता हूं कि अच्छा हो हम ये करें, हम ये नहीं करने जा रहे हैं, परंतु भीड़ होने से अच्छा हो कि हम ये करें। आप समझे? अब उसे स्मरण रखें, सदा उसे अपने ध्यान में रखें, अपने हृदय में, जहां कहीं आप जाएं, देखिए यीशु को अपने मस्तिष्क में रखें।
The name of Jesus with, listen, as a shield from every snare. What happens when temptations round you get? What must you do? Just breathe that holy name in prayer. Precious name.
Precious name.
Oh, how sweet.
Oh, how sweet.
Oh, power and joy.
अब आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। मैं पास्टर से कहने जा रहा हूं, यदि वे आकर सभा को विसर्जित करें। भाई नेविल, परमेश्वर आपको आशीष दे। भाई नेविल।